सोच से लाभ पाने के लिए बड़े लाभ के लिए एक छोटा सा मानसिक प्रयास हर किसी की एक अलग वास्तविकता होती है, जिसे हम सोच से बनाते हैं। यहाँ मैं ऐसे उपकरण देता हूँ जो सोच को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और इसके साथ ही आपकी वास्तविकता भी। परिश्रम की शिक्षा से किसी को कुछ नहीं मिलता, इसका परिणाम प्रायः विपरीत ही होता है। बड़े लाभ के लिए छोटे प्रयास की तलाश करना ही सही शिक्षा है। शिक्षा के बारे में एक खूबसूरत चीज यह है कि इस बड़े लाभ को प्राप्त करने के लिए हम स्वयं और बच्चों पर कुछ छोटी छोटी तरकीबें अपना सकते हैं। उनमें से एक ये समझ है कि इच्छा से मिलने वाला आनंद उस आनंद से अधिक होता है जब आप कुछ हासिल करते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको हमेशा किसी न किसी चीज के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि तब यह आनंद हमें लगातार धक्का देता है, वही अर्थ है। अपनी सोच में सुधार करना चाहते हैं थोड़े प्रयास से? ये बहुत आसान है। अपने ध्यान से एक जगह से दूसरी जगह कूदना बंद करें। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पागलों की तरह ध्यान केंद्रित करते हैं और आपको वास्तव में उन्हें जगाना है? उनका ध्यान कई जगहों पर नहीं होता है, वे एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे ये पसंद है। एक मानसिक स्थान से दूसरे मानसिक स्थान पर कूदना बहुत महंगा है और आपका लाभ बर्बाद करता है और भ्रम पैदा करता है। मानव मस्तिष्क का निर्माण इस तरह किया गया है कि वह एक निश्चित समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर सके, और जब हम एक चीज से दूसरी चीज पर कूदते हैं तो हमें वापस आने में समय लगता है। आधुनिक दुनिया हजारों विकर्षणों और प्रलोभनों से भरी है, लेकिन बड़े विजेता वे हैं जो ध्यान केंद्रित करना जानते हैं, और यह उस प्रकृति के व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त है जहां से हम आए हैं। वहां हजारों विकर्षण और पाठ संदेश और वीडियो नहीं थे। हमारा ध्यान आमतौर पर एक जगह एक ही चीज पर होता है। इसका हमारे अच्छे जीवन दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम ध्यान देते हैं और वर्तमान में व्यस्त होते हैं तो हमें पुरस्कृत किया जाता है, और ध्यान वास्तव में प्यार का एक रूप है। हमारे बच्चे चाहते हैं समय का बड़ा हिस्सा पूर्ण ध्यान में होता है, हमारे दोस्तों का भी होता है। अर्थात ध्यान देने का तरीका जानने से न केवल हमारी सोच में सुधार होता है बल्कि हमारे रिश्तों में भी सुधार होता है, जो एक अच्छे जीवन की आधारशिला है। एक महान प्रबंधक और अधिमानता एक इंजीनियर स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य सरकारी मंत्रालयों की तरह शिक्षा मंत्रालय को विशिष्ट स्थानों पर लगातार नए तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, और यदि वे काम करते हैं तो उन्हें पूरे इसराइल में लागू करना चाहिए। निराश न हो, सफलता को मापें और लगातार सुधार करें। इसराइल में शिक्षा प्रणाली में हर किसी को जो याद आती है वह है शिक्षा प्रणाली के लिए एक दिग्गज प्रबंधक का महत्व। ऐसे प्रबंधक को सबसे पहले एक शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाला एक विश्लेषणात्मक इंजीनियर होना चाहिए और इसके विपरीत नहीं। शिक्षा हमें दर्शाती है कि हम 10 साल या उससे अधिक समय में कैसे दिखेंगे। शिक्षा में प्रत्येक कार्य के लिए फीडबैक की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हमने जो किया है उसे अनुकूलित करने या उसे रद्द करने के तरीके ढूंढना संभव है। शिक्षा प्रणाली में समस्याएं शिक्षकों का कम वेतन या उनकी कम संख्या नहीं है, लेकिन सिस्टम की संरचना, इसमें प्रबंधन, नियंत्रण और रचनात्मकता की कमी उन कर्मियों को आकर्षित करती है जो पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। समाधान: एक प्रबंधक द्वारा मजबूत केंद्रीय प्रबंधन और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में एक क्रांति, विषयों को कम करना, मूल्यों को स्थापित करना, लोगों का निर्माण करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों की स्वयं सोचने की क्षमता में सुधार करना है, न कि याद रखने की। इसराइल पर कोई डेटा नहीं है, लेकिन यह मान लेना अच्छा होगा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह हैं जहां औसत बुद्धि कम हो रही है। ये सबसे संभावित कारण है सोशल नेटवर्क और विचारहीन वीडियो के कारण नई पीढ़ी में पढ़ने की कमी हो रही है। इस अध्ययन के अनुसार अमेरिका में बुद्धि कम हो रही है। कहीं भी और किसी भी समय फ्रेम करना एक फ्रेम है। एक फ्रेम हमारे दिमाग का तरीका है विचारों और प्रक्रियाओं को याद रखता है। ये वास्तव में एक मानसिक मॉडल है जिसे मस्तिष्क ये समझने के लिए पैदा करता है कि वो क्या देखता है और कैसे प्रतिक्रिया करता है। इस फ्रेम को जाने, ये बहुत दिखाई देगा। अब आपने जो पढ़ा है वो भी एक फ्रेम बन जाता है। विचार के ब्लॉक की तरह एक फ्रेम के बारे में सोचें। आप नए बना सकते हैं, टावर बना सकते हैं, टावरों को नष्ट कर सकते हैं। सब कुछ फ्रेम से बनाया गया है, जिसमें लगभग सभी सामग्री में फ्रेम शामिल है। यह इस बारे में है कि हम वास्तविकता के आधार पर अपनी व्यक्तिगत समझ कैसे बनाते हैं। अनुभव, विश्वास, मूल्य, ज्ञान और संस्कृति हमारी वास्तविकता एक फ्रेम नहीं है, बल्कि संभवतः लाखों छोटे फ्रेमों से बनी है, लेकिन मैंने गिनती नहीं की। हाल ही में हमने जिस ढांचे का उपयोग किया है उसे पुनः प्राप्त करना आसान है, जैसे कंप्यूटर पर कैश। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि हमारी वास्तविकता का ढांचा हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन ये केवल दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है और उद्देश्य का सटीक प्रतिबिंब नहीं है वास्तविकता। गर्म हवा ऊपर उठती है, मन का एक ढांचा है जो हवा क्या है और उठती है के दूसरे ढांचे पर निर्भर करता है। हर क्षेत्र में निकटतम ढांचा हमारे दिमाग में मॉडल है, समान स्थितियों से तुरंत निपटने के लिए तैयार टेम्पलेट जो वास्तविकता को परिभाषित करता है। आप जो देखते हैं उसकी त्वरित समझ के लिए ऐसे कई मॉडल हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने सामने किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं और आपको तुरंत कम खतरा महसूस होता है। यह मन का एक महत्वपूर्ण ढांचा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति वास्तविकता को अलग तरह से याद करता है, क्योंकि उसके लिए मौजूद फ्रेम दूसरे से अलग होते हैं, और हम लेबल करते हैं मौजूदा फ्रेमों के साथ वास्तविकता बनाएं या नए बनाएं। कई क्षेत्रों में फ्रेमिंग करने से उन लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ होता है जो कई क्षेत्रों से फ्रेम करते हैं। अधिकांश लोग एक केंद्रीय क्षेत्र से फ्रेम करते हैं। जैसे एक फुटबॉल खिलाड़ी को लाभ मिलता है अगर उसने पहले बास्केटबॉल खेला हो, तो इससे मदद मिलती है अपने आसपास के लोगों को बेहतर ढंग से देखने के लिए। पृथ्वी की दुनिया और आत्मा की दुनिया के ढांचे एक दूसरे में सर्वोत्तम रूप से एकीकृत हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन कई क्षेत्रों से निपटें जिनमें आपकी रुचि है। मुझे हमेशा अभिनय करना पसंद है और शोध करना कम। इसी तरह मैंने कई कंपनियों की स्थापना की और वहां से आपको गतिविधि के माध्यम से वास्तविकता के कई फ्रेम मिलते हैं। मुझे तनाज, संगीत, मनोविज्ञान, फुटबॉल, पोकर, गणित, भौतिकी और अर्थशास्त्र पसंद है। मैंने वहां से कई चीजें तैयार की जिन्हें मैं आमतौर पर एक से दूसरे में स्थानांतरित करता हूं। एक स्मार्ट व्यक्ति वह होता है जो किसी भी क्षेत्र से वास्तविक फ्रेम जल्दी से निकाल लेता है। क्षमता उपयुक्त फ्रेमों को बाहर निकालना, समायोजित करना और उत्पादन करना वास्तव में बुद्धिमत्ता है। नए फ्रेमों का उत्पादन करने की हमारी क्षमता निश्चित रूप से मौजूदा फ्रेमवर्क पर आधारित है। मौजूदा फ्रेमवर्क समय के साथ हासिल किए गए हैं, और इसलिए लोग फ्रेमवर्क के साथ पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें तैयार करते हैं। जैसे कि कुछ भी क्षमता की आवश्यकता होती है, रूपरेखा तैयार करने के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि कोई व्यक्ति स्मार्ट पैदा नहीं होता है, बल्कि प्रशिक्षण के माध्यम से इस क्षमता को प्राप्त करता है। जाहिर है कि यहाँ जेनेटिक्स एक तत्व है, लेकिन प्रशिक्षण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपने फिटनेस में कहां से हासिल किया है प्रश्न के समतुल्य, आपको ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। फ्रेमिंग आपको वास्तविकता की बेहतर समझ प्रदान करती है और इसलिए आप भी दूसरों की तुलना में भविष्य का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। ये भौतिक और गैर भौतिक लाभ के लिए एक बड़ा लाभ है। मान लीजिए कि मैंने ये तय कर लिया है कि कैसीनो सांख्यिकीय रूप से लोगों पर मुनाफा कमाता है, तो यहाँ से यह अनुमान लगाना पहले से ही संभव है कि यह पैसे के लिए जुआ खेलने लायक नहीं है, बल्कि केवल मनोरंजन के लिए है। फ्रेमर के लाभ का बस एक छोटा सा उदाहरण। फ्रेम को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने का अभ्यास करने के लिए फ्रेम में सबसे कम लाभ की उम्मीद की जाती है। जब आपके पास लाखों फ्रेम हों तो लाभ उन्हें शीघ्रता से पुनर्प्राप्त करने, उन्हें स्थानांतरित करने और उन्हें अपग्रेड करने में होता है। अपग्रेड करना, हटाना और उत्पादन फीडबैक द्वारा होता है और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कभी कभी आपको फ्रेम हटाना पड़ता है, विशेष रूप से वे जिन्हें हम बड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, स्मार्ट लोग पैसा कमाते हैं, इसे हटा दें और इसे पैसा उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जिन्होंने कमाने के लिए प्रशिक्षण लिया है के रूप में फ्रेम करें। मान लें कि आपके पास एक मनोवैज्ञानिक फ्रेम है कि लोग निर्देशों की अवज्ञा करना पसंद नहीं करते हैं। आप चाहते हैं अपनी कंपनी का विज्ञापन करने के लिए, इसलिए विज्ञापन में आपको एक निर्देश दिया जाएगा, अभी साइट पर जाएं और खरीदारी करें। यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि इस पर फीडबैक प्राप्त किया जाए कि यह काम किया या नहीं, क्योंकि एक विश्वसनीय रूपरेखा सिद्ध हो चुकी है। हमारी दुनिया कई क्षेत्रों में जुड़ी हुई और समान है, इसलिए फ्रेमवर्क को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने में बड़ा लाभ होता है। हमने +500 की स्थापना की और मेरे मन में आए गणितीय ढांचे का पालन करते हुए बहुत पैसा कमाया और इसे वित्त के क्षेत्र में ले गए। बेशक +500 के निर्माण के लिए हजारों छोटे ढांचों की आवश्यकता थी जो प्रत्येक संस्थापक के लिए अलग अलग थे। रूपरेखाओं में से एक सफल कंपनियों की नकल करना और उनमें सुधार करना था। एक अन्य रूपरेखा ये थी कि केवल आवश्यक चीजों की प्रतिलिपि बनाएं और फिर एक विशाल और अंतहीन परियोजना की कोई आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण के रूप में गूगल को लें, इसने याहू की पूरी प्रतिलिपि नहीं बनाई, केवल खोज बॉक्स। दूसरी भाषा सीखें और साथ ही गणित, भौतिकी और विज्ञान का अभ्यास करें। ऐसे विश्वसनीय मैरोड फ्रेम हैं जिन्हें फीडबैक की आवश्यकता नहीं है। गतिविधि में ऐसे ढांचे हैं जिन्हें किताबों में सीखना लगभग असंभव है और वे वास्तविकता से बने ढांचे हैं। जैसे जब आप एक कंपनी शुरू करते हैं तो सभी का साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये समय के साथ बदल जाता है। ये सिर्फ एक ढांचे का एक उदाहरण है जो कर सकता है केवल एक वास्तविक गतिविधि से प्राप्त किया जा सकता है। एक दूसरी भाषा फ्रेमवर्क का निर्माण करती है क्योंकि इसमें ऐसे शब्द होते हैं जो एक फ्रेमवर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आपकी मुख्य भाषा में मौजूद नहीं है, जैसे कि अंग्रेजी में ऑप्टिमाइज। इसके अलावा एक प्रोग्रामिंग भाषा क्योंकि इसमें फ्रेमवर्क हैं। यही कारण है कि यह है, याद रखने के बजाय फ्रेम बनाने में अधिक समझदारी, विचार ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक ढांचे में विज्ञान का महत्व सबसे बड़ा लाभ तब होता है जब हमें एक वास्तविक ढांचा मिलता है, और यह निश्चित रूप से विज्ञान के साथ साथ सैद्धांतिक पुस्तकों के साथ साथ विज्ञान में भी होता है। समाचार पत्र जो एक ऐसी कहानी के बारे में लिखते हैं, उसकी व्याख्या को वास्तव में नज़रअंदाज किया जा सकता है। खतरा अवास्तविक फ्रेम प्राप्त करने का है, जो अक्सर काल्पनिक संख्याओं, इंटरनेट, यूट्यूब या निराधार विचारों से होता है। इसीलिए मैं हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से फ्रेम बनाने की कोशिश करता हूं और जो मैं जानता हूं उससे क्रॉस चेक करता हूं। फ्रेम के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण फ्रेम में सबसे महत्वपूर्ण अनुभाग है, क्योंकि यह आपकी सोच में सुधार करेगा। वो एनली में सही है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं लिया है तो कम से कम इसे यहां से लें। जिस तरह से मैं फ्रेमवर्क में प्रशिक्षण लेता हूं, वो बस चीजों के बारे में सोचना है। हाँ, बस घटनाओं, मामलों, भावनाओं, प्रकृति, लाभ के बारे में सोचें और पूछें क्यों। इस तरह मेरे मन में ढांचे और स्वतंत्र विचार का विचार आया। तो अगली बार जब आप बस में सफर करें और लेगर में अभ्यास करते समय अपना सिर खिड़की पर रखें, मुझे आशा है याद रखें कि जब मैं बस में नहीं होता तब भी मैं इसे इसी तरह करता हूँ। आप कौन हैं इसे बदलने के लिए मैं और दो दोस्त थे इलियट में घूमते हुए, और अचानक हमारे बीच के एक गायक मित्र के लिए एक पंक्ति उछल पड़ी। आप जो हैं उसे बदलना आसान नहीं है, एक रॉक स्टार बनना आसान नहीं है। यह उनके बारे में एक हास्य खंड में था, क्योंकि वो इससे बहुत दूर थे एक रॉक स्टार। उन्होंने इस गीत की रचना की और वैसे यह उत्कृष्ट है, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि व्यवसाय अवधि से बदलने के बाद आप आज जो हैं उसे बदलना वास्तव में कठिन है। परिवर्तन धीरे धीरे और बहुत धीमा था, लेकिन करीब रहने की इच्छा से उत्पन्न हुआ था प्रकृति की ओर, और फिर प्रकृति में चलने की आदत से इसने इसे तीव्र कर दिया। आदतें वास्तव में परिभाषित करती हैं कि आप कौन हैं, इसलिए जब मैं कुछ बदलना चाहता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं क्यों बदलना चाहता हूं, और ऐसे लक्ष्य के बारे में नहीं सोचता जो संबंधित नहीं है मेरे लिए। कंपनी या खुद को बदलने के बारे में सोचना बेहतर है, न कि केवल पैसा कमाने के लक्ष्य के बारे में। विधि द्वारा निरंतर सुधार और फिर यात्रा का आनंद लें। और यह वास्तव में सफलता की लुप्त कड़ी है, जिसे मैं अब तक नहीं जानता था कि इसे कैसे परिभाषित किया जाए। कमाने के लिए और चाहे कुछ भी हो, एक योजना, महत्वाकांक्षा या विचार पर्याप्त नहीं है। आपको लक्ष्य के लिए आदतें बनानी होंगी, और मैं इतने सालों से बिना इसके बारे में जाने ये कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत सुबह सुबह आर्थिक समाचार पत्र पढ़ने से लेकर हमारे उत्पाद में रोजाना खेलने से लेकर व्यवसाय और कई अन्य आदतों के बारे में किताबें पढ़ने तक हुई। हाई स्कूल में सफल होने के लिए मुझे सुबह से शाम 4 बजे तक 3 दिन पढ़ाई करने की आदत थी। गैर तुच्छ हिस्सा, और यही वो बिंदु है जिसके साथ आप जाएंगे या घर भागेंगे, इस पर विचार करना अधिक महत्वपूर्ण है। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ इसके बजाय आप कौन बनना चाहते हैं इसकी शर्तें, क्योंकि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ हमारी कुछ बनने की इच्छा से आता है। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ या एक लेखक बनना चाहता हूँ। परिवर्तन वास्तव में कठिन है, लेकिन आप इसका समाधान एक सफल आदत में देखेंगे। आप जो हैं उसे बदलने का तरीका आदतों के माध्यम से है, और कब कुछ आदत बन जाती है तो यह आसान है। पियानो वादक बनना गणितज्ञ बनने के समान है, आपको उनमें से एक या दोनों के विपरीत होने के लिए दैनिक आदत की आवश्यकता होती है। ट्रिग्स में एक सफल आदत बन जाती है एक आदत। यदि आप यहां तक आ गए हैं तो आप पहले से ही जानते हैं कि आपको ऐसे तरीकों की तलाश करनी चाहिए जो काम करते हैं, न कि एक बार के लिए। आदत एक तरीका है, ये खुद को बेहतरी के लिए प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। यदि आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, आदतें आपकी नियंत्रित करेंगी कि आप कहां जा रहे हैं, और आपके लिए वो बनना आसान होगा जो आप चाहते हैं। आदतों को तरकीबों से नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि वे बहुत मायावी हैं। हमारी आदतें अफ्रीका के सवाना के लिए हैं और तेल अवीव के केंद्र में 8वीं मंजिल के अपार्टमेंट के लिए नहीं। छोटे और निरंतर सुधार सफलता रातों रात नहीं मिलती है, यह आदतों के माध्यम से छोटे दैनिक सुधार की एक लंबी प्रक्रिया है। +500 में मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि आग कैसे बुझाई जाए, क्योंकि मुझे लक्षणों का नहीं बल्कि समस्या का स्थायी इलाज करने की आदत थी, इसलिए यह आसान था। आदत के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। एक और आदत ये थी कि मैं हर ऑफर में हमेशा खुद से पूछता था कि लाभ क्या है और जोखिम क्या है। मुझे लगा कि दूसरों में यह आदत नहीं है, लेकिन मेरे लिए जोखिम हमेशा उछलता था। यह एक आदत थी जब मैं बच्चा था, मैं पैसे कैसे कमाऊं। आदत काम नहीं है, जब आप आदत से कुछ करते हैं तो वो काम नहीं है, वो इनाम जैसा लगता है। ये हमारे दिमाग में एक कीड़े की तरह है कि हम अच्छे के लिए जीतते हैं। इसने प्राचीन काल में बार बार सिसिफिनियन चीजें करने और उनका आनंद लेने में मदद की। इसने आदतों की प्रवृत्ति को जीवित रखने में योगदान दिया। हर चीज की तरह ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर ये दृढ़ता से समाया हुआ है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन आदतों के प्रति प्रवृत्ति से हर किसी को लाभ होता है। आप आदतों को तोड़कर भी कमा सकते हैं, और अंत में यह एक स्वतंत्र विचार है कि केवल खोदना नहीं बल्कि कमाना है। वास्तव में ध्यान दिए बिना मैं वास्तव में आदतों को लागू करने का आनंद लेता हूँ। उन आदतों में से एक जो मुझे हमेशा पसंद है वह है जल्दी उठना। लत की आंतरिक आवाज ही कुंजी है। लत वास्तव में एक बुरी आदत है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हम इसे दोहराते रहते हैं। हमारा मस्तिष्क हमसे झूठ बोल रहा है। इस मामले में ये हमें संकेत देता है, आप कॉफी के बिना काम नहीं कर पाएंगे। नमक के बिना खाना असंभव है, ये स्वादिष्ट नहीं है। आप अंकगणित सीखने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं है, वो इसे एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करते प्रतीत होते हैं। यहाँ जीत की कुंजी इस पर विश्वास न करना है, और सच्चाई ये है कि इस वाक्यांश का अधिकांश भाग आप इसके बिना प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, या इसके बिना यह असंभव है, झूठ है, क्योंकि हम मनुष्य अनुकूलनशील प्राणी हैं। हम इसकी आदत डाल सकते हैं लगभग कुछ भी, और बड़ा रहस्य यह है कि अंत में हम लगभग उसी तरह से आनंद लेते हैं, भले ही मस्तिष्क कभी कभी संकेत देता है मैं इसके बिना नहीं कर सकता। आप इसका खंडन करना सीखेंगे और फिर यह आपके लिए आसान हो जाएगा कई मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। मैंने बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी संघर्ष किया, उनमें से एक धूम्रपान था। 20 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक मैंने एक दिन में लगभग एक पैकेट धूम्रपान किया, इसमें मुझे 2 साल लग गए। इस आदत से तब तक लड़ो जब तक कि मैं जीत न जाऊं, ये वास्तव में बहुत कठिन था। मैंने हार नहीं मानी, मैं टूट गया और इन 2 वर्षों में लगभग 10 बार धूम्रपान करना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी यह एक सफलता है जिसमें 2 साल लगे। न भूलने और लगातार +500 की प्रशंसा करने की आदत मुझे व्यवसाय में की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण चीजों को एक पृष्ठ पर लिखने और फिर हर दिन उन्हें आगे बढ़ाने की आदत थी, जैसे एस्टोनिया में प्रवेश करना, जारी करना और छोटी छोटी बातें भी, लोगों के रंग को तोमर के साथ बंद करना। इसे लिखना और ऐसा करना एक आदत थी ताकि मैं भूल न जाऊं। यह आदत स्वतंत्र विचार में भी मेरे साथ है। मेरे पास एक विचार है इसलिए मैं इसे अपने आप को व्हाट्सएप पर लिखें। ये आदतें मूल रूप से कंपनी और मुझे परिभाषित करती हैं। यह उससे जुड़ा है जो आप +500 के लिए चाहते थे, एक मॉडल कंपनी बनना, इसलिए इसे हर समय बेहतर बनाने की आदत इससे जुड़ी है। आप कौन हैं और वो नहीं जो आप हासिल करना चाहते हैं। कार्रवाई तेज होती है परिवर्तन, और हमें साबित करता है कि हम जो बनना चाहते हैं वह वास्तव में होता है। इसलिए कार्यों में बोलना महत्वपूर्ण है, जो आदतें बन जाती हैं जो हमें बदल देती हैं जहां हम होना चाहते हैं। आज जब कोई मुझसे सवाल पूछता है और मैं विचार करता हूं कि झूठ बोलना चाहिए या नहीं, तो मैं अपने आप से कहता हूं, मैं झूठा नहीं हूं, और न कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये तब आसान होता है जब पैर इस बात से जुड़ जाता है कि आप कौन हैं। हर समय किसी और के जैसा बने रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए आदतें आपके अनुरूप होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक एथलीट विश्वसनीय, मिलनसार और उदार, इसलिए जो आदतें फिट होंगी वे हैं खेल, सच बोलना, सामाजिक रूप से सक्रिय रहना और सुबह दौड़ना। मैंने सिर्फ उदाहरण दिए, लेकिन समाज में भी जब यह एक दृष्टिकोण है कि इसे कैसा होना चाहिए, समाज के लिए एक विधि के रूप में आदतों को स्थापित करना आसान है, लेकिन इसे ब्रांड जो प्रतिनिधित्व करता है उसके साथ जोड़ना होगा। आज़ादी, जब आप आज़ाद मन से इसके बारे में सोचते हैं तो आदतें हमें मानसिक आज़ादी देती हैं, क्योंकि अच्छी पैसे वाली आदतें हमें वित्तीय समस्याओं से मुक्त बनाती हैं, खान पान की आदतें हमें स्वस्थ बनाती हैं, और फिर समय है आज़ाद होने का, न कि उन समस्याओं से जूझने का जिनकी कमी है। अच्छी आदतें हमें प्रेरित करती हैं। मैं हमेशा परीक्षणों के लिए तैयार होकर आता था, क्योंकि मुझे परीक्षण से कुछ दिन पहले अध्ययन करने की आदत थी। यह कोई प्रयास नहीं था क्योंकि मैं इसका आदी था। मैंने देखा, सुना और हस्ताक्षर किया कि आमतौर पर जो हमें आदत करने के लिए प्रेरित करता है वह है एक निश्चित ट्रिगर। इसके लिए हिब्रू में छलांग के अलावा कोई अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यह एक कठिन शब्द है जिसे मुझे खोजना पड़ा, और यह पहली बार था जब मुझे इसका सामना करना पड़ा। शक्ति इंद्रियों की शक्ति के अनुसार होती है। हम इंसानों के लिए दृष्टि की भावना सबसे विकसित है और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, और आपको इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए करना चाहिए। आपको चॉकलेट की गंध आती है तो आप चॉकलेट खाना चाहते हैं। आप टीवी देखते हैं इसलिए आप आराम करना और फिल्म देखना चाहते हैं। आमतौर पर हमारी आदतों के लिए एक ट्रिगर होता है। दृष्टि की भावना हमारे मस्तिष्क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेती है, इसलिए दृष्टि हमारी आदतों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिगर है, उन चीजों में से एक जो वास्तव में उन आदतों को आत्मसात करने और याद रखने में मदद करती है जो हम चाहते हैं। उन्हें जोर से, ये श्रवण इंद्रिय के ट्रिगर को सक्रिय करता है। ऐसे लोग नहीं हैं जो प्रलोभनों का विरोध करते हैं, ऐसे लोग हैं जो उन्हें छिपाते हैं। जब फ्रिज में आइसक्रीम नहीं होती तो मेरे बच्चे आइसक्रीम नहीं मांगते। बड़ा रहस्य उन आदतों के लिए ट्रिगर्स को सक्रिय करना नहीं है जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, और उन आदतों के लिए ट्रिगर्स को भी सक्रिय करना है जिन्हें हम चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ निश्चित मात्रा में प्रलोभन होते हैं जिनका वह सामना कर सकता है। हमारा बड़ा लाभ आमतौर पर ट्रिगर्स को न देखना है। प्रलोभन के बिना अभ्यास करना बहुत कठिन है, लेकिन जानबूझकर प्रलोभनों को छिपाना बहुत आसान है, और यह बिल्कुल मुफ्त विचार है। थोड़े से प्रयास से बड़ा लाभ होता है। ट्रिगर को छिपाने का छोटा प्रयास, उपलब्ध प्रलोभन के ट्रिगर से बचने का पागल प्रयास। मान लीजिए कि मैं अपने सेल फोन का कम उपयोग करना चाहता हूँ, मैं इसे बस कार में रखूंगा, इसलिए मुझे सेल फोन लेने के लिए कार के पास जाना होगा। जब भी मैं कुछ जांचना चाहता हूँ, इसे वास्तव में मेरा उपयोग कम हो जाता है सेल फोन। अध्ययनों से पता चला है कि सबसे स्थिर लोगों ने प्रलोभनों का सामना न करना सीख लिया है। ये बड़ा रहस्य है। मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। मेरी अच्छी विधियों में से एक है लैग पाइल। मैं पहले से ही वो सब कुछ करता हूँ जो मुझे नहीं लगता है। एक बार में धोना, कचरा फेंकना और कपड़े धोना, मैं इसे आदत का ढेर कहता हूँ। मैं चलते समय भी ऐसा करता हूँ। मैंने इसमें शेमा की किताब सुनने की आदत जोड़ ली और आज जब मैं चलता हूँ तो मुझे शेमा की किताब सुनने की बहुत याद आती है। बेशक मैं लाउड स्पीकर पर किताब सुनता हूँ, वायरलेस हेडफोन के साथ नहीं, जो हमारे दिमाग को विकिरणित करता है और इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। आदत डालने के लिए आदत को कितनी बार दोहराएं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितनी बार सुनते हैं इसे करो, और यह नहीं कि यह कितना समय है। मान लीजिए कि मैं पढ़ने की आदत विकसित करना चाहता हूँ, तो सप्ताह में एक बार 2 घंटे पढ़ने के बजाय प्रतिदिन 20 मिनट पढ़ना बेहतर है। यह उन अन्य चीजों से अलग है जिनके लिए हम आदी हैं, उदाहरण के लिए दौड़ने का प्रशिक्षण। यह आदत शुरू करना आसान होगा। जब हम कुछ शुरू करते हैं तो हमारे लिए इसे रोकना उतना ही कठिन होता है जितना इसे शुरू करना कठिन होता है। और यही वो छोटा प्रयास है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, आरंभ करने का प्रयास। पहली कक्षा में पढ़ने वाला मेरा छोटा लड़का होमवर्क नहीं करना चाहता था। बेशक हम उत्साहित नहीं थे, लेकिन मैंने सुझाव दिया कि वो होमवर्क करने के लिए उसे रसोई की मेज पर खुला रख दे और ऐसा न करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। डोट भोजन के बाद मैंने देखा कि वो अंकगणित का अभ्यास कर रहा था। इसने उस पर काम किया। अब मुझे अगली चाल के बारे में सोचना था जिससे उन्हें कमरे में शांत माहौल में हमेशा की तरह उनका परिचय कराया जा सके। बस एक आदत मुझे काम करना बंद कर देगी, और एक छोटा प्रयास और मेरे और उसके लिए एक बड़ा लाभ होगा। ठीक, सुविधा के नियम के कारण यह महत्वपूर्ण है कि हमारी आदतें शुरुआत में आसान हों। यदि आप चाहते हैं दैनिक दौड़ने के लिए, ये वास्तव में मदद करेगा कि आपको बस घर छोड़ना होगा और दौड़ना शुरू करना होगा। सच तो यह है कि जैसे ही आप खेल के कपड़े पहनते हैं, यह निश्चित है कि आप दौड़ेंगे। संक्षेप में, सुनिश्चित करें कि शुरुआत आरामदायक हो। उपयुक्त वातावरण में चलना। हमारे पास फर्नीचर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पिताजी ने इसे खुद बनाया, क्योंकि मैं उन्हें देखता हूँ और मदद करता हूँ और थोड़ी बाधा डालता हूँ। जब मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो वहाँ बिना किसी व्यवधान के एक शांत माहौल था। मुझे आज भी वो शांति और व्यवस्था का एहसास याद है जिसने मुझे होमवर्क और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। आज मुझे समझ में आया कि इसने मेरे लिए इतना योगदान क्यों दिया, क्योंकि यह मुझे बिना ध्यान भटकाए अध्ययन करने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत डालने की अनुमति दी। उन आदतों के लिए कोई ट्रिगर नहीं था जो मेरे लिए योगदान नहीं करते थे। तब से मैं वास्तव में ध्यान केंद्रित करने की आदत का आनंद लेता हूँ, क्योंकि हम आदतों का आनंद लेते हैं। यह विकास के लाखों वर्षों में निर्मित एक विशेषता है। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और कमरा शांत था, इसने तुरंत मेरे लिए पढ़ाई के लिए एक प्रेरणा पैदा कर दी। इसीलिए अधिकांश लोगों के लिए घर से काम करने की तुलना में कार्यालय में काम करना अधिक प्रभावी होता है। यह उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करता है। अपने बच्चों और अपने लिए ऐसा वातावरण बनाएं और यह उनके लिए आसान होगा। हाँ, उनके बगल में एक सेल फोन एक भयानक ट्रिगर है, यह वहां नहीं होना चाहिए। एक शब्द उनके बीच एक अनुबंध है, अपना जीवन आसान बनाएं। क्या आप एक आसान जीवन चाहते हैं? सुनिश्चित करें कि आपके घर में एक शब्द है, और उसके बाद आपके कार्यस्थल में। हम शब्दों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। अपने बच्चों और खुद को सिखाने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक शब्द है, वरना घर में कोई पक्की बुनियाद नहीं होती। अन्यथा संचार का कोई मतलब नहीं है और हर बात को कई बार जांचना और कहना पड़ता है। यहाँ बहुत बड़ा लाभ है अगर हम अपने पारिवारिक जीवन और अपने व्यावसायिक और सामाजिक जीवन दोनों में ऐसे लोगों से घिरे रहें जिनका शब्द ही शब्द है। बच्चे हमसे सीखते हैं जब वे देखते हैं कि हमारे साथ एक शब्द है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां लोग एक दूसरे से जो कहते हैं उनमें से अधिकांश वास्तव में करते हैं। कभी कभी कोई विकल्प नहीं होता है और आपको थोड़ा धोखा देना पड़ता है ताकि आपको ठेस न पहुंचे, लेकिन अधिकांश समय आप अपनी बात पर कायम रह सकते हैं। सबसे खतरनाक लोग जिन्हें मैं जानता हूं वे हैं जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी। मैं अपने बच्चों को उसी शिक्षा के साथ बड़ा करता हूँ जो मैंने प्राप्त की। शब्द का मूल्य होता है और वे जो कहते हैं उस पर कायम रहते हैं। मेरे पाठ्यक्रम में समय निवेश करने की एक प्रतिभा, 10 साल की उम्र से 2 साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना था, जिसने मुझे दूसरी भाषा दी और अमेरिकी संस्कृति से परिचित कराया, जहां चीजें अंत तक की जाती हैं, न कि जैसे इसराइल में 70% तक। एक पिता जो तकनीक, गणित और भौतिकी के बारे में बहुत बात करते थे, इसलिए मैंने हमेशा गणित और भौतिकी में निवेश किया। मेरे बचपन के दोस्तों के सभी पिता एन में पढ़ते थे और टेक्नियन में संकाय सदस्य थे। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से मैंने हारेट्स अखबार पढ़ा, मुख्य रूप से इसका और मारीव का अर्थशास्त्र अनुभाग। मेरी माँ और मेरे पिता ने लगातार मुझमें यह विचार डाला कि सब कुछ संभव है और गोनेन परिवार किसी भी चीज से नहीं डरता। मैं हाइफा के दानिया पड़ोस में पला बढ़ा हूँ, जो अमीरों का इलाका है, लेकिन हम गरीबों से कहीं ज्यादा थे। एक विचार जिसके बारे में मेरे माता पिता हमेशा बात करते थे वह यह है कि जिस पेशे में आप पढ़ते हैं उसमें आप कितना पैसा कमाते हैं, इसलिए छोटी उम्र से ही मुझे एहसास हुआ कि आप कंपनियां स्थापित करके बहुत बेहतर कमा सकते हैं। मैंने कहानियां भी सुनी और अरब दुनिया से अपने चाचा को भी देखा, श्लोमो गोनेन, जो अपने दम पर वहां सफल हुए। पूरे समय मैंने फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वैश और सफिंग खेला, एक ऐसा खेल जो मुझे लगातार हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। लेस और गैसुएज, मैं दोस्तों के साथ एक यात्रा पर लेस और गैस से मिला और मुझे एहसास हुआ कि जुए का मैदान वास्तव में यहूदियों के लिए अच्छा है, आपको बस घरेलू पक्ष में रहना होगा। कुछ भी आसानी से नहीं होता, शुरुआत हमेशा बहुत कठिन होती है और यही कारण है कि इसराइल में शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाना और इस सिद्धांत को स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि सब कुछ प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत है। जब आप स्वतंत्र विचार का अभ्यास करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप सफल पैदा नहीं हुए हैं, आप समान पैदा हुए हैं। आसानी से सीखते हुए मैंने इसे अपने पूरे करियर में देखा है। उदाहरण के लिए जॉनी लेवी, जो मेरे साथ स्वतंत्र विचार पर काम करते हैं, उन्होंने खुद को एक डिजाइनर बनना सिखाया कुछ पाठ्यक्रम और सब कुछ स्वयं डिजाइन करता है। अलाद इब्न चैन, जिन्होंने स्टॉक मार्केट की जानकारी के बिना हमारे साथ +500 में शुरुआत की, एक अग्रणी वित्तीय प्रबंधक बन गए। हमारे पास सब कुछ सीखने की क्षमता है, ये सिर्फ इच्छा और समय और कभी कभी उम्र है। ये वास्तव में आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम हर चीज का श्रेय प्राकृतिक प्रतिभा को देना पसंद करते हैं, लेकिन समय लगाने के लिए इसमें से अधिकांश प्रतिभा है। एक महत्वपूर्ण खंड, यदि आपके पास इस खंड को पढ़ने की ताकत नहीं है तो आपको ताकत मिलेगी, क्योंकि समझाना बच्चों और युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है, ताकि वे विश्वास करें कि जानबूझकर प्रशिक्षण के साथ सब कुछ संभव है। आप सपने देखे बिना कुछ बड़ा नहीं कर सकते और आप विश्वास किए बिना सपने नहीं देख सकते। शब्द परफेक्ट पिच, जिसे परफेक्ट पिच के रूप में भी जाना जाता है। निरपेक्ष श्रवण, किसी व्यक्ति की बिना किसी संदर्भ स्वर के संगीत स्वर को पहचानने या पुनः पेश करने की दुर्लभ क्षमता को संदर्भित करता है। पूर्ण श्रवण, की प्रकृति को समझने के लिए और क्या इसे प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल किया जा सकता है या सुधारा जा सकता है, ये समझने के लिए विभिन्न प्रयोग किए गए हैं। इसका प्रचलन अपेक्षाकृत दुर्लभ है और अनुमान बताते हैं कि लगभग 10,000 लोगों में से एक के पास ये क्षमता है। मोजार्ट में ये क्षमता थी, तो मोजार्ट 10,000 में से एक था और उसके माता पिता ने उसे संगीत की शिक्षा दी थी, जिन्होंने उसे 3 साल की उम्र से प्रेरित किया, जो कि 1:1000 है, जिसका अर्थ है कि मोजार्ट 10,000 में से एक था। जब आप स्वतंत्र विचार का अभ्यास करते हैं तो ये काम नहीं करता है, ये हेम्स बहुत दुर्लभ लगते हैं। लगभग 4 दशक पहले एक युवा जापानी संगीत प्रशिक्षक काजुको अगुत्सुजी पूर्ण श्रवण में असमर्थता से निराश थे। परिणामस्वरूप उन्होंने एक प्रारंभिक शिक्षण कार्यक्रम बनाया, जिसे अगुची कॉर्ड ट्रेनिंग मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसे युवा शिक्षार्थियों को सही पिच हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। कई लोगों का मानना है कि पूर्ण श्रवण एक जन्मजात प्रतिभा है जो या तो किसी के साथ पैदा होती है या नहीं। मोजार्ट, बीथोवेन, मारिया कैरी, सीएमी हेंड्रिक्स और यानी जैसे प्रमुख संगीतकारों के पास पूर्ण श्रवण क्षमता है। एगुची पद्धति की शुरुआत के बाद से हजारों जापानी बच्चों ने कान से नोट पहचानने का कौशल सफलतापूर्वक विकसित किया है। ऐसा माना जाता था कि वे इसके साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे सीख लिया। 2012 में शोधकर्ता अयाको साकाकिबारा ने 24 बच्चों को शामिल करते हुए एक अध्ययन प्रकाशित किया था। एगुची की राग सिखाने की विधि का उपयोग करके सिखाया गया। अध्ययन पूरा करने वाले 22 लोगों में से सभी ने पूर्ण श्रवण हासिल किया। शोध ने संकेत दिया कि उचित प्रदर्शन और प्रशिक्षण के साथ पूर्ण श्रवण विकसित करना संभव है और यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जाने वाला एक अनूठा उपहार नहीं है। एगुची पद्धति छोटे, लगातार और केंद्रित प्रशिक्षण सत्रों पर निर्भर करती है। क्रैकिंग शुरू होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम उम्र से। तो इसका हमारे लक्ष्यों की पूर्ति से क्या संबंध है? पूर्ण श्रवण सीखने से विचलन का एक बिंदु यह है कि सीखने या हासिल करने की हमारी क्षमता सीमित नहीं है, बल्कि जिस तरह से हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं वो वास्तव में मायने रखता है। अगुची के स्कूल के छात्र यादृच्छिक सीखने में संलग्न नहीं थे, बल्कि सही पिच हासिल करने के लिए जानबूझकर अभ्यास की एक संरचित प्रणाली से गुजरे। असाधारण स्मृति वाले एक भारतीय व्यक्ति सुरेश कुमार शर्मा ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया जब उन्होंने सुनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्मृति से पाई का सबसे दशमलव स्थान, ये गणितीय स्थिरांक जिसे ग्रीक अक्षर पाई द्वारा दर्शाया गया है, एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है और दशमलव स्थानों की अनंत संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या है। पिछला रिकॉर्ड भारत के राजवीर मीना के नाम था, जिन्होंने 2015 में 31,415 अंक सुनाए थे। अक्टूबर 2020 में शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती ली। 17 घंटे और 14 मिनट के दौरान उन्होंने बिना किसी त्रुटि के पाई के 50,000 दशमलव स्थानों का ध्यानपूर्वक उच्चारण किया। उनके अविश्वसनीय कारनामे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने देखा और दर्ज किया, जिससे नए विश्व रिकॉर्ड धारक के रूप में उनकी जगह पक्की हो गई। क्या उसके पास बहुत तेज दिमाग है या वो सिर्फ जंगली सूअर की तरह व्यायाम कर रहा है, आप क्या सोचते हैं? पाई के अंकों को याद रखना और सुनाना दुनिया भर में स्मृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय चुनौती बन गया है। हर साल पाई दिवस पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। 14 मार्च 3¼ पाई के पहले तीन अंकों का प्रतिनिधित्व 3.14। शर्मा की उपलब्धि उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो मानवीय स्मृति की सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी असाधारण उपलब्धि हासिल करने के लिए आवश्यक समर्पण और फोकस का एक प्रमाण है। हाँ, बस जरूरत है खुद को चुनौती देने की और आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकालने की, इसलिए धीरे धीरे आपको सुधार करने की तकनीकें और तरीके मिलेंगे। जब आपके सामने कोई बाधा आती है तो आपको बस एक अलग रास्ते पर जाने की जरूरत होती है। आज इन सवालों के जवाब हैं और वे बहुत स्पष्ट हैं। हाँ, सब कुछ संभव है और यह सिर्फ एक उचित उम्र से जानबूझकर प्रशिक्षण की बात है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी पेशे का प्रशिक्षण या अभ्यास करना वास्तव में पर्याप्त नहीं है, और अध्ययनों से पता चलता है कि जो डॉक्टर 20 साल से एक ही काम करते हैं वे एक नए डॉक्टर की तुलना में कई गुना बेहतर काम करते हैं। प्रतिक्रिया और परिणाम में निरंतर सुधार के बिना समय हमें कुछ नहीं देता है। शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण समझ, सबसे बड़ा महत्व निवेश किए गए समय की मात्रा है, न कि प्रतिभा का। निवेश का समय योजक चिन्ह ग्रेटर देन क्षमता, ग्रेटर देन बड़ा आउटपुट योजक चिन्ह ग्रेटर देन क्षमता। क्षमता विकसित करने के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। जितनी कम उम्र, निवेश का समय क्षमता को अधिक महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है, और निवेश का समय उसी पर निर्भर होना चाहिए। सफलता यानी कब सफलता है या असफलता ये समझना, अन्यथा हमारा मस्तिष्क नहीं जानता कि क्षमताओं को कैसे सुधारा जाए। उदाहरण, ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो कार्यों में और समस्याओं को सुझाने में बहुत कुशल हैं। इसका कारण आमतौर पर यह है कि वे एक निश्चित कमी से आए हैं और कई वर्षों से वे सरलीकरण का अभ्यास करते हैं और जितनी जल्दी हो सके समाधान तक पहुंचते हैं। वे हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, जानता हूं। किसी फॉर्मूले से नहीं, अभ्यास से सीखें, फोकस, फीडबैक और इसे सही करना हमारे मस्तिष्क के लिए सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए सभी शिक्षा प्रणालियों में अभ्यास पर जोर देना महत्वपूर्ण है, यहां तक कि सिद्धांत के बिना भी अभ्यास पर जोर देना महत्वपूर्ण है। इस तरह मैंने टेक्नियन में फिजिक्स की पढ़ाई की। मैंने देखा कि मुझे लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं केवल अभ्यास करने गया। पहले तो ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अभ्यास करते करते मुझे समझ आने लगा। जीतने के लिए जब हम जानबूझकर अभ्यास में संलग्न होते हैं, हमारे मस्तिष्क में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित करके और उन्हें सुधारने के लिए समय और प्रयास समर्पित करके हम अपने मस्तिष्क की संरचना को बदलते हैं, जिससे हम चुने हुए कार्यों में अधिक कुशल हो जाते हैं। तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करना, जानबूझकर अभ्यास के दौरान न्यूरॉन्स, मस्तिष्क की जिम्मेदार कोशिकाएं के बीच संबंध सूचना प्रसारित करने के लिए को मजबूत किया गया है। जितना अधिक ये कनेक्शन या सिनेप्स बढ़ते हैं, मस्तिष्क अभ्यास किए गए कौशल से संबंधित कार्यों को संसाधित करने और निष्पादित करने में अधिक कुशल हो जाता है। लक्षित प्रशिक्षण में लक्ष्यों पर 100% ध्यान केंद्रित होना महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के दौरान पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और आधे अधूरे मन से नहीं। इसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका स्वस्थ नींद और खेल का संयोजन है। सुधार के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करें और प्रगति महसूस करें। सबसे अच्छा समय एक निश्चित समय पर उठने के बाद का होता है, क्योंकि आपको पढ़ाई और प्रशिक्षण से कोई नहीं रोक सकता है और प्रशिक्षण आपके लिए एक दिनचर्या बन जाता है। विकासवादी कारण से हमें उन चीजों से खुशी मिलती है जो नियमित हैं, हमारे लिए उन्हें पहली बार करने की तुलना में करना बहुत आसान है। अपनी पढ़ाई के हर दौर में और साथ ही अपनी कंपनियों के निर्माण के दौरान मैं हमेशा एक निश्चित समय पर उठने के तुरंत बाद शुरुआत करता था और आमतौर पर ऐसे सत्र के लिए लगभग एक घंटा लगता था। अध्ययनों से पता चला है कि इस पर ध्यान केंद्रित करने का ये सबसे अच्छा समय है। और निश्चित रूप से प्राकृतिक वेकअप कॉल के साथ अलार्म घड़ी के बिना उठना महत्वपूर्ण है। इसी तरह आपका शरीर हार्मोनल रूप से जागता है। अध्ययनों से पता चला है कि लोग जितना अधिक सोते हैं वे उतनी ही बेहतर प्रगति करते हैं। तर्क भी इसका समर्थन करता है। मैं तुम्हें ये अध्ययन छोड़ दूंगा, उन्हें खोजो या मुझ पर विश्वास करो। मेरा समय हमेशा सीखने या प्रशिक्षण के लिए नियोजित होता था, इस तरह कोई आश्चर्य नहीं होता था और एक दिनचर्या होती थी। स्वतंत्र सोच अपरंपरागत सोच है, लेकिन समय अच्छा है जो सामान्य रूप से काम करता है, कम से कम मेरे लिए। आप प्रगति करते हैं और फिर अटक जाते हैं, यह आनुवंशिकी नहीं है। अधिकांश व्यवसायों और क्षमताओं में सबसे पहले आप सबसे तेज प्रगति करते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं, अटक गया। ये समझने की कोशिश करें कि आपके लिए क्या काम नहीं कर रहा है, समस्या कहाँ है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास करें और समस्या को अलग तरीके से हल करें। ये सटीक रूप से लक्षित प्रशिक्षण है। ये सॉफ्टवेयर, गायन, दौड़ के क्षेत्र में हो सकता है या लिखना। अधिकांश लोग किसी बिंदु पर फंस जाते हैं, लेकिन लोगों का एक बहुत छोटा समूह हार नहीं मानता है और आगे बढ़ने के तरीके ढूंढता है। उस छोटे समूह में रहें, ये जीन नहीं है, ये काम करने का एक तरीका है। कभी कभी पिछली मार्गदर्शिका से आप जो कुछ भी प्राप्त कर सकते थे उसे प्राप्त करने के बाद एक नई मार्गदर्शिका मदद कर सकती है। मस्तिष्क के नए क्षेत्रों और उन कार्यों को सक्रिय करना जो उनके लिए अभिप्रेत नहीं है। अभ्यास किए गए कार्य के आधार पर जानबूझकर अभ्यास के दौरान मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से अधिक सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक संगीत वाद्य यंत्र का अभ्यास मोटर कॉर्टेक्स आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार और श्रवण कॉर्टेक्स ध्वनि प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार को सक्रिय करता है। जैसे जैसे मस्तिष्क के ये क्षेत्र अधिक सक्रिय होते जाते हैं, वे विकसित और मजबूत होते जाते हैं, जिससे प्रदर्शन में सुधार होता है। वास्तव में उनके लिए इच्छित कार्यों के लिए मस्तिष्क के क्षेत्रों के संचालन का प्रमाण उन अंधे लोगों में देखा जाता है जो वास्तव में अपने हाथों से देखने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। अंधे लोग ब्रेल पढ़ने के लिए अपनी स्पर्श की भावना पर भरोसा करते हैं, जो एक उन्नत प्रणाली है, बिंदु जो अक्षरों और संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वे अपनी दृष्टि खो देते हैं तो उनका मस्तिष्क ब्रेल को समझने के लिए मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों का उपयोग करते हुए सूचनाओं को अलग अलग तरीके से संसाधित करने के लिए अनुकूलित होता है। दृष्टिहीन लोगों में दृश्य प्रांत तथा दृश्य जानकारी को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा है। हालांकि अंधे लोगों का दिमाग स्पर्श संबंधी जानकारी को संसाधित करने के लिए दृश्य कॉर्टेक्स को फिर से नियुक्त करता है। जब अंधे लोग ब्रेल पढ़ते हैं तो उनका दृश्य कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, जिससे उन्हें स्पर्श के माध्यम से उभरे हुए बिंदुओं की व्याख्या करने में मदद मिलती है। सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो स्पर्श से और शरीर से शरीर की संवेदी जानकारी संसाधित करता है। अंधे लोगों में सोमाटोसेंसरी कॉर्टेक्स स्पर्श उत्तेजना के प्रति अधिक संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील हो जाता है, जैसे कि ब्रेल डॉट्स को महसूस करना। ये बढ़ी हुई सक्रियता उन्हें ब्रेल को अधिक सटीक और कुशलता से पढ़ने में मदद करती है। अंधे लोग अक्सर विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों, जैसे कि सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स और भाषा प्रसंस्करण क्षेत्रों के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी दिखाते हैं। मस्तिष्क क्षेत्रों के बीच ये बेहतर संचार उन्हें स्पर्श की भावना के माध्यम से ब्रेल को प्रभावी ढंग से संसाधित करने और समझने की अनुमति देता है। मस्तिष्क की खुद को अनुकूलित करने और पुनर्गठित करने की क्षमता, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है, नेत्रहीन लोगों की ब्रेल पढ़ने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब वे अपनी दृष्टि खो देते हैं तो उनके मस्तिष्क में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिससे उन्हें स्पर्श संबंधी जानकारी को अधिक कुशलता से संसाधित करने और ब्रेल पढ़ने जैसे कार्यों के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति मिलती है। उम्र के साथ मस्तिष्क अधिक लचीला होता है। प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए आदर्श उम्र होती है। इन सीखने की क्षमताओं को खुला रखने के लिए छोटी उम्र से ही गणित, संगीत, पढ़ना और खेल शुरू करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मेरे साथ, क्योंकि मैंने बचपन से नहीं पढ़ा है, मुझे अच्छी तरह से बोलना और लिखना मुश्किल लगता है, जैसा कि आपने यहाँ साइट पर देखा है। उन्होंने एक बार सोचा था कि मोजार्ट एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था क्योंकि वह 4 साल की उम्र में खेलता था। आज यूट्यूब ऐसे बच्चों से भरा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की हमारे पूरे जीवन में खुद को अनुकूलित और पुनर्गठित करने की क्षमता है। उद्देश्यपूर्ण अभ्यास न्यूरोप्लास्टिसिटी में सुधार करता है, जिससे मस्तिष्क को नए तंत्रिका कनेक्शन और रास्ते बनाने की अनुमति मिलती है, क्योंकि हम नए कौशल सीखते हैं या मौजूदा कौशल को परिष्कृत करते हैं। आप इसे पियानो बजाने की क्षमता में अच्छी तरह से देख सकते हैं। पियानो बजाना एक जटिल कौशल है जिसके लिए दिमाग और शरीर के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क की नए कौशल को अनुकूलित करने और सीखने की क्षमता, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है, पियानो बजाने में महारत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए जानें कि उम्र के साथ मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी कैसे बदलती है और पियानो बजाना सीखने पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। बचपन और किशोरावस्था के दौरान मस्तिष्क बहुत प्लास्टिक होता है, जिसका अर्थ है कि यह आसानी से नए कनेक्शन बना सकता है और नए अनुभवों के अनुकूल हो सकता है। ये पियानो बजाना सीखने का एक आदर्श समय है, क्योंकि मस्तिष्क वाद्य यंत्र बजाने के लिए आवश्यक तंत्रिका कनेक्शन जल्दी से विकसित कर सकता है। युवा लोगों को अक्सर संगीत पढ़ना सीखना, गाने याद रखना और खेलने के लिए बढ़िया मोटर कौशल विकसित करना आसान लगता है। वयस्कता में बचपन की तुलना में मस्तिष्क की लचीलापन कम हो जाती है। हालांकि वयस्क अभी भी पियानो बजाना सीखने और न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़े मस्तिष्क परिवर्तनों का अनुभव करने में सक्षम है। वयस्कों को अभ्यास के लिए अधिक समय और प्रयास देने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वे अभी भी पियानो बजाने में कुशल बनने के लिए आवश्यक तंत्रिका संबंध विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा वयस्क अपने बढ़े हुए फोकस, अनुशासन और जटिल अवधारणाओं की समझ से लाभ उठा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी और भी कम हो जाती है और पियानो बजाने जैसे नए कौशल सीखना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि वृद्ध लोगों के लिए पियानो बजाना सीखना और न्यूरोप्लास्टिसिटी के लाभों का अनुभव करना अभी भी संभव है। नियमित अभ्यास संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है और उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट को भी धीमा कर सकता है। प्रगति हासिल करने के लिए वृद्ध वयस्कों के लिए धैर्य रखना और अपने अभ्यास में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक स्मृति। जानबूझकर प्रशिक्षण में हम दीर्घकालिक स्मृति पर काम करना चाहते हैं। ये पैटर्न को याद रखता है और अर्थहीन अनुक्रमों को याद रखने में कठिनाई होती है। मैंने इसे स्कूल में देखा, जब मुझे तनाज से कविताएं या छंद याद करने पड़ते थे तो मुझे वास्तव में कठिन समय लगता था, क्योंकि यह वो क्षेत्र नहीं था जिसमें मैंने प्रशिक्षण लिया था। पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी वो 20 साल की उम्र में थी, जॉन ग्रिशम की द फर्म, लेकिन मैंने हमेशा बिना किसी कठिनाई के कैलकुलस परीक्षणों के सूत्रों को याद किया। यह मेरी दीर्घकालिक स्मृति में दर्ज हो गया। जानबूझकर प्रशिक्षण मूल रूप से हमारी दीर्घकालिक स्मृति को तैयार स्थितियों, उनके बीच संबंध और वांछित प्रतिक्रियाओं में फीड करता है। हमारे दिमाग को पैटर्न को पहचानने और जानकारी के संबंधित टुकड़ों के बीच संबंध बनाने के लिए तैयार किया जाता है। तार्किक अनुक्रमों और सहसंबंधों को याद रखने की यह क्षमता अक्सर यादृच्छिक असंबंधित वस्तुओं को याद करने की कोशिश से अधिक प्रभावी होती है। शतरंज के खिलाड़ी इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे हमारा मस्तिष्क सार्थक पैटर्न और अनुक्रमों को याद रखने में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। पेशेवर शतरंज खिलाड़ी दीर्घकालिक स्मृति में अपनी क्षमता के हजारों राज्यों में सामान्य खिलाड़ियों से भिन्न होते हैं। प्रयोग में देखा गया कि वे नियमित खिलाड़ियों की तुलना में बोर्ड की स्थिति को बेहतर ढंग से याद रखते हैं, लेकिन जब वे बोर्ड को यादृच्छिक तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो उन्हें सामान्य खिलाड़ियों की तरह ही बोर्ड याद रहते हैं। इससे पता चलता है कि जानबूझकर किया गया अभ्यास दीर्घकालिक स्मृति पर कैसे काम करता है। शतरंज एक जटिल खेल है जिसमें खिलाड़ियों को अपनी चाल के बारे में पहले से ही रणनीति बनाने और योजना बनाने की आवश्यकता होती है। शीर्ष स्तर के शतरंज खिलाड़ी चालों के क्रम और उनके परिणामों को याद रखने की अद्भुत क्षमता प्रदर्शित करते हैं। उनका दिमाग पैटर्न को पहचानने और बोर्ड पर टुकड़ों की व्यवस्था और सफल रणनीतियों के बीच संबंध बनाने में असाधारण रूप से कुशल है। शतरंज के खिलाड़ी अक्सर ऐतिहासिक खेलों का अध्ययन करते हैं और अपने विरोधियों पर बढ़त हासिल करने के लिए सामान्य शुरुआती चालें सीखते हैं, जिन्हें ओपनिंग कहा जाता है। इन उद्घाटनों में चालों के अनुक्रम शामिल हैं जो पिछले खेलों में प्रभावी साबित हुए हैं। इन पैटर्नों को सीखकर और पहचानकर खिलाड़ी प्रतिद्वंद्वी की चालों का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीतियों को जल्दी से समायोजित कर सकते हैं। शतरंज के खिलाड़ियों को इन अनुक्रमों को अधिक आसानी से याद रखने का एक कारण यह है कि वे जानकारी साझा करते हैं। चंकिंग एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जहां हम जानकारी के संबंधित टुकड़ों को एक साथ समूहित करते हैं, जिससे उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। शतरंज के खिलाड़ी जटिल बोर्ड स्थितियों को याद रख सकते हैं क्योंकि वे संबंधित टुकड़ों को एक मानसिक इकाई या खंड में समूहित करते हैं। इससे अलग अलग टुकड़ों की यादृच्छिक स्थिति के बजाय चालों के पूर्ण अनुक्रमों को याद करना आसान हो जाता है। जैसे जैसे शतरंज खिलाड़ी अनुभव और विशेषज्ञता हासिल करते हैं, सार्थक पैटर्न और अनुक्रमों को पहचानने और याद रखने की उनकी क्षमता में सुधार होता है। वे परिचित बोर्ड स्थितियों और रणनीतियों की एक व्यापक मानसिक लाइब्रेरी विकसित करते हैं, जिसे वे गेम के दौरान तुरंत एक्सेस और लागू कर सकते हैं। ये ज्ञान उन्हें व्यक्तिगत चालों को याद रखने की कोशिश करने के बजाय उच्च स्तर पर रणनीतिक सोच पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। बात क्या है, वो कौन सा प्रशिक्षण है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभा सामने आई। अंततः क्षमताओं में अंतर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और ऐसे प्रयास करने की क्षमता है जो अभी तक नहीं किए गए हैं, और यही प्रशिक्षण रचनात्मकता सिखाता है। लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती, यह अर्जित क्षमता होती है। समयरेखा में किसी बिंदु पर जब क्षमता में सुधार होता है तो हमें खुशी महसूस होती है। पेशेवर संगीतकारों को बजाने में बहुत आनंद आता है और महान नर्तकों को भी। माता पिता और शिक्षकों को बच्चे या छात्र को आत्मविश्वास और पहचान देने की आवश्यकता है ताकि कठिन परिस्थितियों में बच्चा हार न माने। आखिरकार कठिन समय हमेशा आता है। कई बार किसी चीज में उत्कृष्टता हासिल करने वाले व्यक्ति को बस एक स्मार्ट अध्ययन पद्धति मिल जाती है और इससे अधिक कुछ नहीं। जब आप मैसी को देखते हैं तो हमेशा अपने आप से पूछें कि प्रतिभा क्या है, वो कौन सा प्रशिक्षण है जिसने प्रतिभा को जन्म दिया। लेज़लो दिखाता है कि हम सभी समान रूप से पैदा हुए थे, और मुझे पता है कि मैं अभी गणित में अच्छा हूं, और मुझे पता है कि इसने मुझे जीवन, तकनीकी शिक्षा, तार्किक सोच में बहुत सफलता दिलाई है, फैसले, यहां तक कि शादी भी। इसलिए मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि मेरी बेटी को भी वो आज़ादी मिले जो मुझे है। मैंने ये समझने की कोशिश की कि लोग सीखने में सफल क्यों होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जन्म से गणित में अच्छा नहीं हूं, और मुझे निम्नलिखित कहानी मिली। एक बार की बात है, हंगरी के एक छोटे और अजीब शहर में एक असाधारण व्यक्ति रहता था, परिवार फुगज। परिवार में लाज़लो नामक एक पिता, उनकी पत्नी क्लारा और उनकी तीन बेटियां जुस्सा, सुसान, ज़ोसोफिया, सोफिया और यहूदित शामिल थीं। लेज़लो फोल्गर एक शैक्षिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका दृढ़ विश्वास था कि प्रतिभाएं बनाई जाती हैं, पैदा नहीं होती। उनका एक क्रांतिकारी विचार था, अपनी बेटियों को शतरंज की प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में बड़ा करना, ताकि यह साबित हो सके कि सही माहौल और कड़ी मेहनत के साथ कोई भी किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। लेज़लो ने बहुत कम उम्र में अपनी बेटियों को शतरंज सिखाना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ी सुजैन ने केवल 4 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था, जबकि सोफिया और यहूदित उसके नक्शे कदम पर चले। लड़कियों को उनके माता पिता द्वारा घर पर ही शिक्षा दी जाती थी, जिसमें शतरंज और अन्य बौद्धिक गतिविधियों पर विशेष जोर दिया जाता था। लेज़लो और क्लारा ने अपनी बेटियों के लिए एक प्रेरक वातावरण बनाया, उन्हें विभिन्न विषयों पर हजारों किताबें प्रदान की, साथ ही सीखने के लिए अंगिनत शतरंज पहेलियां और शतरंज के खेल भी प्रदान किए। फोल्गर बहनों ने शतरंज पर अपने कौशल को निखारने के लिए हर दिन कई घंटे समर्पित करते हुए लगन से अभ्यास किया। तख्ता उनकी मेहनत रंग लाने लगी और जल्द ही उन्होंने शतरंज की दुनिया में धूम मचाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी सुजैन 12 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला बनी। वो 1996 में महिला विश्व शतरंज चैंपियन बनी और 4 साल तक ये खिताब अपने पास रखा। सुजैन आवश्यक मानदंड और रैंकिंग हासिल करके ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली पहली महिला भी थी। बीच की बहन सोफिया भी उतनी ही प्रतिभाशाली थी। हालांकि वो अपनी बहनों की तरह शतरंज में उतनी दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ी, लेकिन वो उल्लेखनीय रूप से सफल रही। सोफिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला मास्टर्स का खिताब जीता और कई टूर्नामेंट जीते, जिसमें 1989 का न्यूयॉर्क ओपन भी शामिल है, जहां उन्होंने कई मल्टी मास्टर्स जीते। लेकिन ये सबसे छोटी बहन जूडिथ थी, जो सभी रिकॉर्ड और उम्मीदों को तोड़ती रहेगी। 15 साल की उम्र तक वो बॉबी फिशर के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास में सबसे कम उम्र की अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर बन गई थी। जूडिथ न केवल सर्वकालिक सबसे मजबूत शतरंज खिलाड़ी थी, बल्कि वह नियमित रूप से शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती थी और उन्हें हराती भी थी। वो 2005 में 8वें नंबर की विश्व रिकॉर्ड रैंकिंग पर पहुंच गई, जो किसी महिला द्वारा हासिल की गई अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग है। पोग बहनों की कहानी उनके पिता की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की शक्ति में विश्वास का प्रमाण है। शतरंज के खेल और ज्ञान की खोज के लिए खुद को समर्पित करके बहनों ने न केवल शतरंज की पुरुष प्रधान दुनिया में बाधाओं को तोड़ दिया, बल्कि युवा लड़कियों की पीढ़ियों को अपने सपनों का पालन करने और यथास्थिति को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। अंत में पोग परिवार का प्रयोग निर्विवाद रूप से सफल रहा, जिससे साबित हुआ कि सही माहौल, समर्पण और जुनून के साथ कोई भी महानता हासिल कर सकता है। और इसलिए फुग बहनों की किंवदंती जीवित है, जो मानव क्षमता की शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है। कुछ लोग तर्क देंगे कि जिस प्रकार मनुष्य और वानरों के बीच अंतर है, मनुष्य स्वयं अपने जन्म की परिस्थितियों के संदर्भ में स्वाभाविक रूप से भिन्न है, जिसका अर्थ यह है कि हम समान रूप से पैदा नहीं हुए हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि हम समानता की सापेक्ष डिग्री के साथ पैदा होते हैं, बिना किसी प्रारंभिक कौशल या योग्यता के। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम कई क्षेत्रों में अलग अलग कौशल विकसित करते हैं, जो पोषण, पालन पोषण, मानसिक तनाव, एक सहायक वातावरण, दोस्त, अध्ययन, शैक्षणिक रूप से इच्छुक माता पिता और अनगिनत अन्य पहलुओं जैसे कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। हालांकि जन्म के समय मस्तिष्क की संरचना भिन्न हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव पर्यावरणीय कारकों की तुलना में नगण्य है, बिना किसी आनुवंशिक असामान्यता के। आनुवंशिक दृष्टिकोण से सबसे प्रमुख पहलू एक व्यक्ति का चरित्र है, जो यह निर्धारित कर सकता है कि हम किस क्षेत्र में हैं और परिणामस्वरूप हम उनके भीतर जो कौशल विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से याद रखने से घृणा है, जिसके कारण मुझे मानवतावादी विषयों में संघर्ष करना पड़ा और लड़खड़ाना पड़ा। परिणामस्वरूप, जिन क्षेत्रों में भाषा और अभिव्यक्ति पर मजबूत पकड़ की आवश्यकता होती है, उनमें मेरी दक्षता, जैसा कि यहां प्रदर्शित किया गया है, संक्षेप में सूत्रों की गड़बड़ी है। और वैसे मैंने अपनी बेटी को केवल घंटों के साथ प्रतिभा विकसित करते देखा है, प्रशिक्षण के कई घंटे। सबसे पहले मैंने सामान्य क्षमताएं देखी और टाइमर के साथ मैंने वास्तव में एक अप्राकृतिक प्रतिभा को विकसित होते देखा। और मैं भी ऐसा ही था, केवल सातवीं कक्षा से ही मैंने गणित में दूसरों की तुलना में अधिक निवेश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी कहते रहते थे कि वह 100 था। कोई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं, शून्य प्रतिभा। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई सीख नहीं। एक दिन मैं ब्लैस और ग्रॉस टेबल पर पोकर खेल रहा था। मैंने खुद से कहा कि आज मैं टेबल पर पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल सीखने के लिए यहां आया हूं, नए तरीकों और लोगों के व्यवहार के बारे में। मैंने केवल सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए कदम उठाए, जैसे बहुत अधिक या बहुत कम दाम लगाना, लोगों को बार बार बढ़ाकर परेशान करना, अपने कार्डों को बिल्कुल भी ना देखना और लोगों की प्रतिक्रियाओं और उनके दाव के आकार के आधार पर खेलना। इसने मुझमें अच्छी क्षमताएं विकसित की, जैसे एक अंधे व्यक्ति में स्पर्श की भावना मजबूत हो जाती है। इस छोटे से बदलाव ने मुझे खेल में पहले की तरह आगे बढ़ाया। मैं हमेशा इस दृष्टिकोण के साथ आया था, आज मैं कमाना चाहता हूं। मानव विकास में मापने योग्य और मात्रात्मक प्रतिक्रिया, त्रुटियों को सुधारने और निरंतर सीखने के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। प्रक्रिया बस प्रशिक्षण है, फिर प्रतिक्रिया, फिर सुधार, फिर प्रशिक्षण, फिर प्रतिक्रिया इत्यादि। ये हजारों पुनरावृत्तियों या बस कुछ ही हो सकती है। ये पुनरावृत्तीय प्रक्रिया व्यक्तिगत, व्यावसायिक और व्यवहारिक क्षेत्रों सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में विकास और सुधार के लिए आवश्यक है। फीडबैक और बाद में त्रुटि सुधार आवश्यक है, ताकि लोग किसी भी क्षेत्र या गतिविधि में विकास और उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें फीडबैक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आपने गंजापन रोधी मलहम बेचने के लिए एक वेबसाइट बनाई है, वहां कोई नहीं है शिक्षक जो आपको वास्तविक फीडबैक देगा। आपको दैनिक गणना करके फीडबैक तैयार करना होगा कि कितने ने खरीदा, कितने ने साइट पर प्रवेश किया और आपकी लागत कितनी है। तब आपके पास काम करने के लिए कुछ होगा। साइट पर प्रति खरीदार लागत, साथ ही खरीदारों की संख्या, अच्छी मात्रात्मक प्रतिक्रिया है। स्केटबोर्डिंग जैसे कुछ व्यवसायों या गतिविधियों में प्रतिक्रिया आसानी से स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्केटबोर्डर किसी ट्रिक को ठीक से करने में विफल रहता है, तो वह तुरंत परिणाम के आधार पर अपने प्रदर्शन को अलग कर सकता है। ये स्पष्ट फीडबैक उन्हें अपनी तकनीक को समायोजित करने और फिर से प्रयास करने की अनुमति देता है, जिससे अंततः सुधार होता है। हालांकि ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां फीडबैक इतना सीधा नहीं हो सकता है, जैसे पोकर। इस मामले में एक खिलाड़ी रणनीतिक रूप से सही निर्णय ले सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मौका के तत्व के कारण नुकसान होगा। परिणामस्वरूप यह निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि उनके खेल के किन पहलुओं में सुधार की आवश्यकता है। बच्चों में फीडबैक की आवश्यकता पैदा करना और सुधार करना उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। हमारा मस्तिष्क इसी तरह काम करता है, इसे सीखने के लिए प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। यह न केवल उनकी शैक्षणिक गतिविधियों पर बल्कि उनके व्यवहार और सामाजिक कौशल पर भी लागू होता है। बच्चों को फीडबैक के प्रति उत्तरदायी होना और समायोजन करने के लिए तैयार रहना सिखाकर, हम उन्हें जीवन भर निरंतर सुधार के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करते हैं। आदर्श रूप से शिक्षा प्रणाली को फीडबैक और सुधार के इस सिद्धांत के आधार पर संचालित करना चाहिए और निरंतर सुधार को सक्षम करना चाहिए सभी स्तरों पर छात्रों के लिए। दुर्भाग्य से ऐसा हमेशा नहीं होता है। प्रणाली अक्सर सुसंगत और सार्थक प्रतिक्रिया प्रदान करने में विफल रहती है, खासकर जब छात्र उच्च ग्रेड में आगे बढ़ते हैं और विशेष अध्ययन जारी रखते हैं। एक अच्छी तरह से काम करने वाली शिक्षा प्रणाली में छात्रों को निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त होगी, जो उन्हें कमजोरी के क्षेत्रों की पहचान करने और अपने कौशल में सुधार करने की अनुमति देती है। इसलिए मात्रात्मक प्रतिक्रिया के साथ एक तंत्र बनाना सीखने के लिए छात्रों के लिए एक अच्छा अभ्यास व्याख्यान का एक सप्ताह है। हर दिन छात्र जाते हैं और एक निश्चित विषय के बारे में 5 मिनट तक बात करते हैं, बाकी कक्षा से ग्रेड और प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और अगले दिन में हर कोई सुधार करता है और फिर से ऊपर जाता है, ताकि एक सप्ताह के बाद आपको ग्रेड देखना और देखना चाहिए। हर दिन बच्चा कक्षा का भारित ग्रेड देखता है और टिप्पणी करता है और अगले दिन सुधार करना चाहिए। ये वास्तव में एक सुधार तंत्र है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में अच्छा है। इसके अलावा शिक्षक और प्रशासक पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियों में संभावित अंतराल की पहचान करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए छात्र की प्रगति की निगरानी करते हैं। फीडबैक संचालित दृष्टिकोण अपनाकर शिक्षा प्रणाली छात्रों में सीखने के प्रति आजीवन प्रेम और नई चुनौतियों के अनुकूल होने की क्षमता को बढ़ावा देकर बेहतर सेवा प्रदान कर सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रणाली मनुष्य के सीखने के सुखद तरीके के समान फीडबैक पर भी निर्भर करती है और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सुधार। इसे अक्सर प्रशिक्षण नामक प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया जाता है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल को डेटा दिया जाता है और उनके आउटपुट पर प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पर्यवेक्षित शिक्षण, इस प्रकार की मशीन लर्निंग में एक AI मॉडल को लेबल किए गए डेटा इनपुट आउटपुट जोड़े के साथ प्रदान किया जाता है और प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर पूर्वानुमान या निर्णय लेना सीखता है। उदाहरण, छवि पहचान के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल को लेबल की गई छवियों का एक सेट प्राप्त होता है, जहां ये प्रदान किए गए सही लेबल के आधार पर छवियों के भीतर वस्तुओं को पहचानना सीखता है। सुदृढ़ीकरण सीखना, इस दृष्टिकोण में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट अपने साथ बातचीत करके सीखता है पर्यावरण और उसके कार्यों के आधार पर पुरस्कार या दंड के रूप में प्रतिक्रिया प्राप्त करना। उदाहरण, शतरंज के खेल के लिए AI सिस्टम गेम जीतने या हारने के रूप में फीडबैक प्राप्त करता है, जो इसे अपनी रणनीति को समायोजित करने और समय के साथ सुधार करने की अनुमति देता है। एक किताब जो इसे उत्कृष्ट रूप से समझाती है वो एंडर्स एरिक्सन की पीक है, और यह छात्र उन्मुख होनी चाहिए। एक शिक्षक को एक पल्स की आवश्यकता होती है और उसे काम पर रखा गया था। समस्या बजटीय नहीं है, समस्या सिर्फ प्रबंधन की है, कम शिक्षक और अधिक पैसा। अच्छे शिक्षक लाते हैं और उन्हें सिस्टम में रखते भी हैं। हम सभी अपने आसपास अच्छे लोगों की तलाश में रहते हैं। जब शिक्षा प्रबंधक विश्लेषणात्मक क्षेत्र से होंगे तो शिक्षा एक स्तर ऊपर पहुंच जाएगी। उदाहरण के लिए उस भौतिक विज्ञानी को लें जो भौतिकी पढ़ाने के तरीकों में सुधार कर रहा है। कार्ल वाइमन एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और शैक्षिकी शोधकर्ता हैं जिन्होंने अपने करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भौतिकी शिक्षा को बदलने के लिए समर्पित किया है। भौतिकी 2001 में नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में विमन न केवल एक कुशल वैज्ञानिक हैं, बल्कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भौतिकी पढ़ाए जाने के तरीके में सुधार के लिए एक उत्साही समर्थक भी हैं। उनका शोध छात्रों की भौतिकी अवधारणाओं की समझ को बेहतर बनाने के लिए साक्ष्य आधारित शिक्षण प्रथाओं और सक्रिय शिक्षण तकनीकों के अनुप्रयोग पर केंद्रित है। भौतिकी शिक्षा पर वीमन के शोध ने कई प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें की हैं। उनके काम के मुख्य सिद्धांतों में से एक पारंपरिक व्याख्यान आधारित शिक्षण विधियों से दूर जाने का महत्व है, जो अक्सर छात्रों को संलग्न करने और गहरी समझ को बढ़ावा देने में विफल होते हैं। इसके बजाय वे सक्रिय शिक्षण रणनीतियों के उपयोग की वकालत करते हैं जो छात्रों को गंभीर रूप से सोचने, समस्याओं को हल करने और अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया के संदर्भों में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए वेम ने सहकर्मी शिक्षण जैसी इंटरैक्टिव शिक्षण तकनीकों के उपयोग को विकसित और बढ़ावा दिया, जो स्कूलों के लिए एक आवश्यक सोच मॉडल है। उच्च ग्रेड के छात्रों को निम्न ग्रेड को पढ़ाने दें, साथ ही समस्याओं को हल करने के लिए समूह गतिविधियां भी सिखाएं। इन विधियों का उद्देश्य छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी ढंग से संलग्न करना और भौतिकी अवधारणाओं की गहरी समझ को बढ़ावा देना है। इसके अलावा वे अधिक समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि विविध पृष्ठभूमि के छात्र सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और सीखने की प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं। वीमन के शोध ने भौतिकी शिक्षा में छात्रों में मानसिक मॉडल बनाने के महत्व पर भी जोर दिया। मॉडल बनाने के लिए लेम्मा महत्वपूर्ण है, जानकारी नहीं। छात्रों को उनके सीखने पर विचार करने के लिए वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया और अवसर प्रदान करके शिक्षक अपने छात्रों के विकास में सहायता कर सकते हैं और गलतफहमियों को दूर करने से पहले उन्हें दूर कर सकते हैं, जिसे उन्हें भौतिकी का मानसिक प्रतिनिधित्व बनाने के साथ साथ बढ़ती जटिल समस्याओं से वृद्धिशील सीखने में मदद मिलती है। आज के स्कूलों में छात्रों के मानसिक मॉडलों के महत्व और उनके निर्माण की प्रारंभिक स्थितियों की कोई समझ नहीं है। छोटी समस्याएं, त्वरित प्रतिक्रिया, सफलता की भावना, वास्तविक दुनिया से प्रेरणा, बढ़ती कठिनाई और आराम से लगातार बाहर निकलना क्षेत्र। शिक्षण रणनीतियों पर अपने शोध के अलावा वीमन कक्षा में शैक्षिकी प्रौद्योगिकी के उपयोग के समर्थक थे। उन्होंने छात्रों को भौतिकी अवधारणाओं की कल्पना करने और उनका पता लगाने में मदद करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन के उपयोग को विकसित और समर्थन किया, जिसे फेट इंटरैक्टिव सिमुलेशन के रूप में जाना जाता है। ये सिमुलेशन छात्रों को चर में हेरफेर करने और प्रभावों का निरीक्षण करने की अनुमति देते हैं, इस प्रकार बुनियादी सिद्धांतों की गहरी समझ को बढ़ावा देते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अनुभाग के लिए कुछ शीर्षक हैं। ये पता चला है कि बच्चों में स्वभाव और सुनना शब्दावली को प्रभावित करते हैं। इसका मूल रूप से मतलब यह है कि बच्चे का चरित्र प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता को प्रभावित करता है, न कि शब्दावली उद्यान के माध्यम से। खेल में उच्च बुद्धि वाले खिलाड़ियों को शुरुआत में फायदा होता है, लेकिन केवल शुरुआत में, उसके बाद ये सिर्फ प्रशिक्षण है। घंटे एक पल के लिए इसके बारे में सोचें, ये दिलचस्प है, क्योंकि काम के लिए इसका मतलब सबसे अधिक सीखने की इच्छा वाले कर्मचारी को नियोजित करना है, न कि सबसे अधिक ज्ञान वाले कर्मचारी को। भविष्यवाणी तब सच होती है जब वे कहते हैं आप गणित में अच्छे नहीं हैं, और सच्चाई को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब शिक्षक को नहीं लगता कि उसके पास कोई मौका है, तो छात्र अपने होश में अकेला महसूस करता है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ तक कि बड़े बच्चे भी जानते हैं कि जब उनकी सराहना नहीं की जाती है तो संकेत कैसे प्राप्त किए जाते हैं, और फिर एक दुष्चक्र होता है जहां वह खुद की सराहना नहीं करता है। तब छात्र को अभ्यास करने या सीखने की कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। एक है इसके साथ समस्या है। बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल जो किसी भी क्षेत्र में उनका साथ देगा, सबसे सरल में से एक है, मैंने जानबूझकर प्रशिक्षण के साथ अभ्यास किया और फिर मैं आगे बढ़ा। ये सफलता का मॉडल है जो मूल रूप से प्रगति के बारे में बताता है। क्षमता आनुवंशिक या भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति पर निर्भर करती है कि वह प्रशिक्षण लेगा या नहीं। मैं इसे अपने बच्चों को खूब सुनाता हूं और उनका सामना करता हूं। उनका जवाब आमतौर पर कहता है, लेकिन जब मैं छोटा हूं तो मैं एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी कैसे बन सकता हूं? और फिर मैं उन्हें जवाब देता हूं, ऊंचाई एक क्षमता नहीं है, यह एक शारीरिक विशेषता है। यदि किसी बच्चे के दिमाग में यह मॉडल है, तो वह गणित, नृत्य से लेकर फुटबॉल या शेर प्रश्नोत्तरी तक हर क्षेत्र में प्रयास करेगा और प्रगति करेगा। यह एक मॉडल है जो अन्य क्षेत्रों में सफल होने में मदद करता है। यदि क्षेत्र में उत्कृष्ट होना संभव होता, तो सर्वश्रेष्ठ युवा टेनिस खिलाड़ी हमेशा दुनिया के शीर्ष पर होते, और ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, युवा खिलाड़ियों से बताएं कि विश्व स्तरीय टेनिस खिलाड़ी कौन होगा। सभी समय के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक टॉम ब्रेडी को ड्राफ्ट में 254 में से 199वें नंबर पर चुना गया था, जिसका अर्थ है कि वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक नहीं थे। उच्चतम योग्यता, वर्षों में और सुविचारित प्रशिक्षण के कारण वो शीर्ष पर पहुंच गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रशिक्षण का अभ्यास करने और अपनी क्षमताओं में सुधार करने में बिताया। उन्होंने हर खेल से मिले फीडबैक के साथ लक्षित प्रशिक्षण किया। मुझे यकीन है कि अन्य लोग इसके करीब भी नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने आहार के साथ साथ अपने पूरे जीवन में भी सुधार किया। टॉम ब्रेडी अपने सख्त आहार, नींद की दिनचर्या और जीवनशैली विकल्पों के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि NFL में उनकी लंबी उम्र और सफलता में योगदान दिया है। ब्रेडी ने अपने स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें उचित पोषण, नींद और शारीरिक प्रशिक्षण का संयोजन शामिल है। उनके आहार के कुछ प्रमुख पहलू हैं, नींद। ब्रेडी रिकवरी और समग्र स्वास्थ्य में सहायता के लिए पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण नींद के महत्व पर जोर देते हैं। वो आमतौर पर हर रात कम से कम 8-9 घंटे की नींद का लक्ष्य रखते हैं और नियमित नींद का कार्यक्रम बनाए रखते हैं। व्यायाम और पुनर्प्राप्ति। ब्रेडी एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण व्यवस्था का पालन करता है जो कार्यात्मक शक्ति, लचीलेपन और गतिशीलता पर केंद्रित है। वो अपनी दिनचर्या में प्रतिरोध बैंड, लचीलेपन वाले व्यायाम और योग को शामिल करते हैं। ब्रेडी सूजन और मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए मालिश, फोम रोलिंग और क्रायोथेरेपी जैसे पुनर्प्राप्ति तरीकों को भी प्राथमिकता देते हैं। जीवन शैली। अपने आहार और फिटनेस दिनचर्या के अलावा, ब्रेडी एक अनुशासित जीवन शैली बनाए रखते हैं जो उनके करियर का समर्थन करती है। इसमें शामिल है शराब और कैफीन की खपत को सीमित करना, पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के संपर्क को कम करना, और भावनात्मक भलाई के लिए परिवार और दोस्तों के साथ समय को प्राथमिकता देना। सख्त आहार, नींद की दिनचर्या और जीवन शैली विकल्पों का पालन करके टॉम ब्रेडी उच्च स्तर बनाए रखने में सक्षम है। अपने लंबे करियर के दौरान प्रदर्शन का स्तर अपेक्षाओं को धता बताता है। इस उम्र में एक NFL क्वार्टरबैक के लिए, लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है जो महत्वपूर्ण है, वो प्रशिक्षण की अवधि नहीं है, क्योंकि कई पोकर खिलाड़ी हार के साथ अपना सिर पीट लेंगे। जीवन भर भले ही वे पूरे दिन खेलते हैं, वे खेल के लिए अपने लिए नए मानसिक मॉडल नहीं बनाते हैं, वे गलतियां नहीं सुधारते हैं और प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करते हैं। बेशक ये सिर्फ पोकर के लिए नहीं है, ये दुनिया में सबसे अधिक क्षमताएं हैं। 95% जानबूझकर प्रशिक्षण नहीं करते हैं और इसलिए फंस जाते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हर कोई जानता है कि जानबूझकर प्रशिक्षण क्या है। मुझे आशा है कि यदि आप यहां तक जीवित रहने में कामयाब रहे तो अब आप उनमें से एक हैं। कई बार आपको लक्षित प्रशिक्षण में मदद के लिए एक कोच की मदद लेनी पड़ती है और उससे सब कुछ सीखने के बाद एक नया शिक्षक या कोच लेना पड़ता है। लाभांश अच्छा है, शिक्षा देश और परिवार के भविष्य के लिए सबसे अच्छा उपाय है। एकमात्र स्थान जहां एक शेकेल का निवेश लाभांश के साथ 100 शेकेल लौटा सकता है। शिक्षा मनुष्य को वह देती है जिसकी वे हजारों वर्षों से इच्छा रखते हैं, स्वतंत्रता। लेकिन यहां बात विचार की स्वतंत्रता की है, और विचार की स्वतंत्रता के सहारे शारीरिक स्वतंत्रता तक पहुंचना आसान है। हमारे देश में आजाद होने के लिए राष्ट्रगान कहता है, मूल्यों का निर्माण तब होता है जब इस बात की समझ होती है कि वे जीवन को कैसे बेहतर बनाते हैं। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रबंधन है, आप इसके बारे में यहां पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र विचार के साथ प्रबंधन और निवेश। तनाक के यहूदी छात्रों के लिए शिक्षा मूल्यों को प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, यहां तक कि उन छात्रों के लिए भी जो पूरी तरह से विधर्मी हैं। यहूदी शिक्षा हमें एक यहूदी राज्य के लोगों के रूप में एकजुट करती है। ईगल की भावना स्वतंत्रता और दयालुता और विनम्रता की वकालत करती है, ऐसे मूल्य जो हर किसी के लिए आत्मसात करना महत्वपूर्ण है। अच्छे शिक्षक उन सभी प्रणालियों में अच्छे शिक्षक लाते हैं जिनमें लोग होते हैं, एक नियम होता है जो आमतौर पर मान्य होता है। उत्कृष्ट शिक्षक लाते हैं, और औसत दर्जे के शिक्षक औसत दर्जे के शिक्षक लाते हैं और उससे भी नीचे। आज इजराइल की शिक्षा प्रणाली में औसत दर्जे और इससे नीचे का स्तर फैल गया है, और यह निश्चित रूप से शिक्षा मंत्रालय के प्रबंधन से क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। मीर हर सियोन का उत्पादन कैसे होता है? लोग उन घरों में बड़े होते हैं जहां नियमों का ढांचा तय होता है। धारणाएं हैं, और आमतौर पर आप बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। आप यही खाना खाते हैं, घर ऐसे होने चाहिए, ये अच्छे पेशे हैं इत्यादि। अधिकांश बच्चे स्वतंत्र रूप से बड़े नहीं होते हैं, यानी वे मौजूदा वास्तविकता और नियमों के एक निश्चित ढांचे में प्रवेश करते हैं। ये चीजें वास्तव में बच्चों को अग्रणी बनने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण से वंचित करती हैं। साहसी सेनानी मीर हर सियोन का कहना है कि जब वह एक बच्चा था तो वह सचमुच पूरे देश में घूमता था और अकेले यात्राओं पर जाता था। वह स्वतंत्रता और नियमों को तोड़ने का अभ्यास करता था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अद्वितीय और विशेष था। वह नहीं था इस तरह पैदा हुए, उन्होंने बिना जाने इसके लिए प्रशिक्षण लिया। एक पथ प्रदर्शक होने के अलावा एक ऐसा व्यक्ति होना जरूरी है जो किताबें पढ़ता हो। मैंने ऐसा कोई दूरदर्शी व्यक्ति नहीं देखा जो किताबी व्यक्ति ना हो। हर्जल, बेन गुरियन, बेगिन, गोल्डा, फ्रैंकलिन, जबोटिस्की, एलोन मस्क, आइंस्टीन, जेफरसन सभी किताबी लोग थे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सही तरीका है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने कम नेता, उद्यमी और सीईओ क्यों हैं जिनके पास दूरदर्शिता और सफलता है। शीर्ष पर पहुंचने के लिए नेताओं को करिश्माई होने के साथ साथ भाग्य और मार्केटिंग क्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन ये सब काफी नहीं है, कुछ और छूट रहा है। आमतौर पर आपको एक चुनौतीपूर्ण बचपन की भी जरूरत होती है, जो आपको सपने दिखाए, एक अलग भविष्य का सपना दिखाए, और फिर आप एक अलग भविष्य की कल्पना करने का अभ्यास करें। इन सभी में वो जोड़ें जो आपको बनना है, सभ्य और ईमानदार, और फिर आप अकेले हो जाते हैं। ये सभी चीजें काम करेंगी और घटित होंगी। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये वास्तव में अकेले लोग हैं, लेकिन उनका अस्तित्व है और वे हमारे भीतर हैं। हमें उनकी चिंगारी को मुफ्त में तलाशने की जरूरत है, सोच और उनसे लाभ। तो अगली बार जब आपका बच्चा किसी पेड़ पर घर बनाना चाहे या पड़ोसी के घर तक सुरंग खोदना चाहे, तो उसे करने दें। दूसरी बुद्धि, सोच में ही सुधार करें। गणना दूसरी बुद्धि की तरह है। कैलकुलस हमें वास्तविकता के सही मॉडल बनाने में मदद करता है। बचपन के दौरान मस्तिष्क के गणितीय प्रशिक्षण के बिना वयस्कता में उपयुक्त मानसिक मॉडल बनाना असंभव है, इसलिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों को बहुत कम उम्र से गणित, गणना सिखाना महत्वपूर्ण है, और यह और भी महत्वपूर्ण है कि वे घर पर अभ्यास करें। जैसे जैसे हम आत्मसंतुष्ट होकर अपनी सोच में सुधार करते हैं, हम वास्तव में अपनी सभी क्षमताओं को एक स्तर तक धोखा दे रहे हैं। बैट के साथ एक कैंडी की लागत की गणना करने से लेकर टोकरी में बास्केटबॉल फेंकने तक, ये गणना पागल शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। गणित की शक्ति के साथ एकीकरण करने में है, जानकारी और मॉडलों के माध्यम से दुनिया को समझ के साथ संयोजन में बेहतर निर्णय लेने के लिए। अपने आप को यह विश्वास दिलाकर नहीं कि मैं सही हूं, बल्कि कई बार पहिया घुमाकर और परिणामों को मापकर। समस्याओं को धीरे से परिभाषित करना, लेकिन उन्हें शक्तिशाली ढंग से हल करना महत्वपूर्ण है। मानसिक मॉडल का एक उदाहरण, जब मैं लॉटरी टिकट स्क्रैच करता हूं तो मेरे जीतने की संभावना नहीं बदलती अगर किसी और ने मुझसे पहले टिकट ले लिया हो। इस कथन के पीछे का मॉडल, यदि मैं एक या दूसरा कार्ड निकालता हूं तो जीतने या हारने की संभावना में कोई बदलाव नहीं होता है। जिन विषयों पर जोर दिया जाना चाहिए वे हैं जो सोच और निर्णय लेने में सुधार करते हैं, अंकगणित, दूसरी भाषा, सैद्धांतिक पढ़ना, समाचार पत्र सहित, और भौतिकी। दूसरी भाषा के फायदों के बारे में यहां और पढ़ें। दूसरी भाषा तीसरी बुद्धिमत्ता अध्ययनों से पता चलता है कि दो भाषाओं को बोलने वालों को बुद्धि परीक्षणों में बेहतर ग्रेड मिलते हैं। निःसंदेह दूसरी भाषा से अधिक सरल बुद्धि प्राप्त करना थोड़े प्रयास से एक बड़ा लाभ है, बिल्कुल वही जो हम खोज रहे हैं। कम से कम मैं इसकी तलाश में हूँ। एक ही समय में दो विकल्प। एक, दूसरी भाषा हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है किसी विषय पर अधिक स्वतंत्र रूप से और दायरे से बाहर, क्योंकि मस्तिष्क को प्रत्येक प्रासंगिक भाषा के लिए हमेशा दो विकल्पों का उपयोग करने की आदत हो जाती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि दूसरी भाषा हमारी सोच को बेहतर बनाती है। ये दिलचस्प है कि आप्रवासियों के पास आमतौर पर एक दूसरी भाषा होती है जो संभवतः उनकी सफलता में मदद करती है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे समान अवसरों वाले देशों में। अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा, अधिमानतः अंग्रेजी, वास्तव में एक शक्ति गुणक है क्योंकि यह हमारी सभी सोच में सुधार करती है, न कि केवल एक निश्चित विषय पर, जैसे कि हम इतिहास से कुछ याद करते हैं जो हमारी सोच में सुधार नहीं करता है। एक सॉफ्टवेयर भाषा एक भाषा है। एक सॉफ्टवेयर भाषा हर चीज के लिए एक भाषा की तरह है। यह हमारी सोच को भी बेहतर बनाती है। कंप्यूटर हमारे लिए दूसरे मस्तिष्क की तरह है, खासकर यदि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे विकसित करना है या गूगल शीट का उपयोग कैसे करना है। हमारे बीच पुराने समय के लोगों के लिए एक्सेल सही ढंग से और निसंदेह खोज और ChatGPT का सही ढंग से उपयोग करने से हमारी सोचने और समझने की क्षमता में बहुत वृद्धि होती है। मशीन को साझा करने में बच्चों की बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए बच्चों को उन्हें सही तरीके से संचालित करना सिखाना महत्वपूर्ण है। ज्ञान की दुनिया का प्रवेश द्वार अंग्रेजी है। दुनिया का अधिकांश व्यावसायिक साहित्य अंग्रेजी में लिखा गया है। मास्टर स्तर पर अध्ययन किया जाने वाला प्रत्येक विषय लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी में है। इसीलिए फारसी बोलने वालों के लिए बहुत बड़ा फायदा है और यह बेहतर है कि वह बेशक अंग्रेजी हो। स्वतंत्र विचार के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए और दुनिया का अधिकांश ज्ञान अंग्रेजी में है। मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण किताबें पढ़ी हैं उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में हैं। ऐसे शब्द जो आपकी पहली भाषा में नहीं हैं। दूसरी भाषा में आपकी सोच में सुधार होने का एक कारण यह है कि हमें ऐसे शब्द मिलते हैं जो हमारी मुख्य भाषा में नहीं हैं, और फिर यह सोचने का एक नया तरीका देता है। मान लीजिए कि हिब्रू में वास्तव में न्यूनतम और अधिकतम शब्द नहीं है। अंग्रेजी सीखते समय ये वास्तव में हमारे सोच बॉक्स में सोच के कई नए रूप जोड़ता है। ये स्वयं सोच में सुधार करता है। प्रोग्रामिंग भाषा में भी नए शब्द हैं जो वास्तव में हैं टूलबॉक्स को और भी अधिक बढ़ाएं, जैसे कि यदि तब या J=100, जिसका अर्थ है वेरिएबल में एक मान डालना। हम मस्तिष्क में एक विचार के लिए एक शब्द को फ्रेम करते हैं और फिर इस फ्रेम को किसी भी विचार प्रक्रिया में बाहर निकालते हैं जिसे इसकी आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों में ये 2003 में 7.8% से बढ़कर 2007 में 9.5% और 2011-2012 में 11.0% हो गया। ये पिछले कुछ वर्षों में ADHD की निदान दर में लगातार वृद्धि की ओर इशारा करता है। सबसे स्पष्ट बात यह है कि बच्चों का लगातार सभी प्रकार के विकारों के लिए परीक्षण किया जा रहा है और उनका परीक्षण कम बार किया जाता था। दूसरी बात यह है कि कई बच्चों को आहार मिलता है प्राप्त करें जिसके कारण वे अजीब व्यवहार करने लगते हैं। ये ज्ञात है कि पोषण हमारी मानसिकता और विशेषकर बच्चों पर प्रभाव डालता है। मैं अपने बच्चों को देखता हूं जब वे झगड़ालू और दुखी होते हैं। मैं अपनी पत्नी से पूछता हूं, क्या उन्होंने चीनी खाई है, और जवाब आमतौर पर हाँ होता है। आपको यहाँ अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ खाद्य पदार्थ और आहार पैटर्न बच्चों में ADHD, ध्यान अभाव विकार और अन्य व्यवहारिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं। खाद्य योज्य और कृत्रिम रंग। कुछ अध्ययनों ने बच्चों में खाद्य योज्य कृत्रिम रंगों और ADHD लक्षणों के बीच संभावित संबंध का संकेत दिया है। 2012 में पीडियाट्रिक्स पत्रिका में प्रकाशित एक मेटा विश्लेषण ने बच्चों में कृत्रिम खाद्य रंग और बढ़े हुए ADHD लक्षणों के बीच एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण संबंध बताया। ऐसे एडिटिव्स के उदाहरणों में सोडियम बेंजोएट और कृत्रिम रंग जैसे लाल 40 और पीला 5 शामिल हैं। हालांकि ADHD वाले सभी बच्चे इन एडिटिव्स के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकते हैं और स्पष्ट कारण संबंध स्थापित करने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। अधिक चीनी का सेवन। अत्यधिक चीनी, इसके सेवन को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है, जिनमें मोटापा, टाइप 2 मधुमेह और दंत समस्याएं शामिल हैं। कुछ अध्ययनों ने उच्च चीनी सेवन और ADHD लक्षणों या बच्चों में अन्य व्यवहार संबंधी समस्याओं के बीच एक संभावित संबंध भी दिखाया है। 2011 में जर्नल ऑफ अटेंशन डिसऑर्डर में प्रकाशित एक अध्ययन में उच्च चीनी की खपत और ADHD लक्षणों के बीच एक सकारात्मक संबंध पाया गया। हालांकि चीनी और ADHD के बीच संबंध अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है और अधिक शोध की आवश्यकता है। कुछ आहार पैटर्न जैसे पश्चिमी आहार, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, परिष्कृत शर्करा और गैर पशु वसा शामिल हैं, को खराब मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ा गया है बच्चों में परिणाम। इसके विपरीत फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और दुबले प्रोटीन से भरपूर भूमध्य सागरीय आहार जैसे स्वस्थ आहार को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। 2017 में द लैंसेट साइकेट्री में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि पोषण संबंधी हस्तक्षेप बच्चों में ADHD लक्षणों सहित मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकता है। पोषण संबंधी कमियां, कुछ अध्ययनों से संकेत मिला है कि विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी बच्चों में ADHD लक्षणों और अन्य व्यवहारिक या मानसिक समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2005 में जर्नल ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि ओमेगा-3 फैटी एसिड अनुपूरण बच्चों में ADHD लक्षणों में सुधार कर सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पोषक तत्वों की खुराक एक स्वास्थ्य पेशेवर की देखरेख में की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्वों की अत्यधिक खपत भी नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। यहां पढ़ें मुफ्त पोषण क्या है और यह मनुष्यों के लिए उपयुक्त क्यों है। इनमें से एक आधुनिक समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई मुख्य रूप से खुद को देखता है और यही कारण है कि आज विनम्रता की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। मेरी आत्मा किसी के लिए भी धूल के समान है, यह व्यक्ति को अहंकार और आत्म प्रशंसा के बिना सोचने की अनुमति देता है और यही वह चीज है जो अहंकार के बिना डेटा और तर्क के आधार पर निर्णय लेने के लिए जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। लड़के और लड़कियां, लड़कों और लड़कियों के बीच अलगाव पहले वर्षों में वास्तविक विषयों में। अध्ययनों से पता चलता है कि स्कूल के पहले वर्षों में लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर के कारण लड़कियों की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उस प्रगति को शिक्षित करना निरंतर प्रगति के लिए एक मूल्य शिक्षा है। लोगों को एक घेरे में कार्य करना, कठिनाई या दर्द ग्रेटर देन प्रक्रिया का एक और रूप और अध्ययन ग्रेटर देन प्रगति, और एक घेरे में नहीं, कठिनाई या दर्द ग्रेटर देन समस्याओं के लिए दुनिया को दोष देना ग्रेटर देन निराशा और निष्क्रियता। जो लोग पहले सकल में काम करते हैं, लगभग 10% लोग सबसे सफल होते हैं, लेकिन शिक्षा के माध्यम से सुधार संभव है और आसान भी है। सुधार के लिए शिक्षा, हर संभव सुधार का प्रयास करना और आगे बढ़ना ही सार्थकता प्रदान करता है। सुधार आलोचना को सुनने, उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने और तदनुसार राय को सही करने की क्षमता के माध्यम से किया जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को ठीक से प्रबंधित करने के तरीके को सिखाने के लिए और किसी की राय को कैसे और क्यों बदलना सार्थक है सही रास्ता। ये कौशल, जिन्हें अध्ययन के बिना हासिल नहीं किया जा सकता, समाज का चेहरा बदल देंगे यदि बहुमत तर्क के अनुसार कार्य करने का निर्णय लेता है। उन सभी पूर्वाग्रहों को सिखाने के लिए जिनके साथ हम पैदा हुए हैं, जैसे कि हम जो जानते हैं उसकी पुष्टि करना, मौजूदा विचारों के विपरीत नए तथ्यों को स्वीकार नहीं करना, मानसिक दबाव में निर्णय नहीं लेना क्योंकि वे भावनाओं पर आधारित हैं, और अधिक से अधिक। चक्रवृद्धि ब्याज, यह एक सार्वभौमिक कानून है जो न केवल निवेश पर लागू होता है, दुनिया के आश्चर्यों में से एक है और शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है। जब आप जो सीखा है उसे निवेश करते हैं, ध्यानु जीवन में रुचि वापस आ जाती है, क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र से एक उदाहरण, 10% वार्षिक ब्याज पर 25 वर्षों के लिए 10,000 NIS का निवेश 110,000 NIS प्राप्त करेगा। ये पैसे का 11 गुना है। करियर में एक उदाहरण, जब हर दिन आप पढ़कर या किसी अन्य तरीके से कुछ नया सीखते हैं तो सीखने के अनगिनत विकल्प होते हैं जो हमारे द्वारा प्राप्त नए ज्ञान पर निर्भर करते हैं। जो नहीं सीखता वो हमेशा वहीं रहेगा जहां वो रुका था। डोट, यह मूल रूप से सीखने में रुचि है जो भारी मुनाफा दिला सकती है। आपने जो सीखा है उसे अपनी क्षमताओं में सुधार करने के लिए पुनः निवेश करें, स्मार्ट और सफल लोग यही करते हैं। वीडियो का अध्ययन करें क्योंकि आप तोता नहीं बनना चाहते हैं। हाल के वर्षों में शिक्षक की भूमिका को मौलिक रूप से बदलने के लिए एक स्पष्ट प्रवृत्ति विकसित हो रही है। ये परिवर्तन शिक्षक को छात्रों के लिए मार्गदर्शक बनने और MAM पद्धति, शिक्षक खड़े होकर पढ़ाना का उपयोग करके पाठ्यक्रम और पूर्व लिखित निबंधों को पढ़ने वाले व्याख्याता से कमतर होने की दिशा में व्यक्त किया गया है। उल्टी कक्षा जैसी पद्धतियां जिसमें छात्र प्रदान की जाने वाली सामग्री, वह चरण जिसमें वे ज्ञान को अवशोषित करते हैं, सीखते हैं, उन्हें फिल्माए गए लिखित होमवर्क के रूप में देखा जा सकता है और उसके बाद ही कक्षा में आते हैं और अभ्यास और चर्चा चरण का प्रदर्शन करते हैं। कई अन्य तरीके विकसित किए गए जिनमें प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा PBL शामिल है, जो हाई टेक हाई और 80+ एसोसिएशन में विकसित हुआ, जिसे मैंने 2013 में अपने सहयोगियों डैनियल कुबलर के साथ स्थापित किया था। एसोसिएशन में हमने टेक फार्म कार्यक्रम की स्थापना की, जिसमें छात्रों ने छोटे अनुसंधान समूहों की मदद से सामग्री सीखी जो कृषि फार्म में एक समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं, और सलाहकारों की मदद से एक प्रोटोटाइप का आविष्कार करते हैं, और अंत में उन्होंने एग्रोटेक के क्षेत्र में युवा उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रवेश किया और राशि में सैकड़ों प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ लगातार 3 वर्षों में पहले 3 स्थान जीते, 4-5 गणित क्रेडिट और विस्तारित विज्ञान की बड़ी कंपनियों तक पहुंच हासिल की। परिवर्तन इतना ध्यान देने योग्य था कि 2013 में केनाटन के युवा गांव में केवल 2 छात्रों ने गणित की 4-5 इकाइयां पूरी की और 3 साल बाद लगभग 1000% की वृद्धि हुई। हमने महसूस किया कि सकारात्मक मॉडलिंग की मदद से कोरल बीटन, जो बाद में एसोसिएशन के सीईओ बने, जैसे उत्कृष्ट शिक्षकों और क्षेत्र समन्वयकों के नेतृत्व के साथ विज्ञान अध्ययन में पर्याप्त बदलाव और गहराई पैदा करना संभव है। बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि वास्तव में क्षेत्र में किया जाता है, और उच्च शिक्षण क्षमताओं और छोटे शिक्षण समूहों के साथ उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के साथ विस्तारित वैज्ञानिक प्रमुखों तक पहुंचने के लिए छात्रों में प्रेरणा पैदा करता है। एक छात्र को शिक्षक बनने की अनुमति देने से आप उसके साथ अध्ययन कर सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रीय टीम के कोच जिन्होंने अपने द्वारा खोले गए गणित स्कूल में इस पद्धति का उपयोग किया। वह हाई स्कूल के छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और यह आश्चर्यजनक रूप से काम करता है। 2021 के अंत में कामेल समुद्र तट पर सुबह की सैर पर मैंने अपने साथी डेनियल से संपर्क किया VBL वीडियो आधारित शिक्षा या हिब्रू में वीडियो आधारित शिक्षा के निर्माण के विचार के साथ एसोसिएशन एटेड प्लस की स्थापना में। मैं इस दिशा में आया क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं एक शिक्षक होता तो मैं हर समय तोते की तरह पाठ योजनाओं को दोहराना नहीं चाहता। मैं अपना समय सार्थक शिक्षा में निवेश करना चाहता हूं, कमजोर लोगों की मदद करना चाहता हूं और सकारात्मक मॉडलिंग करना चाहता हूं, जिसमें मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो वास्तव में कक्षा में उन लोगों के साथ अभ्यास करने में संघर्ष करते हैं जो स्वतंत्र रूप से अपनी गति से अधिक गति से दौड़ सकते हैं। शिक्षक और स्कूल अच्छे थे पायलट प्रोजेक्ट में पुरस्कृत किया गया। पायलट ने 2022 में 8 स्कूलों में नियमित शिक्षकों के साथ बड़े पैमाने पर जारी रखा, जिन्हें महत्वपूर्ण मुआवजा नहीं मिला। इसका उद्देश्य ये परीक्षण करना था कि क्या परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ है। विस्तारित पायलट में शिक्षकों ने खराब प्रेरणा और समय निवेश करने में असमर्थता दिखाई, और इससे यह निष्कर्ष निकला कि राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सभी मुख्य विषयों में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले वीडियो बनाने में निवेश करना चाहिए। इसराइल में शिक्षक और वास्तव में वीडियो के चारों ओर छात्रों और सीखने की तकनीकों के साथ सितारे पैदा करते हैं जो एक इंटरैक्टिव अनुभव बनाते हैं। आज यह मुख्य रूप से ई स्कूल और निजी कंपनियों की अन्य व्यक्तिगत वेबसाइटों पर होता है। हमारी राय में परियोजना के सफल होने के लिए शिक्षा मंत्रालय को निजी कंपनियों को एक निविदा जारी करनी चाहिए, जिसमें निविदा को कई उत्पादन कंपनियों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए और विदेशी मुद्रा कंपनी जैसी बाजार में एक कंपनी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। ये सब एक वस्तुनिष्ठ स्कोर के साथ सफल प्रस्तुतियों के लिए एक अतिरिक्त इनाम के साथ साथ माप उपकरणों के लिए प्रयास करता है जो स्वतंत्र विचार के मानकों को पूरा करते हैं। इस तरह आपको केवल पेशेवर शिक्षकों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप उच्च कक्षाओं के छात्रों और विद्यार्थियों को भी नियुक्त कर सकते हैं जो केवल कक्षा का अभ्यास करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे अकादमी में जहां अभ्यास करने वाले छात्र होते हैं। एक पेशेवर शिक्षक अभी भी कक्षा का प्रभारी होगा, लेकिन उसका समय ऊपर से सब कुछ देखने और कमजोरों की देखभाल करने के लिए खाली रहेगा। मेरी राय में इस पद्धति का उपयोग केवल 4थी कक्षा से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे छात्र उनके सामने एक शिक्षक होना चाहिए और दृढ़ता और स्वयं सीखने की क्षमता पर काम करना चाहिए। एसोसिएशन के सीईओ कोरल बीटन की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए एक नया स्कूल वर्तमान में शिक्षाविद थियोडोर लैंडर के साथ मिलकर एक नया स्कूल स्थापित कर रहा है जिसका नाम है अराजकता, जो शिक्षा में सकारात्मक अराजकता पैदा करेगी और इसराइल में सामाजिक और आर्थिक परिधि के युवाओं के लिए अपनी तरह की पहली घटना होगी जो स्वतंत्र और उत्कृष्ट बनने की आकांक्षा रखते हैं। स्कूल 9वीं कक्षा से शैक्षणिक और बोर्डिंग स्थितियों में सेना में सेवा के माध्यम से सेना से छुट्टी मिलने तक और यहां तक कि सेना के बाद शैक्षणिक अध्ययन और रोजगार में भी सहयोग और निरंतरता प्रदान करता है। ये स्कूल आज मौजूद स्कूलों से पूरी तरह से अलग होगा, एक स्कूल की तुलना में एक अकादमी की तरह, जिसमें वैकल्पिक कक्षाएं होंगी और मुख्य विषयों गणित और अंग्रेजी पर जोर दिया जाएगा। उच्च तकनीक कंपनियों और उन्नत के साथ मजबूत संबंध के साथ एक द्विभाषी स्कूल क्षेत्र में उद्योग। कोरल, मुझे लगता है कि सीखने, ज्ञान प्राप्त करने और शिक्षा के बीच अंतर आवश्यक है। एक सीखने की प्रक्रिया जो स्थान और शिक्षक पर आधारित नहीं है, इसे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है और जरूरी नहीं कि कक्षा में किसी शारीरिक शिक्षक के साथ ही किया जाए। एक महत्वपूर्ण शैक्षिकी प्रक्रिया के लिए सकारात्मक मॉडलिंग, आदतों और कौशलों को स्थापित करना, चेतना में बदलाव की आवश्यकता होती है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की आवश्यकता होती है, चाहे वह शिक्षक हो या शारीरिक रूप से मौजूद कोई अन्य परिपक्व व्यक्ति, एक पारस्परिक संबंध जो बनता है। स्कूल को सीखने की प्रक्रियाओं में अधिकतम वैयक्तिकता और दक्षता पैदा करने और परिपक्व व्यक्तियों, एक शिक्षक या साथी या प्रशिक्षुओं के साथ आने वाले किसी अन्य व्यक्ति के साथ सार्थक कार्रवाई के लिए जगह बनाने के बीच दोनों को संयोजित करने की आवश्यकता है। शिक्षक और छात्र दोनों ऐसा नहीं करते हैं तो ते बनना चाहते हैं। शिक्षक, हम पहले से ही समझ गए थे कि छात्र पूरे दिन सिर्फ याद नहीं करना चाहता है। आज तक अधिकांश पारंपरिक शिक्षा छात्र को एक कंटेनर के रूप में देखने पर आधारित है, जो केवल एक तरफा तरीके से यह मानकर प्राप्त करता है कि ज्ञान का आधार शिक्षक है। आज की वास्तविकता पहले से ही विपरीत दर्शाती है। हमें ज्ञान के आधार के रूप में शिक्षक पर निर्भरता को तोड़ना होगा और जितना संभव हो उतने स्वतंत्र शिक्षार्थियों को विकसित करना होगा। सभी स्वतंत्र शिक्षा के लिए एक कोड नाम के रूप में वीडियो सीखना जो शिक्षक पर आधारित नहीं है। किताब पढ़ें, विदेश से रिकॉर्ड किया गया व्याख्यान सुनें, अकेले जानकारी खोजें, खेल कर सीखें आदि। फेलोशिप में सीखना एक प्रतिभाशाली और सरल विचार जो सैकड़ों साल पुराना है कि धार्मिक समुदाय और टोरा शिक्षा इसे एक तरीके से करते हैं। 3 साल की उम्र से ही हैदर और राज्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा में अभूतपूर्व तरीके से सीखने के लिए बहुत कुछ है। सीखने के तरीकों के लिए एक विधि, सीखने के तरीके और समाधान के लिए एक दृष्टिकोण। बुद्धि को अक्सर एक विधि या समस्याओं के दृष्टिकोण के साथ भ्रमित किया जाता है। आदेश और संगठन समस्या समाधानकर्ता की बुद्धिमत्ता की परवाह किए बिना हमारे सामने समस्या को समझने में योगदान करते हैं। सॉफ्टवेयर विकास में सबसे अच्छे डेवलपर वे होते हैं जो अपने सामने आने वाली समस्याओं को एक निश्चित दृष्टिकोण के साथ सामान्य तरीके से देखते हैं। जब उनका कार्य वातावरण मॉडल किया जाता है और जरूरी नहीं कि वे संगठन में सबसे चतुर डेवलपर्स हों। इसीलिए स्कूलों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के प्रति सही दृष्टिकोण सिखाना महत्वपूर्ण है और इसमें निश्चित रूप से क्रम, समस्या को गहराई से समझना, जानकारी को व्यवस्थित करना आदि शामिल है। जॉन मिटन का जंप गणित कार्यक्रम इस विश्वास पर आधारित है कि कोई भी ऐसा कर सकता है, अगर सीखने का सही माहौल और संसाधन मिले तो गणित में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। गणित शिक्षा के लिए यह अभिनव दृष्टिकोण विभिन्न अध्ययनों का विषय रहा है, जिसमें इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने की मांग की गई है। टोरंटो विश्वविद्यालय के डॉक्टर जॉन पोलक द्वारा किए गए एक अध्ययन को छात्रों के गणित प्रदर्शन को बेहतर बनाने में जंप गणित कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया था। अध्ययन में कक्षा 3 से 6 तक के छात्रों को शामिल किया गया और जंप गणित कार्यक्रम में भाग लेने से पहले और बाद में उनकी गणित उपलब्धियों की तुलना की गई। परिणामों से पता चला कि जिन छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया उनके गणित प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। केवल 1 वर्ष में 2.4 ग्रेड की औसत वृद्धि हुई। वेस्टर्न ओंटारियो विश्वविद्यालय और विल्फ्रेड लॉरियर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन ने इसके प्रभाव की जांच की छात्रों के गणितीय ज्ञान और आत्मविश्वास पर जंप गणित कार्यक्रम। अध्ययन में पाया गया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों ने न केवल गणित के प्रदर्शन में सुधार दिखाया बल्कि उनकी गणित क्षमताओं में आत्मविश्वास भी बढ़ा। 2016 के यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन के शोधकर्ताओं ने इसके प्रभाव की जांच की कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की गणित उपलब्धि पर जंप गणित कार्यक्रम। परिणामों ने संकेत दिया कि जंप गणित समूह के छात्रों ने अपने साथियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। नियंत्रण समूह में ये दर्शाता है कि कार्यक्रम छात्रों के गणित कौशल को बेहतर बनाने में प्रभावी है। ये अध्ययन सबूत प्रदान करते हैं कि जंप गणित कार्यक्रम छात्रों के बीच गणित के प्रदर्शन और आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय चरणों में तोड़कर, निरंतर मूल्यांकन और प्रतिक्रिया प्रदान करके और सफलता के माध्यम से आत्मविश्वास का निर्माण करके जंप गणित दृष्टिकोण छात्रों को गणित में एक मजबूत नींव विकसित करने और गणित की चिंता से जुड़ी सामान्य बाधाओं को दूर करने का अधिकार देता है। जंप गणित कार्यक्रम की सफलता इस विचार का समर्थन करती है कि उचित उपकरण और मार्गदर्शन के साथ कोई भी गणित सीख सकता है और इसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। भाग X परिवार मूल्यों और एक व्यक्तिगत उदाहरण प्रदान करता है और घर से खराब शिक्षा को ठीक करना मुश्किल है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आशावाद और सकारात्मक सोच के लिए शिक्षा, महान और महत्वपूर्ण चीजें करने के लिए आपको सपने देखने की जरूरत है और सपनों को साकार करने के लिए आपको आशावादी होने की जरूरत है। मार्टिन सेलिगमैन द्वारा फ्लोरिश को पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। प्रत्येक दिन के अंत में आप पूछेंगे, आज क्या अच्छा था? भाग X, प्रत्येक मनुष्य में एक भाग X होता है जो विभिन्न बहानों से परिवर्तन और प्रगति से लड़ता है। अपने बच्चे को अपने X भाग से लड़ना सिखाएं और लगातार सुधार करना और आगे बढ़ना सिखाएं और परिस्थितियां बदलने पर अपना मन बदल लें। जो लोग विचारों के बारे में बात करते हैं वे लोग आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार जो विचारों और विचारों के बारे में बात करना पसंद करते हैं और दूसरा प्रकार जो लोगों और खरीदारी के बारे में बात करना पसंद करता है। मैं पहले प्रकार का हूँ। मुझे हमेशा उन प्रक्रियाओं और विचारों में अधिक रुचि थी जो मुझे आगे बढ़ाएंगे बजाय ये सुनने के कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या अपने लिए क्या खरीद रहे हैं। यह आपको और आपके बच्चे को शिक्षित करने के लायक है कि वे इस बात की चिंता न करें कि दूसरों के पास क्या है या क्या नहीं है, बल्कि इस बारे में अधिक चिंता करें कि वे वहां कैसे पहुंचे, कैसे अध्ययन करें और किस पर समय व्यतीत करें। उदाहरण के लिए, यह अधिक दिलचस्प है कि एलोन मस्क आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे, बजाय इसके कि उन्होंने कल कितना पैसा कमाया। वैसे एलोन मस्क की जिन चीजों में आपकी रुचि होनी चाहिए उनमें से एक ये है कि उन्होंने बचपन से ही सैकड़ों सैद्धांतिक किताबें पढ़ी हैं। बच्चा, और यह सफलता के मुख्य कारकों में से एक है। दूसरा कारक शायद वो कमी है जो आ गई है, उसने इसे एक अच्छी जगह ले ली है। स्वयं सीखना और स्व अध्ययन। अधिकांश क्षेत्र जिनमें हम पहुंचते हैं उच्च स्तर जैसे कि रचना, फुटबॉल, सॉफ्टवेयर, गणित, पेंटिंग, फोटोग्राफी, बढ़ईगिरी इत्यादि, हम प्रगति की इच्छा और जिज्ञासा से स्वयं सीखते हैं। एक ऐसी अवस्था होती है जहां अगर बच्चा खुद नहीं सीखता है तो वह उसे पास नहीं कर पाएगा। आमतौर पर यह इच्छा उन बच्चों में होती है जो किसी तरह के अभाव से आते हैं, इसलिए बच्चों को नई चीजों से परिचित कराना जरूरी है और उन्हें प्रारंभिक दिशा में निर्देशित करें और बाकी उन पर छोड़ दें। क्या विश्लेषण नैतिकता लाता है? स्वतंत्र विचार के अनुसार हाँ, क्योंकि यह तर्क विकसित करता है। तर्क बचपन में नैतिकता का निर्माण करता है, क्योंकि विवेक वास्तव में दूसरे को नुकसान न पहुंचाने की इच्छा है। इस प्रकार बच्चे छोटी उम्र से ही अपने विवेक और नैतिकता का निर्माण करते हैं। एनालिटिक्स वास्तव में बच्चे को मात्रा निर्धारित करने में मदद करता है, लेकिन न केवल संख्याओं को बल्कि अमूर्त विचारों को भी। पहला कदम उठाने के लिए कार्रवाई के साथ संपर्क के लिए प्रयास करने के लिए शिक्षित करना महत्वपूर्ण है, न कि योजना और योजना बनाना। ये सोचने के लिए शिक्षा कि यदि हम कार्य करते हैं तो वास्तविकता को बदलना संभव है। एक आदमी हफ्तों तक हर दिन लॉटरी जीतने के लिए कहता रहा, नहीं तो वो दिवालिया हो जाएगा। वो हर दिन आकर लॉटरी जीतने के लिए कहता था। आखिरी दिन उसने सचमुच गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे लॉटरी जीतनी है, आप मुझे जीतने क्यों नहीं देते? तभी उसने एक आवाज सुनी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पहले एक टिकट खरीदना होगा। ईर्ष्या से लड़ने के लिए अपनी तुलना केवल अपने अतीत से करें, दूसरों से नहीं जो हमेशा अधिक स्मार्ट, सुंदर, मजेदार या अमीर होंगे। तुम लालच नहीं करोगे। सामाजिक नेटवर्क जो शिक्षा देते हैं उसके बिल्कुल विपरीत शिक्षा देना महत्वपूर्ण है, अर्थात लगातार दूसरों को देखना, इसके विपरीत स्वयं को देखें और आप सुधार करेंगे। कार्य हजारों शब्दों के बराबर हैं। जीवन के हर पहलू में एक व्यक्तिगत उदाहरण जहां आप कार्य करने का तरीका सिखाना चाहते हैं, जैसे आलोचना स्वीकार करने की इच्छा, विनम्रता एक व्यक्तिगत उदाहरण के माध्यम से, न्यूनतमवाद एक व्यक्तिगत उदाहरण के माध्यम से, 1000 चीजें मत खरीदो, केवल वही जो आवश्यक है, पारिवारिक पढ़ना, जब हर कोई एक ही समय में पढ़ता है तो पढ़ना सिखाना आसान होता है, गैर काल्पनिक किताबें और आत्मकथाएं बेहतर हैं। कार्य और शब्द समान हैं, व्यक्तिगत उदाहरण और स्पष्टीकरण से ये दिखाने के लिए कि शब्द में शक्ति है और हमें वही करना चाहिए जो हम कहते हैं और वही कहना चाहिए जो हम करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे घर में अगर मैं या मेरी पत्नी बच्चों से कुछ वादा करते हैं तो ये हमेशा रहेगा अमल किया जाए। शब्द तो शब्द होता है, लेकिन हम बच्चों से भी यही उम्मीद करते हैं। शब्दों में नहीं, कार्यों में एक उदाहरण। ईमानदार प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना सीखें। लोगों की समस्याओं में से एक ये है कि वे आलोचना स्वीकार नहीं करते हैं और इसे व्यक्तिगत चोट के रूप में देखते हैं। मैं वास्तव में लोगों और दोस्तों से कई मुद्दों पर उनकी राय पूछना पसंद करता हूं विषय, और मुझे अक्सर अपनी आलोचना का डर सताता है। आखिरकार इसीलिए मैं आलोचना प्राप्त करने के लिए कहता हूं, यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं सुधार कर सकता हूं, विशेषकर व्यवसाय में। मैंने भारत की यात्रा पर +500 नाम के बारे में सोचा जब मेरे साथी और दोस्त गैल मेरे साथ थे। बेशक मैंने सीढ़ियों पर उनसे पूछा कि आप इस नाम के बारे में क्या सोचते हैं। उसने मुझे महान नाम बताया। मैं उसे जानता हूं और अगर उसे लगता कि यह एक बुरा नाम है तो वो बस यही कहता, बेकार का नाम। मैंने वो नाम भारत के एक कैफे में लिख दिया। अगर कोई आपके विचार के बारे में कुछ बुरा कहता है, यह आप पर नहीं है। यदि आप उसमें प्रवेश करते हैं तो आप उससे वास्तविक आलोचना नहीं सुनेंगे और यह आपके लिए बहुत बुरा है। किसी विचार की खराब समीक्षा आपके लिए बहुत अच्छी है, इसलिए यदि आप इसके बारे में स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और देखते हैं कि वो सही है तो आप बहुत सारे अनावश्यक काम बचा लेंगे। आपके विचारों और विचारों को आपके आसपास के लोगों से ईमानदार आलोचना की आवश्यकता है, अन्यथा आप सद्दाम हुसैन या अन्य लोगों की तरह होंगे जो अपने आसपास की वास्तविकता को नहीं समझते हैं। अपने बच्चे को इस तरह से शिक्षित करें कि वह ईमानदार आलोचना मांगे और ईमानदार आलोचना दे। विनम्रता सुंदरता लाती है। विनम्रता के लिए शिक्षा, जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो राज्य स्तर पर भी बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं। छोटी छोटी चीजें अंततः बड़ी चीजों को प्रभावित करती हैं। सबसे विनम्र देश सबसे स्वच्छ भी होते हैं, जापान, नॉर्डिक्स और अन्य। विनम्रता महान उत्पाद और एक सुंदर देश लाती है। शिष्टाचार को अक्सर साधारण सामाजिक शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव सुगमता और अच्छे शिष्टाचार से कहीं आगे तक जाता है। वास्तव में अच्छे उत्पादों और एक सुंदर देश के विकास के पीछे विनम्रता एक प्रेरक शक्ति हो सकती है। इसके कुछ कारण यहाँ दिए गए हैं। जोड़, सहयोग और नवाचार। शिष्टाचार एक सकारात्मक और सम्मानजनक वातावरण को बढ़ावा देता है, लोगों को एक साथ काम करने और विचारों को स्वतंत्र रूप से साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सहयोग की इस भावना के परिणामस्वरूप नवीन समाधान और गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं, जो आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला का जवाब देते हैं। जोड़, नागरिक संतुष्टि। विनम्र और विनम्र कर्मचारी बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करते हैं, अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते हैं और उनका अनुमान लगाते हैं। इससे ग्राहकों की संतुष्टि, वफादारी बढ़ती है और अंततः उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ती है। जोड़, प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करना। एक विनम्र और सम्मानजनक व्यावसायिक वातावरण दुनिया भर से प्रतिभाशाली पेशेवरों और निवेशकों को आकर्षित करता है। प्रतिभा और निवेश का ये प्रवाह उन्नत उत्पादों, सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देता है और अंततः देश की समग्र सुंदरता और समृद्धि में सुधार करता है। जोड़, सामाजिक सद्भाव। विनम्रता एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में मदद करती है, जहां लोगों को प्रत्येक का सम्मान और समर्थन करने की अधिक संभावना होती है। अन्य, ये सामाजिक सामंजस्य समुदायों के लिए अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने और अपनी प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करना आसान बनाता है। जोड़, पर्यावरण चेतना। एक विनम्र समाज न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी सम्मान को महत्व देता है। ये सामूहिक चेतना पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और टिकाऊ प्रथाओं के विकास को प्रोत्साहित करती है, जो देश की सुंदरता और सामान्य भलाई में योगदान करती है। जोड़, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। एक विनम्र और स्वागत करने वाली संस्कृति पर्यटकों के लिए आकर्षक है, जिनकी यात्रा करने की अधिक संभावना है और एक ऐसे देश की सिफारिश करें जहां वे सम्मानित और सराहना महसूस करें। ये पर्यटन उद्योग को मजबूत करता है, जो बदले में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण का समर्थन करता है और देश की सुंदरता को बढ़ाता है। जोड़, संघर्ष समाधान। प्रभावी संचार के लिए विनम्रता एक आवश्यक तत्व है, जो अधिक सौहार्दपूर्ण तरीके से संघर्षों को हल करने में मदद करता है। इससे संसाधनों का आवंटन और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्थानों का प्रभावी विकास और रखरखाव होता है। सच्ची स्वतंत्रता स्वतंत्रता है। जो स्वतंत्रता प्रतीत होती है वह अपने समय और अपने निर्णयों पर बच्चे का स्वामित्व है। यही है आज़ादी से अलग। ये बच्चे की दुनिया पर अधिक स्वायत्तता है, उस पर भरोसा करना, क्योंकि जब उन पर भरोसा किया जाता है तो उन्हें बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। बच्चों को रोजगार देना। शब्द जनजातियों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि बच्चों का अपना समय और एजेंडा है। अधिक सही परिभाषा स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता देना है, न कि नियंत्रण करना, क्योंकि किसी को भी नियंत्रित होना पसंद नहीं है। मैं इसी तरह बड़ा हुआ हूँ। मैं अपने समय पर नियंत्रण रखता हूँ और मैं जो चाहता हूँ उसमें रुचि रखता हूँ और व्यस्त रहता हूँ। एक समय था जब मैं 4 साल का था और मैं किंडरगार्टन नहीं जाना चाहता था। मेरी माँ सहमत हो गई और मैं कई महीनों तक किंडरगार्टन नहीं गया। एक ऐसा क्षेत्र ढूंढना जहां आप कुछ महान और नेक हासिल करना चाहते हों, ये दर्शाता है कि यह माता पिता या बच्चों के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। बच्चों के लिए स्वतंत्रता अंततः टीम वर्क की ओर ले जाती है, क्योंकि एक निश्चित स्तर पर उन्हें एहसास होता है कि कुछ बड़ा करने और सफल होने के लिए उन्हें एक टीम में काम करने की जरूरत है। इसी तरह इंसानों का भी विकास हुआ। होमोपियंस की ताकत सहयोग है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण गुण है। आज घरों के बीच जो परिभाषाएं रखी गई हैं उनके बावजूद बच्चों में विकास होता है, एक ऐसी घटना जो इसराइल में मौजूद नहीं थी लेकिन तेजी से विकसित हो रही है। मैं एक ऐसे घर में बड़ा हुआ हूं जहां हम बचपन से ही स्वतंत्रता सिखाते थे। माता पिता काम पर थे। मेरे पिता याकोव टेक्नियन के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कई वर्षों तक राफेल में काम करते थे और रात को 10 बजे के बाद घर लौटते थे, और मेरी माँ नाओमी बच्चे की सेवा में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी, वापस आती थी। दोपहर हमने अपने लिए खाना तैयार किया, कक्षाओं तक अकेले बस से यात्रा की और मूलतः वही किया जो हम चाहते थे। आप शिकायत या शिकायत न करें, क्योंकि सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है और आप इसे माता पिता के लिए मुश्किल नहीं बनाना चाहते। चॉकलेट बार से लेकर टेलीविजन तक हर चीज पर घर में हर दिन झगड़े होते थे। इसने मुझे भोजन, धन, शत्रुओं के बारे में स्वयं प्रबंधन करना सिखाया। इसी तरह हम कभी कभी भाइयों के बीच होते थे। हमें कभी यह बताना नहीं पड़ा कि हम कहाँ थे और कब वापस आ रहे थे। पूरी आज़ादी और समर्थन था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे याद है कि मेरे पिता हमेशा कहा करते थे, गोनेन परिवार किसी भी चीज़ से नहीं डरता। ये बात अब भी मुझे याद आती है और मैं इसे अपने बच्चों से भी हर समय दोहराता हूँ। गोनेन परिवार किसी भी चीज़ से नहीं डरता। स्वतंत्रता एक बच्चे को अकेले बाहर जाने और पड़ोस में दोस्तों के साथ खेलने दे रहा है। अमेरिका में ऐसा नहीं है और इससे बच्चों के विकास पर असर पड़ता है। यह इसराइल में महान लाभों में से एक है। अगर किसी बच्चे को दोस्तों के पास ले जाना हो या यह अकेले ही हो तो ये बहुत बड़ा अंतर है। मेरे बच्चों पर नज़र रखें। जब हम उनकी इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते हैं तो वे हमें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते हैं। जो आज़ादी देते हैं उन्हें आज़ादी मिलती है। एक बच्चे की स्वतंत्रता को उसके क्रोध और हताशा से अकेले निपटने में भी व्यक्त किया जाना चाहिए। इसका अभ्यास किया जा सकता है और यह सिफारिश की जाती है कि बच्चे को उनसे निपटने में पूरी स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें प्रेरणा की ओर ले जाया जाए न कि निराशा की ओर। कठिनाइयां एक प्रशिक्षक की तरह होती हैं। कठिनाइयों और अभाव से बाहर निकलना। जब बच्चे समझते हैं कि कठिनाई और अभाव बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है, न कि दीवारों से जिन्हें आप पार कर सकते हैं, अच्छी चीजें होती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें अकेले ही इनसे निपटने दिया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि उनमें आशा बनी रहे। इस विषय पर विज्ञान क्या कहता है, इसके बारे में एक उत्कृष्ट लेख। कठिनाई घर पर छोटे कार्यों को करने की अनिच्छा के रूप में भी प्रकट हो सकती है, लेकिन छोटे कार्यों से शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। हमारे घर में सबसे अच्छा काम ये किया गया कि प्रत्येक बच्चे को भोजन में एक भूमिका दी जाए। एक बच्चा मेज से हटकर रसोई साफ करता है, एक बर्तन धोता है और तीसरा छोटा बच्चा मेज से हट जाता है। हर सप्ताह भूमिकाएं बदलती रहती हैं। पहले तो वे शिकायत करेंगे, लेकिन एक या दो सप्ताह के बाद यह उनके लिए पूरी तरह से स्वाभाविक है। हम कार्यों को अच्छे शब्दों में समाप्त नहीं करते हैं और इधर उधर नहीं जाते हैं, बल्कि सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्लेट को सिंक में ले जाएं। जिन चीज़ों ने मुझे कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद की उनमें से एक यह है कि मैंने हमेशा तात्कालिकता से परे देखा समस्या, मैंने क्षितिज देखा। इसके अलावा मेरे माता पिता ने हमेशा चुनौतियों और समस्याओं के आकार को कम करके आंका, कुछ इस तरह कि मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन आप इसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बच्चों की मदद करना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल तभी जब उन्हें वास्तव में मदद की जरूरत हो, अन्यथा बेहतर होगा कि उन्हें स्वयं इसे आजमाने दें। योकोटन जनजाति में जब बच्चे चलना सीखते हैं तो माँ बच्चे के पीछे खड़ी होती हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है वो अपने आप चल रहा है। पश्चिमी माता पिता की तुलना में जो बच्चे के सामने खड़े होते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं, आप इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। आप असफलताओं के बिना सफल नहीं हो सकते। विफलताओं के बारे में बताएं और वे क्यों हुई। असफल होना अच्छी बात है, लेकिन ये समझना कि गलती कहाँ है और उसे दोहराना नहीं। घर पर काम पूरा करना स्वतंत्रता और कृतज्ञता सिखाता है। खुलासा करना, अन्यथा वे खुलासा करना नहीं जानते। बच्चे अधिकांश ज्ञान और क्षमताएं अपने आप हासिल कर लेंगे। खूबसूरती तो इस प्रक्रिया को शुरू करने में है। बच्चे का चरित्र अंततः उसे एक मामले पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे मामले को किनारे करने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण के लिए, एक बच्चे के लिए एक बैंक खाता खोलें और उसे बताएं कि पैसे कैसे जमा करें और स्टॉक कैसे खरीदें। मुझे याद है कि मेरे पिता ने पहली बार मेरे लिए एक कमोडोर खरीदा था ताकि मैं देख सकूं कि नया पर्सनल कंप्यूटर कैसे काम करता है। समस्या को हल करने के लिए लक्षण को छोड़ दें, लक्षण को नहीं, यह मूल रूप से स्वतंत्र विचार का सार है। लोगों के खरीदारी करने के तरीके को बदलने वाली कंपनी बनाने वाले जेफ बेगोस ने यह शक्तिशाली वाक्य कहा, आप लक्षण को ठीक नहीं करते हैं, आप उस समस्या को ठीक करते हैं जो लक्षण पैदा करती है। और यही पिछले 20 वर्षों में अमेज़न की सफलता का रहस्य है। 12:33 इस YouTube पर। क्या महत्वपूर्ण है कि माता पिता स्वाभाविक रूप से बच्चे स्वतंत्र होना चाहते हैं। घर, योजनाएं, व्यवसाय, स्वास्थ्य, हमारी इच्छाएं समय के साथ गड़बड़ या क्षय हो जाती हैं, इसलिए हमें उन्हें व्यवस्थित करने में लगातार ऊर्जा लगानी पड़ती है। ऑर्डर देने और गंदगी को स्वीकार न करने की शिक्षा छोटी उम्र से ही महत्वपूर्ण है। दयालुता अगली पीढ़ी को दी जाती है, इसे एक व्यक्तिगत उदाहरण के साथ दिखाना महत्वपूर्ण है। बच्चे जो देखते हैं उसकी नकल करते हैं और जो उन्होंने देखा है उसके साथ बड़े होंगे, इस तरह प्रकृति ने हमें बनाया है। पढ़ने या गणित के लिए शिक्षा चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है, आप पिछले ज्ञान को अतिरिक्त ज्ञान में निवेश करते हैं और रिटर्न अकल्पनीय है। कठिनाई, कमी और उनसे निपटना चरित्र निर्माण के लिए अच्छा है। मजबूत और सुधार करने की इच्छा। किंडरगार्टन में किंडरगार्टन शिक्षा बच्चों के सीखने और विकास के लिए एक आवश्यक आधार है। ये प्रारंभिक शैक्षिकी वातावरण न केवल परिवारों को उनके शैक्षिकी प्रयासों को बढ़ाकर समर्थन देते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वे प्रकृति के प्रति प्रेम और हमारे आसपास की दुनिया के लिए सराहना को बढ़ावा दें। चरित्र निर्माण गतिविधियों के माध्यम से बच्चे आत्म अनुशासन के महत्व के साथ साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों के बीच अंतर सीखते हैं। इसके अलावा किंडरगार्टन शिक्षा आवश्यक सामाजिक कौशल सिखाने के साथ साथ देशभक्ति और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना पैदा करती है, जैसे विनम्रता, सहानुभूति और एक टीम के भीतर प्रभावी सहयोग। अच्छी पोषण संबंधी आदतों को बढ़ावा देकर युवा शिक्षार्थियों को स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो उनके समग्र कल्याण में योगदान देता है। किंडरगार्टन में दैनिक पढ़ने की गतिविधियां बच्चों को साक्षरता कौशल विकसित करने और किताबों के प्रति प्रेम बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके अलावा ये शैक्षिकी ढांचे अतिसूक्ष्मवाद और संतुष्टि के मूल्य पर जोर देते हैं और बच्चों को सादगी की सराहना करना और कम में खुशी ढूंढना सिखाते हैं। अंत में किंडरगार्टन बच्चों को संख्याएं, भाग और सरल अंकगणित सीखने का अवसर प्रदान करते हैं और उनके विश्लेषणात्मक कौशल और गणित में भविष्य की सफलता की नींव रखते हैं। लोग दोस्तों के साथ रहना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चों को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वह है बच्चों के साथ खेलना। ये बहुत सरल है। ये सैकड़ों हजारों वर्षों के विकास के कारण है, जब वे जनजातियों में रहते थे और वयस्कों के रूप में उन्हें एक दूसरे की देखभाल करनी होती थी तो इसका प्रशिक्षण बच्चों में होता था। प्रकृति ने हमारे लिए एक ऐसा तंत्र बनाया है जो दोस्तों के साथ होने पर हमें पुरस्कृत करता है। यहां तक कि वयस्कों के लिए भी करीबी दोस्तों की संगति में रहना सबसे स्वाभाविक है। आधुनिक समाज में आप एक मित्र को सप्ताह में अधिकतम 4 घंटे के लिए देखते हैं। हमारे अतीत में हम जनजातियों को जनजाति के सदस्यों के साथ प्रतिदिन 8 घंटे और इससे भी अधिक समय के रूप में देखते हैं। यह एक कारण है कि आधुनिकीकरण से अछूती जनजातियां आधुनिक मनुष्य की तुलना में अधिक खुश हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि जनजातीय समाज के लोगों में अपेक्षाकृत उच्च स्तर की खुशी और खुशहाली हो सकती है। उदाहरण के लिए तंजानिया में हज्जा लोगों और बोलीविया में सिमन लोगों के अध्ययन से पता चला है कि वे उच्च स्तर की जीवन संतुष्टि और कल्याण का अनुभव करते हैं। मजबूत सामाजिक संबंध, सार्थक कार्य और प्रकृति से गहरा संबंध जैसे कारकों को उनकी खुशी में योगदान देने वाला माना जाता है। यह एक ऐसा बिंदु है जिसे दीवारों से भरे आधुनिक निर्माण के साथ साथ नए पड़ोस में भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। शिक्षा प्रणाली भी इसे पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती है। चीजों में से एक ये है कि बड़े बच्चों को छोटे बच्चों को पढ़ाने दिया जाए। ये पूरी तरह से संभव है लेकिन स्कूलों में नहीं किया जाता है। एक विश्वविद्यालय पागलपन से समाज को बढ़ावा दे रहा है, वो स्थान जो इंजीनियरों और अर्थव्यवस्था के नेताओं को प्रशिक्षित करता है। सभी संकायों में सॉफ्टवेयर अध्ययन भी साहित्य, सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालयों को सभी को अपनी पढ़ाई में ऑनलाइन शामिल होने की अनुमति देने के लिए मजबूर करते हैं। प्रत्येक संकाय के पास गणित में एक पाठ्यक्रम होगा। अध्ययन के हिस्से के रूप में उद्योग में व्यवहारिक एकीकरण, विश्वविद्यालयों से नई कंपनियों को एकीकृत करने के विकल्प प्रदान करना, निर्णय लेने और राय बदलने में पाठ्यक्रम, मुझे नहीं पता कि हिब्रू में कैसे लिखना है और वो मेरी राय में दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षिका है, उसने मेरे बेटे के स्कूल में सिलिकॉन वैली में पढ़ाया था। मैं और मेरी पत्नी उनका व्याख्यान देखने गए। 1 मिनट के बाद मुझे समझ में आया कि वो सिलिकॉन वैली में एक प्रसिद्ध शिक्षिका क्यों है, जहां हजारों छात्र उनके प्रशंसक हैं। वो अत्यंत आत्मविश्वास के साथ बुद्धिमान दृष्टि से उत्तर देती है और आप देखते हैं कि उसने लगभग सब कुछ देखा है। कुल मिलाकर उसने अपने छात्रों पर भरोसा किया और इससे उन्हें सीखने से न डरने की मानसिक शक्ति मिलती है। उसके व्याख्यान के दौरान मैंने पहले ही उसकी किताब ऑडिबल पर खरीद ली थी और मेरी पत्नी ने मुद्रित किताब का ऑर्डर दे दिया था। व्याख्यान में एस्थ ने लिखा कि बच्चों को स्वतंत्रता, विश्वास, दया, सहयोग और पारस्परिक सम्मान की शिक्षा देना सबसे महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का अर्थ है बच्चों पर भरोसा करना, दिखावा नहीं बल्कि वास्तव में, जैसे कि उन्हें 6 साल की उम्र में अपना होमवर्क करने देना, स्कूल के लिए अकेले उठना और उनके दिन की जिम्मेदारी लेना। शायद दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक की किताब पढ़ने की सलाह दी जाती है, एस्थे वोट्स की। एक व्याख्यान में माताओं ने पूछा, अगर मेरी बेटी बिना खाना खाए फटे और खुले जूतों के साथ स्कूल जाना चाहती है तो क्या करें? एस्थे मुस्कुराई और उत्तर दिया, क्या यह उसे परेशान करता है या उसे खतरे में डालता है? माँ ने बिना ज्यादा समझाए ही समझ लिया कि लड़की को ऐसे ही जाने दिया जाए, यह उसकी समस्या है। और यह वास्तव में स्वतंत्रता के लिए शिक्षा है, जो बच्चे को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने देती है जब तक कि इससे उसके जीवन को खतरा ना हो। जो संभव है उसे मापना, हासिल करने के लिए जो संभव है उसे मापना एक महत्वपूर्ण रूपरेखा है। पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्रों के मॉडल गूगल और अन्य कंपनियों के पहले निवेशकों में से जॉन डोर द्वारा जो महत्वपूर्ण है उसे मापें है। पुस्तक दर्शाती है कि कैसे मापने और दोबारा फीड करने से OKR नामक विधि से लगातार सुधार संभव है। OKR का मतलब मुख्य उद्देश्य और परिणाम है, और यह इंजीनियरों की एक विधि है जो शिक्षा प्रणाली में काफी सुधार करेगी जब सब कुछ मापने योग्य और स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्यों के साथ होगा। यह एक लक्ष्य निर्धारण और प्रदर्शन प्रबंधन ढांचा है जो संगठनों और व्यक्तियों को स्पष्ट, मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है। OKR में दो घटक होते हैं, लक्ष्य, एक स्पष्ट रूप से परिभाषित गुणात्मक लक्ष्य जो महत्वाकांक्षी और प्रेरणादायक है। मुख्य परिणाम, मात्रात्मक, मापने योग्य परिणामों का एक सेट जो इंगित करता है कि लक्ष्य हासिल किया गया है या नहीं। उदाहरण, मान लीजिए कि कोई कंपनी अपने ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करना चाहती है। इस लक्ष्य के लिए OKR का एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, लक्ष्य, ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी में सुधार। मुख्य परिणाम, 3 महीने में औसत ग्राहक सहायता प्रतिक्रिया समय को 24 घंटे से घटाकर 8 घंटे करें। ग्राहक प्रतिक्रिया सर्वेक्षणों में 90% संतुष्टि दर प्राप्त करें। अगले 6 महीने। लक्ष्य गुणात्मक और प्रेरणादायक है, जबकि मुख्य परिणाम मात्रात्मक हैं और प्रगति को मापने के लिए विशिष्ट लक्ष्य प्रदान करते हैं। बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाता था, एक और अत्यधिक अनुशंसित पुस्तक हंट गैदर पेरेंट दिखाती है कि आदिवासी समाजों में बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाता था। वहां बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें हैं जो आज की सभ्यता से गायब हो गई हैं। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि आधुनिकीकरण के साथ उचित शिक्षा के कई समाधान हमसे गायब हो गए। जिन चीजों ने मेरी धारणा बदल दी उनमें से एक ये है कि अतीत की माताएं पहले वर्षों में अपने बच्चे के करीब थीं, उसके साथ सोती थीं, उसका पालन पोषण करती थीं और उसे बिल्कुल भी रोने नहीं देती थीं। ये पूरी तरह से पश्चिमी सहज ज्ञान युक्त दृष्टिकोण को बदल देता है जो कहता है एक बच्चे को दूसरे कमरे में बड़ा करें, उसे रोने दें और उसे छोटी उम्र से ही अकेले रहने, अकेले सोने की शिक्षा दें। आदिवासी समाज में वह पहले वर्षों में पूरे दिन माँ के करीब रहता है, जब चाहे तब स्तनपान कराता है। हंटिंग, गैदरिंग, पेरेंटिंग, डॉक्टर माइकलिन डुक्लेफ की एक किताब है जो 2021 में प्रकाशित हुई है। ये किताब मानव विज्ञान का एक संयोजन है, इतिहास और पालन पोषण सलाह, आधुनिक पालन पोषण के तरीकों के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। डॉक्टर डुक्लेफ शिकारी संग्रहकर्ता समाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक पालन पोषण के तरीकों की जांच करते हैं और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और सबक साझा करते हैं जिन्हें आज की दुनिया में पालन पोषण पर लागू किया जा सकता है। पुस्तक में डॉक्टर डुक्लेफ अपनी छोटी बेटी से मिलने और उससे सीखने के लिए उसके साथ यात्रा करने के अपने अनुभवों के बारे में बताती हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्वदेशी परिवार, जिनमें मैक्सिको में युकाटन माया, आर्कटिक कनाडा में इनुइट और तंजानिया में हज्जा शामिल हैं। वो उनके पालन पोषण के तरीकों की जाँच करती है और सामान्य सिद्धांतों की पहचान करती है जो सहयोगात्मक, लचीले और खुशहाल बच्चों के पालन पोषण में योगदान करते हैं। हंट गैदर पेरेंट की कुछ महत्वपूर्ण चीजों में शामिल हैं, टीम वर्क का महत्व, बच्चों को परिवार और सामुदायिक कार्यों में सक्रिय योगदानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोग और अपनेपन की भावना, मॉडलिंग व्यवहार, बच्चे अपने माता पिता और अन्य समुदाय के सदस्यों को देखकर और उनका अनुकरण करके सबसे अच्छा सीखते हैं, स्वायत्तता को बढ़ावा देना, मार्गदर्शन और समर्थन के साथ बच्चों को अपनी गति से अन्वेषण करने और सीखने की अनुमति देना, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास बनाने में मदद करता है, भावनात्मक समर्थन, एक पोषण संबंधी वातावरण प्रदान करना जो बच्चों की भावनाओं को मान्य करता है जबकि उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सिखाने से उनकी भावनात्मक भलाई में योगदान होता है। कुल मिलाकर हंट गैदर पेरेंट पारंपरिक पश्चिमी पालन पोषण मानदंडों को चुनौती देता है और एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो सहयोग पर जोर देता है, अच्छी तरह से समायोजित बच्चों के पालन पोषण के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामुदायिक भागीदारी। दुनिया में सफल शैक्षिकी प्रणालियां लुसी क्रेहन द्वारा लिखित दुनिया में शिक्षा शक्तियों की सफलता के पीछे क्लेवलैंड सीक्रेट्स की मदद करने वाली एक और किताब। ये वास्तव में सफलता की नकल करने और सुधार करने के लिए स्वतंत्र सोच में एक उपकरण के रूप में मदद कर सकता है, ये देखने के लिए कि दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियों में क्या काम करता है और लागू करने के लिए चीन और कनाडा में। इन सफल प्रणालियों के पीछे के प्रमुख सिद्धांतों को उजागर करने के लिए क्रेहन अपने व्यक्तिगत अनुभवों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के साथ साक्षात्कार और शैक्षिकी अनुसंधान की व्यापक समीक्षा को जोड़ती है। जोड़ समानता, सभी 5 देश अपनी शिक्षा प्रणालियों में समानता को प्राथमिकता देते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी छात्रों की पहुंच हो उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये संघर्षरत छात्रों के लिए धन के आवंटन, व्यापक कल्याण सहायता और हस्तक्षेप के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जोड़ गुणवत्ता वाले शिक्षक, ये देश शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में भारी निवेश करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षण एक सम्मानित पेशा है, शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करता है और उन्हें पर्याप्त संसाधन और सहायता प्रदान करता है। जोड़ अनुकूलित पाठ्यक्रम, इन देशों में पाठ्यक्रम सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, साक्ष्य आधारित और मुख्य कौशल विकसित करने पर केंद्रित होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। छात्रों को गंभीर रूप से सोचने, समस्याओं को हल करने और सहयोगात्मक शिक्षा में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जोड़ उच्च अपेक्षाएं और जिम्मेदारी। इन देशों में शिक्षा प्रणालियां छात्रों और शिक्षकों दोनों पर उच्च उम्मीदें रखती हैं। वे प्रगति को ट्रैक करने और छात्रों के परिणामों के लिए स्कूलों और शिक्षकों को जवाबदेह बनाने के लिए मानकीकृत मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। जोड़ स्वायत्तता और केंद्रीकरण के बीच संतुलन। स्कूलों और शिक्षकों को उनके शिक्षण तरीकों और पाठ्यक्रम में स्वायत्तता देने के बीच एक संतुलन है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकरण की एक निश्चित डिग्री बनाए रखी जाती है, पूरे सिस्टम में स्थिरता और गुणवत्ता। फ्रेम्स एवरीवेयर, एक और किताब जो ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा प्रणाली वास्तव में क्या करती है, बच्चों को उनके आसपास की वास्तविकता के मानसिक मॉडल बनाने में मदद करती है, यानी फ्रेमिंग। स्वतंत्र विचार, मूल रूप से मानसिक मॉडल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करना है। मैंने ऐसा तब किया जब मैंने +500 की स्थापना की, जब मुझे एहसास हुआ कि अल्पकालिक व्यापार यादृच्छिक है। यह मूल रूप से अल्पकालिक व्यापार के बारे में मेरे दिमाग में निर्मित एक सामान्य गणितीय मॉडल लेना है। इस मॉडल को यहाँ स्वतंत्र विचार में स्थानांतरित करने का एक और उदाहरण, जब आप देखते हैं कि प्रकृति में जानवर मोटे नहीं होते हैं, भले ही उनके पास कभी कभी भारी मात्रा में भोजन होता है। ढांचे को स्थानांतरित करने में मानसिक ढांचा, अंतहीन भोजन, मेड नहीं, एक नियंत्रण तंत्र है। मनुष्य ये समझें कि समस्या मनुष्य के मोटापे की मात्रा नहीं है। ढांचे को मनुष्यों में स्थानांतरित किया जा सकता है, क्योंकि हम भी एक प्रकार के जानवर हैं। पुस्तक फ्रेम्स, मानव अनुभूति की शक्ति और मानसिक मॉडल या फ्रेम बनाने की उसकी अद्वितीय क्षमता का पता लगाती है। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि फ्रेमिंग निर्णय लेने, समस्या समाधान और नवाचार को कैसे प्रभावित करती है। ये भी दर्शाता है कि फ्रेमवर्क का सही उपयोग हमें जटिल मुद्दों से निपटने और तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल ढलने में कैसे मदद कर सकता है। फ्रेमिंग की शक्ति को समझने और उसका उपयोग करके व्यक्ति और कंपनियां चुनौतियों का सामना करने और बेहतर भविष्य को आकार देने की अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। फ्रेमिंग एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने आसपास की दुनिया में जानकारी को समझने, व्याख्या करने और व्यवस्थित करने के लिए मानसिक मॉडल या फ्रेम बनाते हैं। ये ढांचे हमारे दृष्टिकोण को आकार देते हैं, हमारे निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं और हमारी समस्या समाधान और संचार का मार्गदर्शन करते हैं। फ्रेमिंग हमें जटिल स्थितियों को समझने, मुद्दों को प्राथमिकता देने और हर दिन हमारे सामने आने वाली बड़ी मात्रा में जानकारी को नेविगेट करने में मदद करती है। फ्रेमिंग सचेत और अचेतन दोनों हो सकती है और यह अक्सर हमारे व्यक्तिगत अनुभवों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को दर्शाती है। किसी समस्या या स्थिति को जिस तरह से तैयार किया गया है, वह उसके बारे में हमारी धारणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। साथ ही हम जिन समाधानों पर विचार करते हैं और जो कदम उठाते हैं, उन्हें भी प्रभावित कर सकता है। फ्रेम कैसे काम करता है, इसके बारे में जागरूक होने और हमारे मानसिक फ्रेम को समायोजित करने से हम चुनौतियों का सामना करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर निर्णय लेने की अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। अमूर्त सोच, समस्या समाधान, रचनात्मकता और अनुकूलनशीलता सहित कई कारणों से अमूर्त सोच महत्वपूर्ण है। ये लोगों को जटिल अवधारणाओं को समझने, असंबंधित प्रतीत होने वाले विचारों के बीच संबंध बनाने और कई दृष्टिकोणों से स्थितियों को देखने की अनुमति देता है। बच्चों को अमूर्त सोच सिखाने को विभिन्न तरीकों से सुगम बनाया जा सकता है, जैसे विकास मानसिकता विकसित करना, सादृश्यों का उपयोग करना, खुली बातचीत में भाग लेना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और प्रतिबिंब के अवसर प्रदान करना। अमूर्त सोच के लिए समस्या समाधान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों को अनुमति देता है जटिल समस्याओं को सरल घटकों में तोड़ना और विभिन्न तत्वों के बीच संबंध ढूंढना। ये संज्ञानात्मक क्षमता बच्चों को किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने, विभिन्न समाधानों पर विचार करने और समाधान रणनीतियों को विकसित करने में मदद करती है। अमूर्त सोच बच्चों को नई संभावनाओं की कल्पना करने, मूल विचार उत्पन्न करने और अपरंपरागत समाधान तलाशने की अनुमति देकर रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। ये कौशल कलात्मक अभिव्यक्ति, नवाचार और आविष्कार में सहायता करता है। जैसे जैसे बच्चे अमूर्त सोच कौशल विकसित करते हैं, वे नई स्थितियों और चुनौतियों के अनुकूल ढलने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाते हैं। तेजी से बदलती दुनिया में ये संज्ञानात्मक लचीलापन आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों को नई जानकारी सीखने और प्रभावी ढंग से लागू करने की अनुमति देता है। बच्चों को अमूर्त सोच सिखाना, बच्चों को चुनौतियों को स्वीकार करने और विफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करना। विकास की मानसिकता विकसित करके आप उन्हें लचीलापन और दृढ़ता विकसित करने में मदद कर सकते हैं, जो अमूर्त सोच के लिए आवश्यक है। अमूर्त सोच सिखाने के लिए सादृश्य एक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि वे बच्चों को असंबंधित प्रतीत होने वाली अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने में मदद करते हैं। जटिल विचारों को चित्रित करने के लिए रोजमर्रा के उदाहरणों का उपयोग करें और बच्चों को अपनी स्वयं की उपमाओं के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। खुले प्रश्न पूछें जो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं और बौद्धिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को ड्राइंग, लेखन या भवन निर्माण जैसी रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होने के अवसर प्रदान करें। इससे उन्हें अपनी कल्पना शक्ति विकसित करने और लीक से हटकर सोचने में मदद मिलेगी। बच्चों को जानकारी का विश्लेषण करना, सबूतों का मूल्यांकन करना और धारणाओं पर सवाल उठाना सिखाएं। उन्हें तार्किक सोच, तर्क और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से परिचित कराएं। बच्चों को अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह आत्म जागरूकता उन्हें पैटर्न की पहचान करने, निष्कर्ष निकालने और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध बनाने में मदद कर सकती है। दीर्घकालिक आमतौर पर अल्पावधि पर जीत हासिल करता है। आलस्य और दीर्घकालिक के बीच सही रास्ता चुनने में आलस्य का विरोध करना बेहतर है और लंबी अवधि के लिए जाएं। मनुष्य वर्तमान क्षण के बारे में सोचते हैं, विशेष रूप से विकास के कारण हमारी वास्तविकता अधिक अस्तित्ववादी हुआ करती थी, इसलिए अल्पावधि लंबी अवधि की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। शेर की गंध की तरह जिसके लिए शीघ्रता की आवश्यकता होती है, उस क्षण सीधी कार्रवाई। बच्चों में अल्पकालिक मनोरंजन की इच्छा विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। शो 2 घंटे से लेकर फिल्मों तक, रियलिटी टीवी श्रृंखला से लेकर यूट्यूब और टिकटॉक तक 15 सेकंड। दीर्घकालिक सोच में एक विशेष शक्ति होती है, क्योंकि आप क्षमताओं और उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जब आप केवल दीर्घकालिक सोचते हैं, जैसे कि एक कंपनी शुरू करना जिसके लिए कई वर्षों की कड़ी मेहनत और दीर्घकालिक सोच की आवश्यकता होती है, तो अंत में क्षमता और पूंजी हासिल करना संभव होता है जो किसी अन्य तरीके से कभी हासिल नहीं किया जा सकता था। अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन में दीर्घकालिक नहीं सोचते हैं, इसलिए ऐसा करने वालों को इससे बड़ा लाभ मिलता है। प्रवृत्ति हमेशा यह व्याख्या करने की होती है कि आज या कल क्या हुआ, लेकिन वास्तव में कई वर्षों की प्रवृत्ति को समझना और आज या कल की घटनाओं से प्रभावित न होना अधिक बुद्धिमानी है। उदाहरण के लिए, एक सरकार अदालतों को बदलना चाहती है, वर्षों के अंतराल में इसकी व्याख्या करना बेहतर है। सरकार की गुणवत्ता में गिरावट। काम आसान है और कई बार आप लंबे समय में जीतेंगे। आप किसी भी व्यवसाय में कड़ी मेहनत न करने की इच्छा देखते हैं या प्रौद्योगिकी, पैदल चलने के बजाय कार, ताज़ा भोजन तैयार करने के बजाय गर्म पकवान, कैंप फायर के बजाय गैस स्टोव, अमेज़न। और यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आप जीतना चाहते हैं। दीर्घकालिक सोच का अभ्यास करें और फिर धीरे धीरे दीर्घकालिक सोचना शुरू करें। दीर्घकालिक सोच का अभ्यास करना वास्तव में कई मामलों में संतुष्टि को अस्वीकार करना है। रिश्ते धूम्रपान से अधिक खतरनाक हैं। अकेले रहने वाले बाघ के विपरीत मनुष्य मेपल की तरह आदिवासी प्राणी हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए कंपनी की आवश्यकता होती है। बेशक हम अकेले भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव आदिवासी है, सामाजिक है। खतरे या आपातकाल के समय में जीवित रहने के लिए हम हमेशा एकजुट होते हैं और एकजुट होते हैं। इसलिए जैविक रूप से हमें एक पुरस्कार मिलता है जब हम अन्य लोगों के आसपास होते हैं, और ये दीर्घकालिक संबंधों में परिलक्षित होता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक लंबे समय तक चले अध्ययन में पाया गया कि रिश्ते दीर्घायु और जीवन की गुणवत्ता में सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, पोषण से भी अधिक और किसी भी अन्य चीज से भी अधिक। यह विकास विज्ञान और तर्क के साथ चलता है और इसलिए स्वतंत्र विचार में एक अच्छी दरार है। दीर्घकालिक शोध से पता चला है कि रिश्ते सबसे प्रमुख स्वास्थ्य कारक हैं जो दीर्घायु और खुशी की भविष्यवाणी करते हैं। उन्होंने उनके बारे में गुड लाइफ नाम से एक किताब भी लिखी। अच्छे और दीर्घकालिक रिश्ते समृद्धि और स्वास्थ्य लाते हैं। हालांकि आज यह महसूस हो रहा है कि एक नई प्रणाली शुरू करने के अगले उत्साह या एक युवा साथी के लिए उच्च आवृत्ति के साथ अल्पकालिक समाप्त संबंधों के बारे में सोचने की प्रवृत्ति है, और जो महिलाएं रिश्तों में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती हैं, युवा और स्वतंत्र रहने के लिए। 1 साल की कंपनियों और 29 साल की कंपनियों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। हमारी स्वाभाविक उत्तरजीविता प्रवृत्ति उन लोगों के साथ रहने की है जिन्हें हम लंबे समय से जानते हैं, जनजाति, इस तरह विकास ने हमें बनाया है। दीर्घकालिक संबंधों में पार्टियां एक दूसरे को गहराई से जानती हैं और स्वाभाविक रूप से एक आम और अनूठी भाषा विकसित करती हैं जो जोड़े को अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। और यही बड़ा फायदा है, यही आइडिया बिजनेस में भी काम करता है। व्यापार में एक दीर्घकालिक परिचित और अच्छे संबंध आपको अविश्वास की समस्याओं के बिना तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, जिससे साझेदारी समझौतों, वकीलों और अनगिनत जांच और परीक्षणों पर बहुत अनावश्यक समय खर्च होता है। आज अतीत का संयुक्त शिकार हो सकता है एक अच्छे रिश्ते और पारिवारिक व्यवसाय के प्रबंधन या एक सामान्य लक्ष्य पर दोस्तों के साथ काम करने में प्रतिबिंबित हो। मुझे जनजाति की कमी महसूस हुई, खासकर जब मैंने एक समान लक्ष्य और गहरी जान पहचान के साथ वर्षों तक एक साथ काम करने के बाद +500 छोड़ दिया। दीर्घकालिक निवेश यदि आप खोना नहीं चाहते हैं तो क्रिप्टो स्टॉक में दैनिक व्यापार खेल सट्टेबाजी एक अल्पकालिक निवेश है और आप शायद हार जाएंगे। इस पर विश्वास करना और अगले 10 वर्षों में 10,00,000 NIS के लाभ की योजना बनाना बहुत मुश्किल है, न कि कल 10,000 NIS कमाने पर। दीर्घकालिक निवेश औसतन उच्च अल्पकालिक रिटर्न की ओर ले जाते हैं क्योंकि वे लागत के साथ साथ कब प्रवेश करना है और कब बाहर निकलना है इसका समय भी बचाते हैं। शेयर बाजार पिछले 50 वर्षों में मुद्रास्फीति से 7% अधिक की वार्षिक दर से बढ़ा है। दूसरे शब्दों में, यदि आप बाहर निकलने और प्रवेश किए बिना केवल सूचकांकों पर टिके रहते हैं तो लगभग हर 10 साल में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। इसके विपरीत डे ट्रेडर्स अल्पकालिक निवेश ज्यादातर अपना सारा पैसा खो देते हैं जब पैसा एक्सचेंजों, दलालों और बैंकों को कमीशन और ब्याज में चला जाता है। तो अपने आप को बताएं, आपको इन दोनों समूहों में से किस समूह से संबंधित होना चाहिए? दीर्घकालिक अध्ययन हम में से अधिकांश लोग आसान अल्पकालिक काम करने और थोड़ा आलसी होने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, लेकिन जैसा कि कई चीजों में होता है, बेहतर भविष्य दीर्घकालिक के लिए आलस्य छोड़ना उचित है। 10-20 साल आगे के लिए पढ़ाई की योजना बनाना दूसरों की तुलना में और खुद के लिए भी बहुत बड़ा लाभ देता है। कुछ वर्षों का प्रयास, मान लीजिए 4, अकेले ही पूरे जीवन, मान लीजिए 50 का प्रतिफल देता है। स्कूल में पढ़ते समय दीर्घकालिक सोचना महत्वपूर्ण है। जब हम विचार करते हैं कि अल्पावधि में गणित या भौतिकी का अध्ययन करना चाहिए या नहीं, तो ये हमें बहुत कुछ नहीं देगा, लेकिन लंबी अवधि में ये हमारी सोच में सुधार करेगा और हमारे द्वारा चुने गए किसी भी विषय में हमें लाभ देगा। उदाहरण, क्या हमें किसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहिए या कॉलेज? कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बीच वेतन में अंतर के बारे में एक लेख। क्या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए ग्रेड सुधारने में 2 साल का निवेश करना उचित है? जाहिर तौर से विश्वविद्यालय के स्नातकों को कॉलेज के स्नातकों की तुलना में औसतन 23% अधिक वेतन मिलता है, इसलिए आप दोनों कुछ वर्षों के भीतर निवेश वापस कर देंगे और विश्वविद्यालय से मजबूत संबंध विकसित करेंगे। दीर्घकालिक व्यवसाय व्यवसाय में दीर्घकालिक रूप से सोचना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अच्छा व्यवसाय कई वर्षों तक बनाया जाना चाहिए और एक गंतव्य तक पहुंचने में लंबा समय लगता है। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रिक कार बनाना। एक अच्छा नाम, एक अच्छे तेल से एक अच्छा नाम, यहाँ अभिव्यक्ति जो ईमानदारी और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है इस नियम को अच्छी तरह से समझाता है कि बुरे पैसे से भरपूर होने की तुलना में ईमानदार और अच्छी प्रतिष्ठा वाला होना बेहतर है। और समय के साथ सभ्य व्यावसायिक गतिविधि त्वरित भोजन की तुलना में बहुत बड़ा लाभ देगी। ये देखकर अच्छा लगा कि यहाँ बुराई को कम लाभ से दंडित किया जाता है। किसी व्यवसाय की ब्रांडिंग, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, एक सफल व्यवसाय और असफल व्यवसाय के बीच कई बार अंतर पैदा करती है। परिभाषा के अनुसार ब्रांडिंग दीर्घकालिक है। मैं जानता हूं कि कंपनी अमेज़न सबसे दूर सोचती है, वो कई साल आगे की सोचती है। उनमें और बाकियों के बीच अंतर यह है कि वो यह नहीं सोचती कि अब कमाई कैसे की जाए, बल्कि यह सोचती है कि ग्राहक के लिए सेवा और उत्पादों को कैसे बेहतर बनाया जाए। अमेज़न ग्राहक को केंद्र में रखता है। दो चीजें वो लगातार सुधारती रहती हैं क्योंकि जेफ बेगोस को एहसास हुआ कि लोग यही तलाश रहे हैं, उत्पादों के लिए सस्ती कीमत और तेज डिलीवरी। इन दोनों के बारे में कोई संदेह नहीं है कि ये ग्राहकों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। किताबें पढ़ना और सुनना जीवन चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जीवन में पहले हमारी परीक्षा होती है और उसके बाद ही हम सीखते हैं, लेकिन किताबों की मदद से उपरोक्त क्रम को उलटना संभव है। पढ़ना प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जीवन में और एक वास्तविकता का सामना करने के लिए जिसे हमने वास्तविकता के सामने आने से पहले नहीं देखा था। यह उन पुस्तकों की सूची है जिन्हें मैंने पढ़ा है और पसंद किया है और उन्होंने अन्य चीजों के अलावा +500 की स्थापना करने और स्वतंत्र रूप से सोचने में हमारी मदद की है। किताबें जो मैंने पढ़ी हैं और उनकी अनुशंसा की जाती है। अमीर किताबें पढ़ते हैं। 88% अमीर लोग स्वशिक्षा या आत्मसुधार के लिए पढ़ने के लिए हर दिन 30 मिनट या उससे अधिक समर्पित करते हैं। सफल लोग बहुत पढ़ते हैं। ये ज्ञात है कि अमीर लोग शारीरिक गतिविधि, योग, स्वस्थ नींद की दिनचर्या और पढ़ने जैसी दैनिक आदतें विकसित करते हैं। क्या यह एक संयोग है? मुझे नहीं लगता। याद रखें कि हमने ऊपर क्या कहा था कि पढ़ने से आपके संज्ञानात्मक कार्य कैसे बेहतर होते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन सी किताबें पसंद हैं, तो उन शीर्ष पुस्तकों की सूची देखें जिन्हें सफल लोग पढ़ते हैं और मैंने भी पढ़ा है। यह आपके और आपके बच्चे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? काल्पनिक और जीवनी संबंधी किताबें पढ़ने के लिए जो लोग किताबें लिखते हैं वे आमतौर पर अमूर्त रूप से सोचते हैं और इसलिए वे शायद उन लोगों की तुलना में सुनने लायक हैं जो किताबें नहीं लिखते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, लेखक शेफ की तरह हैं, लेकिन उनकी सामग्री विचार हैं, सब्जियां नहीं। वे विचारों को उछालते हैं, अंतर्दृष्टि को उछालते हैं और ज्ञान से सजाए गए पन्नों की प्लेट पर सब कुछ परोसते हैं। तो यदि आप गॉर्डन रामसे का भोजन अस्वीकार नहीं करेंगे तो आप एक प्रतिभाशाली लेखक की पुस्तक क्यों अस्वीकार करेंगे? ये किसी रेस्तरां में 5 सितारा भोजन के स्थान पर फास्ट फूड हैमबर्गर चुनने जैसा है। आप पूछ सकते हैं, मैं कथानक वाली पुस्तकों के स्थान पर गैर काल्पनिक पुस्तकों और पत्रकारों को क्यों पसंद करूंगा? खैर, इसे इस तरह से सोचें, नॉनफिक्शन किताबें आपके मस्तिष्क के लिए जिम सत्र की तरह हैं। वे आपके औसत जासूसी उपन्यास की तुलना में आपकी तार्किक मांसपेशियों को कहीं अधिक उत्तेजित करते हैं, जहां कभी कभी जासूस का तर्क जादुई बीन द्वारा सक्रिय होता प्रतीत होता है। हालांकि, मुझे गलत मत समझो, काल्पनिक कहानियां भी आपके मस्तिष्क के लिए एक अच्छी कसरत हो सकती हैं। वे योग की तरह हैं, तर्क के बजाय अपनी कल्पना और सहानुभूति को फैलाना। इसके बारे में सोचें, क्या आप कार चलाने के लिए 5 साल के बच्चे पर भरोसा नहीं करेंगे? तो बातचीत शुरू करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा क्यों करें जो पढ़ता नहीं है? पढ़ना हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को तेज करता है, जैसे ड्राइविंग सबक ड्राइविंग कौशल को तेज करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कैसे प्रशिक्षित करते हैं? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो काफी हद तक हम इंसानों के सीखने के तरीके के समान है। जैसे हम AI को ढेर सारा डेटा देते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को जानकारी देते हैं, जिनमें से अधिकांश किताबों से आती हैं। तो मूल रूप से एक किताब पढ़ना आपके आंतरिक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा है, किसी कोडिंग की आवश्यकता नहीं है। किताबों में आपको आसुद ज्ञान मिलता है, जैसे एक सीप में मोती ढूंढना। ज्ञान का यह हस्तांतरण परिवार की विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने के समान है, अमूल्य और शाश्वत। अब सभी किताबें समान नहीं बनाई जाती हैं। किसी योग्य व्यक्ति, जैसे कि एक अकादमिक या सफल उद्यमी द्वारा लिखी गई किताब पढ़ना एक अनुभवी जीवन कोच से सलाह लेने जैसा है। वे ऐसी किताबें हैं जो आपको वास्तविकता की खुराक देती हैं, न कि चीनी में लिपटी कल्पना की। इसके बारे में सोचें, इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने वाले ज्यादातर लोग किताबी कीड़े हैं। आइंस्टीन से, जो शायद अपने हेयरब्रश से ज्यादा किताबें पसंद करते थे, एलोन मस्क तक, जो मंगल ग्रह पर एक पुस्तकालय बनाने की योजना बना रहे थे, बिल गेट्स तक, जो शायद अपने पुस्तक संग्रह के साथ एक किला बना सकते थे। इसके विपरीत कहें टिकटॉक, ये घर में बने सेब पाई की तुलना स्टोर से खरीदे गए कैंडी बार से करने जैसा है। निश्चित रूप से कैंडी से आपको तुरंत चीनी मिल सकती है, लेकिन पाई बेहद संतोषजनक और पौष्टिक है। एक अर्थशास्त्र प्रोफेसर द्वारा लिखी गई किताब आमतौर पर लाइक पाने के लिए बनाए गए टिकटॉक वीडियो से अधिक महत्वपूर्ण होगी। वॉरेन बफे पर विचार करें, वो व्यक्ति जो शायद एक दिन में उतना पढ़ता है जितना अधिकांश लोग एक महीने में पढ़ते हैं। उसकी सफलता का मंत्र पुस्तक द स्मार्ट इन्वेस्टर। ऐसा नहीं है कि वो सफल होता है और इसलिए बुलाता है, बल्कि यह कि वो पढ़ता है और इसलिए सफल होता है। तो अगली बार जब आप कोई किताब लेने में झिझकें, तो याद रखें, आप अगला वॉरेन बफे बनने से केवल एक किताब दूर हैं। ठीक है, कुछ इस तरह। किताबें कैसे सुनें और किताबें कहां से खरीदें? ऑडियो पुस्तकें, श्रवण एक ऐसी क्षमता है जो हमारे पास कई मिलियन वर्षों से पढ़ने की क्षमता है जो कई हजार साल पुरानी है। निष्कर्ष स्पष्ट है, ये बहुत अधिक प्राकृतिक है किसी पुस्तक को सुनने की अपेक्षा उसे सुनना। कुछ लोग पढ़ना पसंद करते हैं, इसका कारण केवल आदत है, क्षमता नहीं। कुछ लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं और इसके कई कारण हैं, जिनमें पढ़ने की अक्षमता भी शामिल है, जिसके कारण लगातार लंबी किताबें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर ऑडियो पुस्तकें आती हैं, रिकॉर्ड की गई पुस्तकें जिन्हें आप अपने फोन या इंटरनेट से जुड़े किसी भी उपकरण पर सुन सकते हैं। ऑडियो पुस्तकें पढ़ने में विशेष समय खर्च किए बिना दुनिया में मौजूद सभी ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। मैं खुद गाड़ी चलाते समय आमतौर पर ऑडियो किताबें सुनता हूँ। स्वतंत्र विचार करने से आपको एहसास होता है कि किताबें सुनना और किताबें पढ़ना बहुत समान है। विकास से पता चलता है कि सुनना और सुनना हमारे लिए पढ़ने, मान लीजिए 5000 वर्ष, की तुलना में अधिक स्वाभाविक है, मान लीजिए 5000 वर्ष। किताबें सुनना यहां संभव है, श्रव्य, स्टोरीटेल। घर पर किताबें खरीदना, अमेज़न और स्टीम। किताबें ऐसी क्यों हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण? पैसा कमाना, किताबें हमें आर्थिक दुनिया और उसमें मौजूद शक्तियों के बारे में सोचने के नए तरीके देती हैं। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक समाचार पत्र जैसे WSJ, डहमाक महत्वपूर्ण हैं। पढ़ते समय हम जो पढ़ते हैं या सुनते हैं उसकी कल्पना करते हैं, और इस प्रकार कल्पना और सोच बहुत विकसित होती है। किताबें आमतौर पर बहुत बुद्धिमान लोगों द्वारा लिखी जाती हैं और प्रकाशकों द्वारा चुनी जाती हैं, और ये बहुत अच्छे फिल्टर हैं। पढ़ते समय, खासकर सैद्धांतिक किताबें पढ़ते समय, हम वास्तव में नई चीजें सीखते हैं और अध्ययन करने से मेरी सोच विकसित होती है और मेरी मानसिक क्षमता बनी रहती है। निंदा बुरी बात है। मैंने अपने बारे में बदलाव किया और हंसने की अपनी बुरी आदत को बंद कर दिया। दूसरों पर और उनके बारे में अपमानजनक तरीके से बात करना, भले ही वे कई बार इसके हकदार थे, मुझे एहसास हुआ कि यह मुख्य रूप से मेरे लिए हानिकारक है। इसे आजमाएं, ये काम करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि दूसरों के बारे में बुरा न बोलें, जिसे बदनामी कहा जाता है। यह न केवल दूसरों की भलाई के लिए बल्कि हमारी अपनी भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरों के बारे में नकारात्मक बोलने से बचकर हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बनाने में योगदान दे सकते हैं। नकारात्मक भाषण से बचने का एक कारण यह है कि यह हमारी भलाई में योगदान देता है। यह हमें एक सकारात्मक आत्म छवि विकसित करने में मदद करता है। जब हम दूसरों के बारे में दयालुता से बात करते हैं, हम करुणा, सहानुभूति और समझ जैसे गुणों का प्रदर्शन करते हैं। ये गुण हमारे चरित्र पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और जैसे जैसे हम इन्हें विकसित करते हैं, हम अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं। ये बदले में हमारे आत्मसम्मान और भावनात्मक कल्याण में सुधार करता है। दूसरा कारण यह है कि दूसरों के बारे में बुरा न बोलने से रिश्ते मजबूत और अधिक सहायक हो सकते हैं। जब हम गपशप और बदनामी से बचते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ विश्वास बनाते हैं, समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं। बदले में हम सकारात्मक संबंधों से मिलने वाले भावनात्मक समर्थन और प्रोत्साहन से लाभान्वित होते हैं। ये सामाजिक समर्थन हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के लिए आवश्यक हो सकता है। इसके अलावा नकारात्मक भाषण से बचने से संघर्ष और गलतफहमी को रोकने में मदद मिलती है, जो भावनात्मक रूप से थका देने वाली और तनावपूर्ण हो सकती है। दूसरों से दयालुता और सम्मानपूर्वक बात करके हम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देते हैं। इससे बहस और विवाद की संभावना कम हो जाती है, जिससे हम अधिक सकारात्मक बातचीत और अनुभवों का आनंद ले पाते हैं। परिणामस्वरूप हमारे तनाव का स्तर कम हो जाता है और हमारी भावनात्मक भलाई में सुधार होता है। इसके अलावा जब हम दूसरों के बारे में बुरा बोलने से बचते हैं, तो हम टोरा और बाइबल की आज्ञाओं के साथ जुड़ जाते हैं। ये संरेखण हमें उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकता है और दिशा, जो हमारे समग्र कल्याण में योगदान देती है। कई लोगों के लिए अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जीने से आराम, आंतरिक शांति और संतुष्टि की गहरी भावना आती है। हमारे दिमाग हम पर काम करते हुए पूर्वाग्रहों के बारे में सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा पर्यावरण और हमारे जीन निर्धारित करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, लेकिन हमारा निर्णय लेना दोनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण। एक सोच पूर्वाग्रह एक आवेग से सोच रहा है, जहां उन लोगों की जरूरतों के लिए कोई तर्क और संबंध नहीं है जिनकी सोच पक्षपाती है। व्यक्ति पक्षपात किए बिना अपने विश्व दृष्टिकोण से अपनी वास्तविकता बनाते हैं। मानसिक पूर्वाग्रह का एक उदाहरण, जब कोई एक महंगी कार सिर्फ इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके पड़ोसी के पास एक महंगी कार है। इस व्यवहार का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है और यह पड़ोसी की ईर्ष्या से उत्पन्न होता है, ईर्ष्या से पूर्वाग्रह। सही और स्पष्ट रूप से सोचने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें गलत और अस्पष्ट रूप से सोचने के लिए क्या मजबूर करता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी यात्रा या किसी घातक परीक्षा से पहले शराब से परहेज करते हैं। निर्णय लेना और निर्णय लेना हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, लेकिन न केवल हमारे निर्णय लेने को बल्कि उन सभी कारकों को भी प्रभावित करते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि निर्णय लेने पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनमें सुधार करना महत्वपूर्ण है। पूर्वाग्रह विभिन्न विकासवादी कारणों से मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, हमारे सोचने के तरीके का एक बड़ा हिस्सा शिकारी संग्रह के लिए बनाया गया है, लेकिन हम एक आधुनिक वातावरण में रहते हैं जहां सुपरमार्केट में खरीदारी के लिए न तो उन्नत शिकार क्षमता की आवश्यकता होती है, न ही विशेष संग्रह क्षमता की। इसलिए यह संभव है कि ये पूर्वाग्रह कहीं और प्रसारित हों और हमारी सोच को विकृत करें। इस विकृति का कारण बनने वाले पूर्वाग्रहों को समझकर इसे ठीक किया जा सकता है। जानवरों की तरह हम मुख्य रूप से भोजन, आश्रय और प्रजनन प्राप्त करने के साथ साथ इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। यहां आपके सामने रखी गई जानकारी चार्ली मुंगर और कई अन्य दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर एकत्र की गई थी। अतीत में पक्षपात बुरे से अधिक अच्छे थे, अन्यथा मानव विकास के दौरान वे नष्ट हो गए होते। ये इंसानों की मानसिक क्षमता को देखते हुए काफी अच्छे से काम करते हैं और इसीलिए इन्हें विकास के दौरान संरक्षित किया गया है। पूर्वाग्रहों का उपयोग अच्छाई फैलाने के साथ साथ बुराई फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। विभिन्न पूर्वाग्रहों का एक महत्वपूर्ण कारण निरंतरता की हमारी इच्छा है, ताकि अतीत में कार्य और राय वास्तविकता और आज की हमारी राय के अनुरूप हों। यदि ऐसा नहीं है, ऐसी अनुकूलता, हम इसे वास्तविकता को बदलकर समझाते हैं, न कि राय को। हम चाहते हैं कि मैं नहीं बदलेगा क्योंकि अन्यथा वो गलत था, और फिर हमारे पास अस्थिरता है। इसलिए कई मामलों में जब मैं और वास्तविकता के बीच युद्ध होता है, मैं जीतता है क्योंकि मैं गलत नहीं था, क्योंकि मैं अपनी राय में खास और स्थिर हूं। कहां है दिक्कत? जब कई पूर्वाग्रह एक ही समय में काम करते हैं, तो हम अपने या पर्यावरण के लिए तार्किक और सही सोच पूरी तरह से खो देते हैं। उदाहरण के लिए, पोकर टेबल पर जुए में प्रोत्साहन, सहयोग और पारस्परिकता पूर्वाग्रह हम पर काम करते हैं, जैसे पिज्जा तीन अलग अलग तंत्रों पर काम करता है जो प्रकृति में मौजूद नहीं है, चीनी, वसा और प्रोटीन। जब ये उत्तेजनाएं एक साथ दिखाई देती हैं, तो हम उनसे निपट नहीं सकते हैं। इन पूर्वाग्रहों के सकारात्मक उपयोग का एक उदाहरण, प्राधिकारी व्यक्ति का अति प्रभावकारी पूर्वाग्रह। अस्पतालों में प्राधिकारी व्यक्ति यानी डॉक्टरों, नर्सों के पूर्वाग्रह से बचने के लिए हर चीज को हल्के में न लें और जांचें कि डॉक्टर क्या मांगते हैं। ये ईर्ष्या पूर्वाग्रह है। ये लालच नहीं है जो दुनिया को चलाता है, ये ईर्ष्या है। सबसे अनकहे पूर्वाग्रहों में से एक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण में से एक। इस पूर्वाग्रह के एक और उदाहरण के बारे में सोचें। प्राचीन वर्षों में ईर्ष्या की शक्ति को समझें। नीतिवचन 27, क्रूरता गर्म है और एक पक्षी धोता है, और ईर्ष्या के सामने कौन खड़ा होगा। ईर्ष्या हमें लंबे समय तक गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है, जैसे स्पोर्ट्स कार खरीदना क्योंकि हमारे पड़ोसी के पास एक है। उस ईर्ष्या को नजरअंदाज करने का अभ्यास करें जिसे मैगी एक बार तोड़ना चाहती थी। मैं इस तरह बड़ा हुआ, पूर्वाग्रह हमारे गर्म होते विश्व पर सबसे बड़ा पूर्वाग्रह है और स्वामित्व पूर्वाग्रह का एक उपपूर्वाग्रह है। हमारी अधिकांश राय हमारे माता पिता द्वारा हमारे अंदर रोपित की गई, और अन्य राय उस माहौल से आई जहां हम बिना ये सोचे बड़े हुए कि क्या वे सच हैं या नहीं। और यदि आप यहां से कुछ भी नहीं ले जाते हैं, तो कम से कम इस बिंदु को लें, हमारे दिमाग में मौजूद अधिकांश राय और मॉडलों पर हमने विचार नहीं किया क्योंकि हम उनमें बड़े हुए हैं। क्या आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा है कि क्या एक बड़ा घर, सब्जियां स्वास्थ्यप्रद हैं, झटके सहने के लिए दौड़ने के जूते वास्तव में सच हैं, क्योंकि आप ये जानते हुए बड़े हुए हैं कि ये सब सच हैं? नहीं। इस पूर्वाग्रह के तहत यथास्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति आती है। बदलाव करने और फिर गलती करने के डर से हम अभी जो कर रहे हैं उसमें गलतियां करना पसंद करते हैं। हम इसे उन शासनों में सुंदर मानते हैं जो नहीं बदलते हैं। साथ ही बेन द्वारा उल्लिखित इसराइल में अति रूढ़िवादी के संबंध में भी देखते हैं गुरियन। मंच पूर्वाग्रह वास्तव में यह है कि मैं बड़ा हूं और मैं सुंदर हूं, क्योंकि अन्यथा मैं मंच पर नहीं होता, या इसके संक्षिप्त नाम, मैं मंच पर हूं। यह एक पूर्वाग्रह है जो खड़े होने वालों पर काम करता है, मंचों जैसे प्रधानमंत्रियों, सीईओ, कमांडरों, डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, पायलटों, मशहूर हस्तियों और सभी को जनता लालसा से देखती है। मंच पर खड़ा व्यक्ति दर्शकों के एक हिस्से की प्रशंसा को देखता है और अवचेतन रूप से अपने गुणों और अपने निर्णय की गुणवत्ता के बारे में खुद को समझाता है। उनके करीबी लोग दर्शकों से प्रभावित होते हैं और निस्संदेह उनकी राय को बिना किसी संदेह के स्वीकार करते हैं और उनके गुणों को और भी मजबूत करते हैं। यहीं पर गतिविधि से एक राय को जड़ देने का पूर्वाग्रह भी आता है। एक मंच पर होने के तथ्य से ही वो अपनी राय को गतिविधि से और उस व्यक्ति से दूर कर देता है जो उनके बारे में बात करता है। और निश्चित रूप से देखने आए दर्शकों ने भी कार्रवाई की और गतिविधि के कारण राय को जड़ दिया। दर्शकों के प्यार की तीव्रता को महसूस करने के लिए आपको मंच पर होना होगा। जैसे प्रशंसा और शक्ति की दवाएं व्यक्ति को अलग कर देती हैं, वास्तविकता से दूर मंच पर तब तक खड़ा रहता है जब तक वह इसका विरोध नहीं करता है और उसके आसपास हां करने वाले लोग हैं, न कि सच्चे लोग जो वास्तविकता में वापस लौट आएंगे। जो लोग पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं वे दर्शक हैं, क्योंकि वे प्राधिकरण पूर्वाग्रह से प्रभावित हैं। फिर एक उत्सव होता है, क्योंकि मंच पर खड़ा व्यक्ति मैं बड़ा हूं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है और दर्शक अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। जब मैं पहली बार मंच से उतरा तो मुझे अरे महसूस हुआ। मैंने देखा कि मैं खुद को कितना पसंद करता हूं और मैं इसे और अधिक चाहता था, लेकिन मैंने वास्तविकता पर वापस आने के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्र विचार का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है। यह हमें अपनी मौजूदा राय पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं देता है और पूर्वाग्रहों को मजबूत करता है। मैं इसी तरह बड़ा हुआ, सक्रिय राय को जड़ से उखाड़ फेंकना, इनकार पूर्वाग्रह और कई अन्य अच्छे। जैसे ही हमें ये समझ में आया कि हमारी स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र विचार का कोई विकल्प नहीं है और इसे किसी पैसे वाले से नहीं खरीदा जा सकता, हमें सामान्य रूप से जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सबक समझ में आया और हम विशेष रूप से स्वतंत्र सोच में आगे बढ़े। इसी प्रकार सलाह प्राप्त करने के संबंध में सलाहकार आपको बताता है कि क्या अच्छा है, और अधिकांश समय आप निश्चित रूप से भुगतान किए गए सलाहकार से सलाह प्राप्त करते हैं और दुर्भाग्य आपके लिए होता है। इससे निपटने के दो तरीके हैं। समझें कि वह परामर्श में चूक गया है और सही करें, जैसे कि हवा चलने पर एक स्नाइपर अपनी चोटों को ठीक करता है, या सही तरीके से परामर्श की मदद से विषय के बारे में थोड़ा जाने और समझे कि कार्य करने का सही तरीका क्या है। स्वामित्व का पूर्वाग्रह किसी राय या उत्पाद या सेवा के बारे में हमारे सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण पूर्वाग्रहों में से एक है। इसीलिए हम बड़े घर खरीदते हैं, अपना मन नहीं बदलते हैं और खुद को विशेष के रूप में देखते हैं। जब हमारे पास कोई उत्पाद, राय या कुछ और होता है, तो हम स्वामित्व को उसके मूल्य से अधिक महत्व देते हैं। यदि हमने उत्पाद बनाया है या राय के बारे में सोचा है, तो स्वामित्व का मूल्य और भी मजबूत है। जब हम एक घर बनाते हैं, तो अध्ययन से पता चलता है कि हम इसका मूल्य बाजार मूल्य से अधिक रखेंगे। जब हम किसी विचार के बारे में सोचते हैं, उदाहरण के लिए यह एक, तो हम सोचेंगे कि यह वास्तव में जितना है उससे कहीं बेहतर है। अपनी स्थिति को मजबूत करना आक्रमणकारियों के खिलाफ एक किले की तरह, केवल उन्हें ही अंदर आने दें जो बेचते हैं और बाकी सभी को नजरअंदाज कर दें। मस्तिष्क अन्य मतों पर अनावश्यक ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता और जहां तक उसका संबंध है, लगातार परिपूर्ण होना चाहता है। ये पूर्वाग्रह इस तरह से मैं बड़ा हुआ के समान है, लेकिन यह अलग है क्योंकि एक धारणा है कि पहले से ही एक राय है जिसके बारे में मैंने सोचा है या मेरे दिमाग में एक मॉडल है। आप कुत्तों में यह अद्भुत देखते हैं, प्रयास करें उसे जो रॉटवेलर मिला उसमें से मांस निकालो। पूर्वाग्रह के तहत निष्क्रियता की प्रवृत्ति, स्वामित्व पूर्वाग्रह हमारे लिए चीजों को मारना कठिन बना देता है और साथ ही हमारी प्रवृत्ति हमेशा निष्क्रियता की होती है और इसलिए हम चीजों को वैसे ही छोड़ना पसंद करते हैं जैसे वे हैं, लेकिन इस स्थिति में निष्क्रियता बिल्कुल वैसी ही है, प्रक्रिया को जारी रहने देना की कार्रवाई। इसीलिए प्रक्रियाओं को मारने के लिए शर्त और तारीख के अनुसार पहले से मानदंड निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। विवेक पर प्रोत्साहन और सुदृढ़ीकरण को पूर्वाग्रहित करते हुए जीरोक्स ने यह समझने की कोशिश की कि जब तक उन्होंने मुआवजा नहीं बदला, तब तक नई मशीन पुरानी मशीन की तरह क्यों नहीं बिकी बिक्री करने वाले लोगों के लिए। लोग प्रोत्साहन और सुदृढ़ीकरण के अनुसार कार्य करते हैं और अपना मन बदलते हैं। इसलिए यदि आप किसी के निर्णय या सिफारिश को समझना चाहते हैं, तो ये जानना उचित है कि उनके प्रोत्साहन क्या हैं। हथौड़े वाला आदमी, पूर्वाग्रह हथौड़े वाले आदमी की तलाश है हथौड़े से प्रहार करने की जगह, भले ही अन्य समाधान और अन्य समस्याएं हों। निवेश में लोग खरीदारी का बटन दबाने के उद्देश्य से ट्रेडिंग सिस्टम में आते हैं। हथौड़ा चलाने वाला जानता है कि कैसे करना है, लेकिन अधिकांश समय आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। जब हमें कोई बीमारी या दर्द होता है, तो सिंड्रोम तब प्रकट होता है जब हम कुछ नहीं करते और इंतजार करते हैं। मैन और हैमर सिंड्रोम के साथ कई पूर्वाग्रह जुड़ते हैं और यही कारण है कि यह इतना मजबूत है। उसकी पेशेवर प्रतिष्ठा प्रदर्शन पर निर्भर करती है और यह एक प्रोत्साहन पूर्वाग्रह है। वो खुद से और अपने विचारों से प्यार करता है और उसने उन्हें अन्य लोगों के सामने व्यक्त किया है। एक निरंतरता और प्रतिबद्धता पूर्वाग्रह। सरलीकरण के बजाय जटिलता, पूर्वाग्रह की उत्पत्ति अंतर्ज्ञान में हुई है। समस्या पैदा करने वाली समस्या के बजाय हमारे सामने समस्या को हल करने की हमारी धारणा और यह सोचने की कोशिश भी नहीं कर रही है, शायद हमारी मूल धारणा गलत है। इनकार, पूर्वाग्रह आप अपराधियों की माताओं को दृढ़ विश्वास के लिए सबसे स्पष्ट पाएंगे। वे हमेशा मानते हैं कि उनका बेटा निर्दोष है। ये हमारी नाजुक आत्मा के लिए एक अच्छी सुरक्षा है और यह आमतौर पर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन यह अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं करता है। एक पक्ष चुनना, पूर्वाग्रह हम एक पक्ष चुनने के लिए बने हैं, चाहे वो काला हो या सफेद, हालांकि सही तरीका अक्सर होता है बीच में कुछ। उदाहरण के लिए, जब पूछा गया, क्या आप दाएं हाथ के हैं या बाएं हाथ के, यदि किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो यह अधिक अर्थपूर्ण होगा बस्तियों के पक्ष में। शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण है, चुनाव कौन जीतेगा, सही उत्तर 44% गोल्डा है न कि गोल्डा। दो लोग, एक धूम्रपान करता था, 87 वर्ष की आयु में मर गया, और दूसरा धूम्रपान नहीं करता था, 40 वर्ष की आयु में मर गया। हम यहाँ एक पक्ष चुनना चाहते हैं, आप धूम्रपान कर सकते हैं और 87 वर्ष की आयु तक पहुँच सकते हैं, लेकिन सही वाक्य है, आप धूम्रपान कर सकते हैं और 15% में 87 वर्ष की आयु तक पहुँच सकते हैं। गतिविधि एक राय उत्पन्न करती है, पूर्वाग्रह जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम विचार को अधिक मजबूती से स्थापित करते हैं। जब राय गलत होती है तो इससे सोच में गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। जब एक पूरी कक्षा यहूदियों को मौत चिल्लाती है तो चिल्लाना ही इस राय को पुष्ट करता है। सभी प्रकार के पुनर्शिक्षा शिविर इस प्रवृत्ति को अच्छी तरह से जानते हैं। हम इसे रिश्तों में भी देखते हैं, प्यार इस तथ्य से विकसित होता है कि लोग एक साथ हैं। स्वामित्व पूर्वाग्रह में जब हम उत्पाद बनाते हैं या राय के बारे में सोचते हैं तो पूर्वाग्रह और भी अधिक बढ़ जाता है। एसोसिएशन पूर्वाग्रह, जब हम घोड़े पर एक चरवाहे को धूम्रपान करते हुए देखते हैं, एक मार्लबोरो सिगरेट, हम धूम्रपान के लिए घोड़े पर बैठे आदमी के बीच गलत संबंध बनाते हैं। उपरोक्त पूर्वाग्रह के कारण भयानक चीजें घटित होती हैं, जो चीजों के लिए त्वरित स्पष्टीकरण देने की हमारी इच्छा के कारण होती है। घोड़े पर एक सुंदर आदमी है, ओ ये सिगरेट है, सवाना में इसने बेहतर काम किया, क्या शेर की दहाड़ है, आहा यह एक शेर है, सवाना में दृश्य का मंचन नहीं किया गया था। तिरछा पारस्परिकता और बदला, मैं अप्रैल 2023 में बोग्स था और मैं उच्च खरीद फरोख्त के साथ एक टेबल पर पोकर खेल रहा था। इतनी रकम के साथ मेरा पहली बार, मैंने एक झांसे में सब कुछ खो दिया। मैंने पोकर में 7-2 नामक एक सब गेम बनाया। गूगल ने कीमत बढ़ा दी और मुझे लगा कि चैट जीपीटी उससे बेहतर उत्पाद वाला बाजार छीन लेती है। पोकर बोग से हुई हार के कारण मुझे बहुत कठिनाई हुई। अपने नियमों के विरुद्ध मैंने पोकर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए गूगल को छोटा कर दिया। इस बार मैं नुकसान की भरपाई करने में सफल रहा, लेकिन मेरे लिए यह नुकसान का बदला था। थोड़ा अजीब था, लेकिन मैं समझ गया कि यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण था। हमारी बदला लेने की इच्छा के अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि मनुष्य किस ओर झुकते हैं। बदला भले ही बदला लेने से उन्हें बहुत कम अच्छा महसूस होगा और उन्हें दूसरे पक्ष के बारे में अधिक समय तक सोचना पड़ेगा। इस पूर्वाग्रह के कारण हम लोगों, परिवारों, गांवों और देशों के बीच बहुत सारे युद्ध देखते हैं। पारस्परिकता, एक से अधिक बार आप उत्पाद विक्रेताओं से सुनेंगे, मैं भी घर पर इस तरह का टीवी उपयोग करता हूँ। बेशक मुक्त दिमाग से थोड़े से गणित से आपको पता चलता है कि वो शायद झूठ बोल रहा है, लेकिन ये काम करता है। हम समान उत्पाद और समान व्यवहार खरीदने वाले एक समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह एक जनजाति हुआ करती थी, स्नेह, लेकिन पारस्परिकता की प्रवृत्ति के कारण शत्रुता भी, और इन मामलों में छोटे संकट तब तक बढ़ सकते हैं जब तक वे नियंत्रण से बाहर न हो जाएं। छूट जाने का डर हमें कभी कभी ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, और बिक्री एजेंट इसे उम्मीद के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। एक और वैक्यूम क्लीनर बचा है, जैसा हमसे अपेक्षित है वैसा करो का पूर्वाग्रह बहुत कुछ मांगता है और फिर थोड़ा पूछें। एक दिलचस्प प्रयोग में राहगीरों को किशोर अपराधियों को एक सप्ताह के लिए चिड़ियाघर में ले जाने के लिए कहा गया और फिर हमने अनुरोध को घटाकर एक दोपहर कर दिया। परिवर्तन ने एक दोपहर के बारे में सीधे प्रश्न की तुलना में प्रतिक्रिया में काफी वृद्धि की। हम अपने सामने वाले पक्ष को निराश नहीं करना चाहते। नाजियों के बीच स्थिरता और प्रतिबद्धता का पूर्वाग्रह सामने आया और जारी रहा और जारी रहा और खुद को मजबूत किया। हम जो करते हैं उसमें सुसंगत दिखना चाहते हैं, और चाहे वो कितना भी मूर्खतापूर्ण क्यों न हो, भले ही वो वास्तव में बुद्धिमत्ता दिखाता हो। समाज राय में बदलाव को अनुकूल नजर से नहीं देखता है, वो टेढ़ा मेढ़ा है। कमरे के तापमान पर पानी का आकार अलग होता है। हम तुलनात्मक और सापेक्ष प्राणी हैं। आप बच्चों में इस पूर्वाग्रह को चरम सीमा तक देखते हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि उन्हें कितना मिला, मुख्य बात यह है कि भाई बहनों को सब कुछ बिल्कुल वैसा ही मिलता है। और यहीं पर एंक पूर्वाग्रह दिखाई देता है, जब हमारे पास उत्पाद के लिए प्रारंभिक कीमत होती है। अधिकार पूर्वाग्रह, नाजियों ने अधिकार का सम्मान करने के लिए मनुष्यों और जर्मन संस्कृति की प्राकृतिक प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया। नाजी तंत्र के एक बड़े हिस्से ने अधिकार का पालन किया। आदेश मुझे ऊपर से प्राप्त हुआ। अस्पतालों में आप हर दिन, डॉक्टर ने यही कहा है, घटना के प्रभाव देखते हैं। रासायनिक निर्भरता पूर्वाग्रह, शराब, दवाओं और सभी प्रकार की गोलियों का उपयोग वास्तविकता के विरूपण और गलत निर्णय लेने का कारण बनेगा। पोकर टेबल पर नशे में धुत खिलाड़ी के सामने रहना हमेशा अच्छा लगता है। अधिकांश समय निर्णय के पूर्वाग्रह के साथ जिद्दी इनकार और धीरे धीरे गिरती नैतिकता और कभी कभी पूर्ण नैतिक पतन भी होगा। निसंदेह हमारा मस्तिष्क उन पदार्थों से निपटना नहीं जानता जो प्रकृति में हमारे शरीर में नहीं पाए जाते हैं। भारतीयों ने एक गोरे आदमी से विस्की के कुछ गैलन के लिए 1400 भैंस की जीप का आदान प्रदान किया। यह वो जानवर था जिस पर वे हजारों वर्षों से रह रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें से 1400 का शिकार सिर्फ जीप के लिए किया। इसके अलावा प्रतिबद्धता और निरंतरता के पूर्वाग्रह के कारण उन्होंने एक संख्या चुनी, इसलिए ये संभवतः सबसे अच्छा है। यह उस गेम से कहीं बेहतर है जहां लोग एक नंबर चुनते हैं। स्लॉट मशीनें हर दौर में इसका उपयोग करती हैं जहां दांव लगाने वाला चूक जाता है। मेरे बच्चे जब हम आर्केड में प्रवेश करते थे तो वे केवल ऐसी मशीनें खेलते थे जिनमें भाग्य का तत्व होता था, और वे उपहार खरीदने के लिए टिकट देते थे। ऐसे खेल जो उपहार खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देते थे, उन्हें नहीं लिया जाता था। ध्यान में रखते हुए आप इस पूर्वाग्रह को छोटी उम्र से देखते हैं। गणितीय ये पूर्वाग्रह विश्लेषणात्मक लोगों को आधुनिक जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ देता है जो कंप्यूटर और तर्क पर आधारित हैं। हमारे मस्तिष्क के लिए संभाव्यतापूर्वक ये सोचना बहुत मुश्किल है कि घटना के घटित होने की संभावना 80% थी और अंत में ऐसा नहीं हुआ। हम याद रखेंगे कि ऐसा नहीं हुआ। मैंने गोल किक किया और मेरे पास स्कोर करने के लिए 80% था। मुझे याद रहेगा कि मैं चूक गया और ऐसा नहीं कि मैं 80% मामलों में स्कोर करता हूँ। उदाहरण के लिए, एक चोर जो कहता है, मैंने पहले ऐसा नहीं किया है और मैं ऐसा नहीं करूंगा फिर से, हम जाने देते हैं, लेकिन संभावना के संदर्भ में उसने पहले भी ऐसा किया है और फिर से करेगा। लोग उपाख्यानों में बात करते हैं, लेकिन एक किस्सा एक आइटम के साथ एक नमूना है। पूर्वाग्रह, सूचना की उपलब्धता और स्पष्टता, जब वहां है हमारे सामने कोक का एक गिलास, हम इसे और अधिक पी लेंगे, जैसे हम किसी घटना को समझाने के लिए अपनी आंखों के सामने रखी दृष्टि का उपयोग करेंगे। एक तरह से हमारी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां चीजों को अनुपलब्ध बना देती हैं, क्योंकि जब मैं एक चीज से दूसरी चीज की ओर कूदता हूं तो निरंतरता और प्रतिबद्धता की प्रवृत्ति मुझे लॉक कर देती है, उछाल देती है। और यह नंबर एक त्रुटि है। तनाव, पूर्वाग्रह, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा संपूर्ण निर्णय लेने का तंत्र जैविक कारणों से गलत हो जाता है। दबाव से हमें भागने में मदद मिलनी चाहिए और यह निर्णय नहीं लेना चाहिए कि एक अपार्टमेंट में 10 लाख शेकेल का निवेश करना चाहिए या नहीं। आप इसे पोकर गेम में अविश्वसनीय तरीके से देख सकते हैं। जब कोई बड़ी रकम हार जाता है तो वह क्रोधित और तनावग्रस्त हो जाता है और उसके अगले निर्णय विशेष रूप से बुरे होंगे। यहां आसान उपाय यह है कि टेबल से उठें और तभी खेलें जब आप शांत हों। तुम कहां थे, भूमि की नींव में? हागद, यदि तुम्हें पता होता तो वो समझ जाती। भौतिकी का अर्थ उन घटनाओं का वर्णन करना है जिन्हें हम कानूनों और सूत्रों में देखते हैं। स्वतंत्र सोच के लिए बुनियादी भौतिक समझ बहुत सहायक होती है, क्योंकि भौतिक मॉडल को कई क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है। भौतिकी के बारे में स्वतंत्र विचार करके उच्च संभावना के साथ सही धारणाओं पर पहुंचना संभव है। यहां आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो उच्च संभावनाओं वाली सट्टेबाजी है और इससे अधिक कुछ नहीं। नीचे दी गई सभी धारणाएं तर्क के साथ 1+1 गणित पर आधारित हैं। यह कोई वैज्ञानिक लेख नहीं है या ऐसा होने का दिखावा नहीं है, ये केवल भौतिकी के बारे में एक स्वतंत्र विचार दिखाता है। सोचने के लिए ब्रह्मांड बहुत सीमित है और इस धारणा पर दांव लगाएं कि ब्रह्मांड सीमित है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति में कुछ भी अनंत नहीं है। इसीलिए हम इस मॉडल का उपयोग करना जारी रखेंगे और अपनी परिकल्पना का निष्कर्ष निकालेंगे कि ऐसे मॉडल पर दांव लगाना गलत है जिसके बारे में पता नहीं चल सकता है कि क्या यह अन्य स्थानों पर काम करता है, और अनंत चीजें वर्तमान में न तो सिद्ध हैं और न ही देखी गई हैं। इसमें कोई अनंत चीजें नहीं है प्रकृति। ब्रह्मांड सीमित है और इसलिए ऐसा विचार प्रयोग, जब हम एक निश्चित दिशा में जाते हैं तो अंत में हम उसी बिंदु पर लौटेंगे जहां हम अभी हैं, अन्यथा ब्रह्मांड अनंत है। बिग बैंग और बिग बैंग कब होगा, इसकी परिकल्पना इन शोधकर्ताओं के अनुसार अवलोकनों से निकले निष्कर्ष, 13.7 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ था। 5 अरब साल पहले ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार होना शुरू हुआ। विकिपीडिया, बिग बैंग से लेकर 5 अरब साल पहले तक ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ। त्वरण के विपरीत, जहां भी हम देखते हैं प्रकृति लगभग चक्रीय है। हर चीज का एक जीवन चक्र होता है। एक अच्छी धारणा ये होगी कि ब्रह्मांड का भी एक जीवन काल है जो एक बड़े विस्फोट से दूसरे तक है। उपरोक्त बिंदुओं से और साथ ही इस धारणा से कि ब्रह्मांड सीमित है, इसलिए उसी बिंदु पर लौटते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमने लगभग 5 अरब वर्ष पहले मध्य बिंदु पार किया था। अर्थात ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी का कारण ब्रह्मांड में पदार्थ का अपनी ओर आकर्षण है। यहां से आप गणना कर सकते हैं, धमाके से धमाके तक का समय 13.7 - 5 = 17.4 अरब वर्ष, आज से अगले धमाके तक का समय वापस बिंदु पर = 17.4 - 13.7 = 3.7 अरब साल इस समय में है। यह मानते हुए कि प्रकृति में कोई निरंतर चीजें नहीं है और कोई अनंत नहीं है, इसे समझा जा सकता है कि समय की एक छोटी इकाई है जो समय शून्य से कम है, जहां समय नहीं चलता है। समय की सबसे छोटी इकाई स्थिर है। उपरोक्त बिंदु से हम समझते हैं कि हम टेलीविजन के फ्रेम की तरह चलते हैं या वास्तव में छलांग लगाते हैं। हम लगातार नहीं चलते हैं। यूरेनस की गति सीमा की व्याख्या हम अवलोकनों और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से जानते हैं। प्रकाश की गति को पार करना असंभव है, जो 300,000 किमी प्रति सेकंड है। जब कोई पिंड दूसरे पिंड के सापेक्ष गति बढ़ाता है तो उसके लिए समय अधिक धीरे धीरे गुजरता है। एक स्पष्टीकरण जो मानव मस्तिष्क इन दो घटनाओं के लिए समझ सकता है, साथ ही इस तथ्य के लिए कि समय अलग है, वह यह है कि ब्रह्मांड में हर जगह एक प्रकार की अद्यतन तरंगें हैं जो ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ की स्थिति को अद्यतन करती हैं। अद्यतन तरंगों की गति बिल्कुल प्रकाश की गति 300,000 किमी प्रति सेकंड के बराबर है। जब हम अद्यतन तरंगों के साथ आगे बढ़ते हैं तो डॉपलर प्रभाव के कारण हमारा समय अधिक धीरे धीरे बीतता है। अद्यतन तरंगों के कारण ब्रह्मांड में गति फ्रेम की तरह हो जाती है और अद्यतन लाइन में स्थान धुंधला हो जाता है क्योंकि अद्यतन एक साथ नहीं होता है संपूर्ण ब्रह्मांड। यदि पदार्थ प्रकाश की गति के करीब चलता है तो उसका समय लगभग रुक जाता है क्योंकि अद्यतन तरंगें उस तक नहीं पहुंच पाती हैं। प्रकाश की गति में स्वयं कोई द्रव्यमान नहीं होता है क्योंकि उस पर अद्यतन तरंगों का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रकाश की गति सीमित होती है ब्रह्मांड में कुछ मौलिक जो प्रकाश की गति से परे है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तरंगें भी प्रकाश की गति तक ही सीमित हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगें और प्रकाश दोनों एक ही गति तक सीमित हैं। यह एक उत्कृष्ट व्याख्या है कि ब्रह्मांड में अद्यतन तरंगें हैं। अद्यतन तरंगों का कोई प्रमाण नहीं है लेकिन ये दिखाना संभव होगा कि अद्यतन तरंगें हैं यदि वे दिखाएं कि क्या गति की दिशा का समय के लिए कोई अर्थ है, न कि केवल गति के आकार के लिए। इस बीच ये केवल स्वतंत्र विचार ही है जो मुझे ये साबित करता है। पृथ्वी के बाहर जीवन, मेरा दावा है कि निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के बाहर कोई बुद्धिमान जीवन नहीं है, वे कहाँ हैं? उनके पास विकसित होने और यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ अरब साल का समय था। जब आप विकास पर वापस जाते हैं और ऐसे जीवों के पास आते हैं जो लगभग केवल डीएनए हैं, तो यह माना जा सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी और यह किसी उल्कापिंड या इस तरह से प्रत्यारोपित नहीं हुआ था। जीवन की उत्पत्ति के लिए 7 सुराग पढ़ने की सिफारिश की जाती है। चंद्रमा, चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य से दूरी, उल्कापिंड के प्रभाव को रोकने के लिए बृहस्पति, पानी, बड़े पैमाने पर विलुप्त होने और स्तनधारियों के लिए 3.5 अरब वर्षों के विकास से पता चलता है कि संभावना बहुत कम है। जब आप सितारों की ओर देखते हैं, आपको यह महसूस होता है कि जिसने भी हमें यहाँ रखा है वह चाहता है कि हम पृथ्वी पर रहें। एक महान शून्य और अकल्पनीय दूरियां हैं। गणित और दूसरी भाषा सीखने के माध्यम से सोचने की क्षमता में सुधार करने वाले स्कूलों की एक अंतहीन सूची, जो दो एकमात्र विषय हैं जो न केवल उनके ज्ञान को बल्कि स्वयं सोचने की क्षमता में सुधार करते हैं। ए स्कूलों में सफलता का माप छात्रों की कल्याण, अखंडता का स्तर, मातृभाषा के स्तर पर अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी मानवता द्वारा संचित विशाल ज्ञान का प्रवेश द्वार प्रदान करती है। सारा शैक्षणिक ज्ञान अंग्रेजी के साथ साथ सैद्धांतिक साहित्य और पेशेवर पुस्तकों में भी है। इसराइल के बाहर की दुनिया से कनेक्शन अंग्रेजी में बनाया जाएगा और क्योंकि मानवता बच्चों की आर्थिक आवश्यकता से इतनी जुड़ी हुई है कि यह एक अनिवार्य उपकरण है। उदाहरण के लिए, 10 से 11 साल की उम्र में मैं सिलिकॉन वैली में रहता था, जिसे मुझे अंग्रेजी भाषा में और आमतौर पर अमेरिकी संस्कृति में 100% काम करने के लिए जीवन में बहुत लाभ मिला। स्कूल का वातावरण, पेड़, खेल के मैदान और एक ऐसा वातावरण जो प्राकृतिक लगता है, निवेश का फल मिलता है। सही सोच सिखाने के लिए ये समझाना महत्वपूर्ण है कि हमें गलत सोचने के लिए क्या मजबूर करता है। सोच पूर्वाग्रहों का अध्ययन करने से इसमें बहुत मदद मिलेगी। अनिवार्य विषय जो हर कोई अरब और धार्मिक सहित बिना किसी अपवाद के अध्ययन करेगा, हिब्रू, नागरिकता, गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, खेल और उचित पोषण। महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक अपने सभी नागरिकों को धर्म, लिंग या नस्ल की परवाह किए बिना इसराइल के प्रेम के इर्द गिर्द एकजुट करना है। ये देश के नागरिकों के एकीकरण और भविष्य में छात्रों के लिए समान अवसरों के लिए महत्वपूर्ण है। स्कूल प्रशासकों के लिए कार्रवाई की स्वतंत्रता, विशेष रूप से स्कूलों के लिए अतिरिक्त और विशिष्ट अनिवार्य विषयों और राष्ट्रीय माप का निर्धारण करने में। एक वीडियो और ऑडियो सिस्टम का निर्माण सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा विषय और कक्षा के अनुसार सभी अध्ययन सामग्री के लिए। पाठों का सेट बीमार छात्रों और उन लोगों की मदद करेगा जो स्कूल के दिनों से चूक गए हैं और जो अकेले पढ़ना चाहते हैं। कुछ स्कूलों में यदि छात्र रिकॉर्ड किए गए पाठों की प्रस्तुति के माध्यम से सीखते हैं तो शिक्षकों के काम के घंटे बचाए जा सकते हैं। करने के लिए शिक्षा, किसी कार्य को कैसे पूरा करें और इसे सामान्य रूप से कैसे करें। आदेश और संगठन के लिए शिक्षा, सफल होने के लिए कार्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में उन्हें व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ये सिखाना संभव और महत्वपूर्ण है कि यह कैसे करना है और किन उपकरणों का उपयोग करना है, एक्सेल, आसन, कागज की शीट आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कूल संगठन और व्यवस्था सिखाते हैं। शारीरिक शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, आर्थिक प्रणाली कैसे काम करती है और आपको अपनी पूंजी क्यों बढ़ानी चाहिए और भविष्य के लिए पैसा क्यों बचाना चाहिए। लेखांकन, वो पेशा जहां सबसे अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि वास्तविक विषयों को सीखने में लड़कों और लड़कियों को अलग करने से लड़कियों की उपलब्धियों में सुधार होता है, इसलिए लिंगों को अलग करने पर विचार करना उचित है। अनिवार्य विषय, बुनियादी भौतिकी। भौतिकी का अध्ययन हमारे आसपास की दुनिया को समझने और सही मानसिक मॉडल बनाने में बहुत मदद करता है। स्कूल में पढ़ना, छात्रों को पढ़ने की क्षमता देना, अगर उन्होंने इसे घर पर हासिल नहीं किया है तो यह एक बुद्धिमान जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। फ्रेमिंग, समझ मानसिक मॉडल क्या है और इसे कैसे बनाया जाए। विश्लेषणात्मक शिक्षा सही सोच ढांचे बनाने में बहुत मदद करती है। मूल भाषा के स्तर पर अंग्रेजी सीखना, दूसरी भाषा सीखने के कई फायदे हैं, जिसमें सोच और निर्णय लेने में सुधार शामिल है। कल्याण प्राप्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उपलब्धि, सकारात्मक सोच, अर्थ और रिश्ते। मार्टिन सेलिगमैन की फ्लोरिश पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। यूट्यूब, टिकटॉक और इसी तरह के स्रोतों से आने वाली गलत सूचनाओं के खिलाफ बचाव के रूप में स्वतंत्र सोच के लिए शिक्षा। ये सिखाने के लिए कि सत्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, विश्लेषणात्मक पढ़ना और जांच करना और सत्य के निकटतम वास्तविकता को समझना। होमवर्क, स्व अध्ययन और विलंबित संतुष्टि के लिए एक शिक्षक के रूप में आपने जो पाठ और होमवर्क तैयार किया है उसे देना महत्वपूर्ण है। डोट, सभी गलत सिद्धांतों में जिनके अनुसार होमवर्क कम किया जाना चाहिए, माता पिता खुद को केंद्र में रखते हैं, अपने लिए इसे आसान बनाने के लिए और अपने बच्चों को नहीं। सीखने को अवशोषित करने के लिए अनुकूलित करना, जितना संभव हो सके शिक्षित करना महत्वपूर्ण है और यह है ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप किसी निश्चित कार्य में क्या शामिल करना चाहते हैं। अधिकांश बच्चे ये जाने बिना कि वे क्या सुधार करना चाहते हैं और सुधार को कैसे मापना है, समस्या का सामना करते हैं। ये समझे बिना कि आप क्या सुधार करना चाहते हैं और इसे कैसे मापना है, सही समाधान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा एक YouTube चैनल बनाना चाहता है, जो संकेतक सुधार करना चाहता है वह ये होगा कि कितने प्रतिशत ने देखना शुरू किया और समाप्त किया। इसे कैसे सुधारें, स्पष्ट रूप से बोलना सीखना, आवाज, विषय आदि में सुधार करना। ये परीक्षण करना कि सुधार की प्रत्येक दिशा सामान्य सूचकांक को कैसे बेहतर बनाती है।